سامعین صبح بخیر، آئیے اب اپنے خداوند سے مخاطب ہوں۔ عظیم خدا، زمین اور آسمان کے خالق، جس نے آج صبح اس وقت ہمیں اپنی پرستش کے لیے پہلے سے پیش نگوئی کر کے مقرر کیا، اور خداوند ایسا ہو کہ ہم اپنے دلوں میں اپنے آپ کو پوری طرح تیری الہی مرضی کے تابع کر دیں اور اپنے آپ کو روح القدس کے کام کے سپرد کر دیں، تاکہ وہ ان سب باتوں کو عیاں کر دے جو تو آج ہمارے علم میں لانا چاہتا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم اچھے مسیحی اور تیرے اچھے نمائندے بن جائیں۔ کیا تو آج صبح ہمیں یہ سب کچھ بخش دے گا جبکہ ہم تیرے منتظر ہیں؟ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ تشریف رکھیں۔ جی ہاں، آج صبح یہاں عظیم بادشاہ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو کر ہم نہایت ہی خوش ہیں، اور ہمیں پھر دوبارہ شرمندگی ہو رہی ہے کہ لوگوں کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں۔ البتہ ہم حالات کے مطابق بہترین انتظام کرنے کی کوشش کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں۔ اب بہتوں نے اپنے رومال اور درخواستیں دعا کے لیے یہاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن میں انہیں ایک طرف رکھ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں انہیں نظر انداز کر رہا ہوں، بلکہ میں ان کے لیے بعد میں اکثر اوقات رات کے پہر میں دعا کرتا ہوں۔ میں آج صبح اور پھر رات کو بھی یہاں ہوں گا، تب میں دعا کروں گا اور شفایہ کام کے لیے خدا کے روح کا انتظار کروں گا، اور میں ایسی صورتحال میں رومالوں اور درخواستوں پر دعا کرنا پسند کرتا ہوں، اور اگر کوئی خاص درخواستیں ہوں تو بلی ان میں سے ہر ایک کو میرے پاس لے آتا ہے۔ تقریباً 300 پڑی ہوئی ہیں، اور پھر جب میں اس جگہ سے جاتا ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ میں انہیں جلد از جلد نمٹانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہر ایک کو وقت دیا جا سکے، اس لیے جتنا تیزی سے ممکن ہو میں ان کو دیکھوں گا۔ میں سب کو دیکھ نہ سکوں گا۔ میں جب اندر جاتا ہوں تو ایک کو اٹھا کر کہتا ہوں، خداوند کیا اس کے لیے ہو جائے گا؟ بس اسی طرح، کیونکہ ہر ایک ضرورت مند ہوتا ہے، اور بلا شبہ سب کی درخواستیں حقیقی ہیں، کچھ چیزوں میں کوئی شک نہیں ہے، پھر بھی ہمیں ان کے متعلق مل کر گفتگو کرنی چاہیے۔ اور میں کسی قدر، آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی روح القدس کسی کا نام لیتا ہے کہ کوئی ایسا نام جو میں نے پڑھا ہو اور میرے دل میں رہ گیا ہو، اور میں پھر واپس جاتا ہوں اور تب تک اسے تلاش کرتا ہوں جب تک وہ مل نہ جائے، ورنہ میں اتفاقاً ہی ان کو لے لیتا ہوں۔ اب آج صبح ہم ان لوگوں کو بھی سلام کہنا چاہتے ہیں جو ملک کے دیگر حصوں میں سن رہے ہیں۔ آج صبح ہم ان لوگوں کو بھی سلام کہنا چاہتے ہیں جو اس ٹیلی فون کے ذریعے ہم سے جڑے ہوئے ہیں، جو نیو یارک، بیومونٹ ٹیکساس، پرسکاٹ ایریزونا، ٹیوسن ایریزونا میں ہیں، سان جوز کیلیفورنیا، کنیٹیکٹ، جینیس ویل جارجیا، اور نیو البانی انڈیانا، اور دنیا بھر میں سن رہے ہیں۔ ہم آپ سب کو خداوند یسوع کے نام میں سلام پیش کرتے ہیں۔ انڈیانا میں آج کی صبح بڑی سہانی ہے۔ گزری رات یہاں بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے موسم ٹھنڈا اور خوشگوار ہو گیا ہے، اور یہاں ٹیبرنیکل اس وقت لوگوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہر کوئی سنڈے اسکول کے سبق کے لیے عظیم آرزو کے ساتھ منتظر ہے، اور مجھے بھروسہ ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں خدا کی برکات سے مالا مال ہوں گے۔ ہم توقع کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکا ہم وہ موقع حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جہاں ہم سب ایک سایبان کے نیچے جمع ہو سکیں، کیونکہ میں بائبل میں سے 7 پیالوں پر منادی کرنے کے لیے یقینی رہنمائی محسوس کر رہا ہوں۔ اس لیے آج صبح کے عظیم پیغام پر ہم زیادہ دیر نہیں لگائیں گے۔ میں سوچتا رہا اور خداوند سے چاہا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، اور اس بات کو جانتے ہوئے ہماری یہ آج کی عبادت ہماری آخری عبادت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خداوند کی آمد اس قدر قریب ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کیلیفورنیا میں پیشنگوئی کرنے کے بعد وہاں کے مکانات اور دیگر جگہیں 30 انچ فی گھنٹہ کی شرح سے ڈوبتی جا رہی ہیں، لکڑی کی بنی اشیاء خستہ حال ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم آخری وقت میں ہیں، لاکھوں ڈالر میں بنے ہوئے گھر ڈوب رہے ہیں۔ میں نے اخباروں میں بڑی سرخیاں اور تصویریں دیکھی ہیں جو میں آج رات لانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں رات کو اسی موضوع پر کچھ بولنا چاہتا ہوں، اور پھر آج رات ہم بیماروں کے لیے دعا بھی کریں گے۔ آپ اس سپہر 5 یا 6 بجے جو بھی وقت مقرر کیا جائے آ جائیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم اسے جلدی شروع کریں گے تاکہ لوگ وقت پر واپس بھی جا سکیں اور دعائیہ کارڈ حاصل کر لیں۔ اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو آج رات بیماروں کے لیے بھی دعا کی جائے گی۔ اب دعا میں غور و خوض کرتے ہوئے कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो कुछ मैं कहता हूं, इसका किसी दिन मुझे जवाब देना होगा। और मैंने फैसला किया है, या जैसे रूल कुछ ने रहनुमाई की है, कि आज शुभ नबुवत के बारे में गुफ्तगु की जाए, ताकि हम आगाही हासिल कर सकें। देखें, यही कुछ हमारे पास है। अगर कोई बात अचानक वाके हो जाए और हम इससे वाकिफ ना हों, तो हमें इसके मुतालिक जानना चाहिए। ये हमें रूहुल कुछ ने दी है, ताकि आने वाली चीजों के बारे में लोगों को खबरदार करें। आपको इल्म है कि बाइबल कहती है, खुदा उस वक्त तक कुछ नहीं करता जब तक वो पहले अपने बंदों नबियों पर जाहिर न कर दे। और यीशु ने किस तरह लोगों को आने वाली बातों से खबरदार किया, और किस तरह नबियों ने लोगों को आने वाली बातों से खबरदार किया। हम इस अजीम घड़ी में रह रहे हैं, और ये हमारा मकाम है। हम इसलिए जिंदा हैं कि देख सकें किस जमाने में रह रहे हैं और क्या हो रहा है और इस जमाने में क्या होने वाला है। बस इन अजीब मजामीन में से, जिनको हम बार बार पढ़ चुके हैं, आज ये बात मेरे दिल में आई है कि इसे लोगों के सामने पेश किया जाए। अब आइए हम अपनी अपनी बाइबल में मत्ती 24वें बाब की तरफ चलते हैं और कलाम का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। मुझे माफ करना, यही वो तरीका है कि फरिश्त से हम अपने लिए एक मतन और मजमून हासिल करते हैं। अब याद रखें कि आज हम इसे आहिस्ता आहिस्ता बाइबल क्लास की सूरत में सीखेंगे। अपने कागज और पेंसिल तैयार कर लें, ताकि आप हवाला जात लिख सकें, क्योंकि मैंने बहुत नविश्ते तहरीर कर रखे हैं, ताकि जब आप घर जाएं तो इनका मुतालिया कर सकें, क्योंकि ये बिल्कुल संडे स्कूल की क्लास की तरह होगा, ताकि हम आगाही हासिल कर सकें और इस घड़ी के लिए तैयार हो सकें जिसमें हम रह रहे हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, मुझे माफ करना, 24वीं आयत या 24वां बाब, बल्कि 15वीं आयत से शुरू करता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि कलाम मुकद्दस के इस हिस्से को पढूं। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को, जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फित हुआ, मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला उसे समझ ले, तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं। जो कोठे पर हो वो अपने घर का सबाब लेने को नीचे ना उतरें, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने ना लौटे। मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला हूँ और जो दूध पिलाती हूँ। बस दुआ करो के तुम्हें जाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े काम और अजीब निशान दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है, तो बाहर ना जाना, देखो वो कोठलियों में है, तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। जहां लाश है वहां अकाब जमा हो जाएंगे। अब मैं आज सुबह के संडे स्कूल के सबक के लिए 24वीं आयत पर बतौर मजमून जोर दूंगा, और जब मैं इसे दोबारा पढ़ता हूँ तो नहायत तवज्जो से सुने, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। अब आज सुबह के लिए मतन या मजमून, बल्कि जिसे मैं लेना चाहता हूँ वो है आखिरी वक्त के मसाशुदा लोग। यही वो मतन या मजमून है जिस पर मैं बोलना चाहता हूँ, आखिरी वक्त के मसाशुदा लोग। मुझे यकीन है कि हम आखिरी जमाने में जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कोई भी कलाम को पढ़ने वाला या कि एक ईमानदार जानता है कि हम दुनिया की तारीख के इख्तिताम पर हैं। इसलिए इसे लिखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसे पढ़ने के लिए कोई नहीं होगा। अब वक्त का इख्तिताम है, लेकिन ये कब खत्म होगा इसका मुझे इल्म नहीं। इसकी तवालत कितनी होगी, हत्ता के आसमान के फरिश्ते भी उस वक्त और उस घड़ी को नहीं जानते। लेकिन खुदावंद यीशु ने हमें बताया हुआ है कि जब ये बातें वाकया हों जो अब हो रही हैं, तो अपने सर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मखलसी करीब है। अब इस करीब का क्या मतलब है ये मैं नहीं जानता। शायद इसका मतलब वही हो जैसा कि किसी रोज टेलीविजन पर साइंसदान ने कहा था, जब वो हजारों मील खुश्की के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहा था जो डूब रही है। उससे सवाल किया गया, क्या ये डूब सकती है, यानी मगरबी साहली इलाका लॉस एंजलस। और आप में से बहुतों ने देखा कि उन्होंने किस तरह रडार से उस दरार को देखा जो सान जोस से अलास्का की तरफ है, जो अलुशियन आइलैंड्स तक तकरीबन 200 मील तक समुन्दर के अंदर है, और वहाँ से घूमकर सान डियागो से लॉस एंजलस के गिर्द एक बड़ी दरार पड़ गई है। और अब जितने जलजले आ रहे हैं ये डूबते हुए इलाके को लगने वाली आतिशफिशानी झटकों की वजह से है, बिल्कुल जैसे वहाँ हुए। मैं इसे उस नाम से नहीं पुकार सकता जो उन्होंने इस्तेमाल किया था। अलबत्ता जब वो जुम्बश खाता है तो जलजले आते हैं जो हम कई सालों से मगरबी साहिलों पर महसूस कर रहे हैं। अब इस सारे इलाके के गिर्द दरार पड़ गई है, और साइंसदान कहते हैं जब एक दूसरे आदमी से पूछा गया क्या ये गिर सकती है, तो उसने जवाब में कहा सकती नहीं बल्कि यकीनन ये गिरेगी। उसने कहा लेकिन शायद हमारी पुश्त में नहीं। उसने कहा ये आइंदा 5 मिनटों या 5 सालों में भी गिर सकती है, लेकिन हम नहीं जानते कब ऐसा होगा। और इस हफ्ते मुझे अखबार भेजा गया जिसमें इस मजमून की सुर्खियां थी कि लाखों डॉलर के मकानात चिटक और टूट रहे हैं और लोग नकल मकानी कर रहे हैं, और वो इसे रोकने का तरीका नहीं जानते। इसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं। देखें, खुदा जो चाहे कर सकता है, और कोई ऐसा शख्स नहीं जो खुदा को समझाए कि तूने ऐसा क्यों किया। आप घर बना सकते हैं, आप साइंसी अशिया बना सकते हैं, मगर खुदा साइंस का भी खालिक है। आप खुदा को कैसे रोकेंगे? अगर वो चाहे तो आज सुबह इस जमीन को पशुओं के जरिए तबाह कर सकता है। क्या आप इस बात को महसूस करते हैं कि खुदा पशुओं को तखलीक का हुक्म दे सकता है, और वो आधे घंटे में 40 मील की गहराई तक बन सकते हैं? देखें, कोई नहीं बचेगा, वो लोगों को जमीन पर से खा जाएंगे। वो खुदा है, वो जो चाहता है करता है, वो अपनी जात में कादरे मुतलिक है। अब इन सब वाकयात का मजमुआ इस वक्त की शहादत है जिसमें हम रह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इन वाकयात को देखकर इन बातों को दोहराना और बयान करना अच्छी बात है, जबकि मोहरें खुल चुकी हैं और हमने इन चीजों की सच्चाई को पा लिया है। जैसे कि इन बातों को हम पर जाहिर करने के लिए खुदा अपने फजल के साथ हमारे लिए वफादार रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें कि मत्ती 24 में यीशु ने जहाँ लफ्ज मसीह का इस्तेमाल किया, CHRISTS मसीही है, ना के मसीह बल्कि बहुत से मसीह, बहुत से, ना के वाहिद, बहुत से मसीह। चूंकि लफ्ज मसीह का मतलब है मसा किए हुए, और फिर अगर ये मसा किए हुए हैं तो फिर ये एक नहीं बल्कि बहुत सारे मसा किए हुए हैं, यानी मसा किए हुए लोग, समझे। इसलिए अगर वो इसे तोड़ना चाहता तो हम कमोबेश इसे बेहतर तौर पर समझ जाते। तो वो कह सकता था कि आखिरी दिनों में झूठे मसा वाले उठ खड़े होंगे। अब ये तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। जो असलाह इस्तेमाल हुई है मसा किए हुए, लेकिन इसके फौरन बाद आने वाले अल्फाज पर गौर करें जो झूठे नबी हैं, PROPHETS। यहाँ लफ्ज नबी भी जमा के मायनों में है। अब ममसू वो शख्स होता है जिसके पास एक पैगाम हो, और पैगाम को लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कोई शख्स मसा शुदा हो, और मसा किया हुआ शख्स नबी होगा। झूठे उस्ताद उठ खड़े होंगे। एक नबी वही कुछ सिखाता है जो उसके पास पैगाम होता है, लेकिन ममसू उस्ताद मसा शुदा होने के बावजूद झूठी तालीम के साथ हैं। मसा की हुए लफ्ज मसीह जमा के लिए इस्तेमाल किया गया है, लफ्ज नबी ये भी जमा के लिए इस्तेमाल किया गया है। और अगर यहाँ एक मसीह वाहिद जैसी चीज है तो फिर उससे मसाशुदा लोग भी होते हैं, ताकि उनकी नबुवत जो वो सिखा रहे हैं मुख्तलिफ हो, क्योंकि वो उस ममसू से मसाशुदा हैं। अब चूंकि ये एक संडे स्कूल का सबक है और हम चाहते हैं कि इसे हकीकी मायनों में लें, इसके मुतल्लक किसी आदमी के कॉल की तरफ तवज्जो देने की बजाय कलाम के मुताबिक इसे पढ़ें। शायद आप कहें ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्या वो मसीह याफ्ता होंगे, वो क्या थे? मसीह CHRISTS, वो मसीह शुदा होंगे, मसीह और झूठे नबी, ममसू मगर झूठे नबी। यीशु ने कहा बारिश नेकों और बदों दोनों पर होती है। क्या आप यकीन रखते हैं कि इस किस्म के लोगों पर भी मसा का मतलब है रुलकुश का मसा? जी हाँ जनाब, ऐसे शख्स पर खुदा के असली रूह का मसा है, लेकिन तो भी वो झूठे हैं। अब गौर से सुनिए और देखें कि यीशु ने क्या कहा। वो निशान और ऐसे अजीब काम दिखाएंगे, अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। वो असली रूहुल कुछ के मसा के साथ मामूर हैं। मैं जानता हूँ कि ये बात अहमकाना लगती है, लेकिन हम वक्त ले रहे हैं ताकि इसे कलाम से बयान करें कि ये मुतलिक तौर पर खुदावंद यूं फरमाता है कि सच्चाई है। आइए एक मिनट के लिए अपनी अपनी बाइबल में चलें। मत्ती की अंजील 5वां बाब और उसकी 45वीं आयत से शुरू करते हैं, और अब इस हवाले को पढ़ते और कुछ लम्हात के लिए गौर करते हैं, और फिर जो बातें हम यहाँ बयान करना चाहते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। पर तो भी इस तरह अगर इन सब को पढ़ने से कासिर रहे तो अपनी बाइबल को लें, और जब हम इस जगह से रुखसत हों तो आप घर जाकर इन्हें जरूर पढ़ें, और आप इन सब को अपनी बाइबल में से पढ़ें कि बाइबल इसके मुतल्लक क्या कहती है। अब मैं चाहता हूँ कि एक बुनियादी हकीकत के लिए वक्त निकाल लें, क्योंकि मैं यहाँ एक हक्का बक्का कर देने वाली बात कहने जा रहा हूँ। एक झूठे उस्ताद को रूहुल कुस किस तरह मसा कर सकता है? लेकिन जो यीशु ने कहा है वो जरूर पूरा होगा। अब मत्ती 5वें बाब की 45वीं आयत से पढ़ना शुरू करते हैं, बल्कि आइए इससे भी थोड़ा पीछे 44वीं आयत से शुरू करते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुम पर लानतान करते हैं उनके लिए बरकत चाहो, जो तुमसे अदावत रखते हैं उनके साथ भलाई करो, और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है, और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मी बरसाता है। बारिश बदों पर भी उसी तरह बरसती है जैसे नेकों पर। अब इसी से मुतल्लक एक नबुवत को इसके साथ मिलाने के लिए हम अब्रानियों 6वें बाब में पढ़ सकते हैं, जहां पालूस इसी बात को जहन में ला रहा है जो यीशु ने कही थी। अपालूस कह रहा है, जब आप इसके मुतलाशी हैं और जो लोग बाहर रेडियो पर सुन रहे हैं, अपनी बाइबल और कागज का एक हिस्सा अपने करीब रखें और अब इसको देखें। अब्रानियों 6 बाब, पालूस अब्रानियों को लिखते हुए उन्हें नकुश और नमूने दिखाता है और उन्हें यहूदियत से मसीहियत में लाता है। वो उन्हें दिखाता है कि तमाम पुरानी चीजें आने वाली चीजों का अक्स थी। अब पालूस अब्रानियों 6 में कहता है, बस आओ हम मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर, CHRIST, यहाँ लफ्ज मसीह वाहिद है, कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तोबा करने की और खुदा पर ईमान लाने की और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की बुनियाद दोबारा ना डालें। और खुदा ने चाहा तो हम यही करेंगे। क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रूह कुछ में शरीक हो चुके, मैं एक मिनट के लिए आपकी तवज्जो मरकूज कराना चाहता हूँ। क्या आपने गौर किया कि यहाँ लफ्ज बख्शिश इस्तेमाल हुआ है, ना के लफ्ज बख्शिशों? क्या लफ्ज आसमानी बख्शिशों इस्तेमाल हुआ है? बल्कि आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके, जो के वाहिद लफ्ज है। लफ्ज मसीह भी वाहिद है और लफ्ज बख्शिश भी वाहिद है। आसमानी बख्शिश और रूहुल कुछ में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम का मजा ले चुके। किस चीज का मजा? खुदा के उम्दा कलाम का और आइंदा जहान की कुवतों का मजा ले चुके। अगर वो बरगश्ता हो जाएं, तो उन्हें तोबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो अपनी तरफ से खुदा के बेटे को दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं। क्योंकि गौर से सुनिए, जो जमीन उस बारिश का पानी पी लेती है जो बार बार उस पर होती है और उनके लिए कारामद सब्जी पैदा करती है, जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है, वो खुदा की तरफ से बरकत पाती है। और अगर झाड़ियां और ऊंट कटारे उगाती है तो नामकबूल और करीब है कि लानती हो और उसका अंजाम जलाया जाना है। अब इसका मुवाजना मत्ती 5:24 से दोबारा करें। गौर कीजिए, यीशु ने कहा कि धूप और बारिश इसलिए जमीन पर आती है और खुदा इसलिए भेजता है कि जमीन पर के रहने वाले लोगों के लिए खुराक और दूसरी चीजें पैदा की जाएं। बारिश गल्ले और सब्जी के लिए भेजी जाती है, लेकिन ऊंट कटारे और सरकंडे जो मैदानों में उगते हैं, वो भी इसी बारिश का पानी हासिल करते हैं। जिस बारिश से गेहूं परवरिश पाती है, बिल्कुल उसी से कड़वे दाने भी परवरिश पाते हैं। इस पर मुझे कैसे सबक हासिल हुआ, जब मैं पहली बार पेंटिकोस्टल लोगों से मिला, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सबक था। मैंने 2 आदमी देखे, एक इससे पहले मैंने कभी किसी को गैर जुबानों में बोलते नहीं सुना था, एक गैर जुबान बोलता और दूसरा उसका तर्जमा करता था, और इसी तरह फिर दूसरा गैर जुबान बोलता और पहला उसका तर्जमा करता था, और वो सच बताते थे। वो कहते थे, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आज रात तोबा करने की जरूरत है। उनमें मर्द और औरतें दोनों शामिल थे और लोग उठते और मजबा पर जाते थे। मैंने सोचा, कैसी जलाली बात है। और फिर रूल कुछ की एक छोटी सी नेमत के साथ मैंने उन दोनों आदमियों से बातें की। आप जानते हैं कैसे, सिर्फ थोड़ी सी गुफ्तगू के साथ मैंने उन्हें परख लिया। और उनमें से एक हकीकी मसीही था, वो मसीह का हकीकी खादम था, लेकिन दूसरा रयाकार था। और उनमें से एक जो रयाकार था, वो एक स्याह बालों वाली और गोरी रंगत और नीली आंखों वाली औरत के साथ जिंदगी गुजार रहा था, और उसमें से उसके बच्चे भी थे। ठीक है, ये चीज एक रोया में दिखाई गई और इसका इनकार नहीं किया जा सकता। और मैंने इस बात के मुतालिक उसे बताया। उसने मेरी तरफ देखा और इमारत से बाहर निकल गया, और उस वक्त मैं बड़ी उलझन का शिकार हो गया, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं फरिश्तों के दरमियान आ गया हूँ, और अब फिक्रमंद था कहीं शयातीन के दरमियान तो नहीं आ गया। ये कैसे हो सकता था, मैं उसे समझ नहीं सका। और बहुत सालों तक मैंने अपने हाथ उससे अलग रखे, और हत्ता के एक दिन जॉर्ज स्मिथ, यानी वो लड़का जो मेरी बेटी के साथ जाता है, हम कल उस कदीम मिल की जगह गए जहां मैं दुआ करने के लिए जाता हूं, और 2 दिन वहां ठहरने के बाद रूल कुछ कलाम के इस हिस्से को मेरी तरफ लाया। क्योंकि बारिश अक्सर जमीन पर पड़ती है और इसमें सब्जियां पैदा करती है, लेकिन झाड़ियां और ऊंट कटारे भी इसी बारिश से जिंदगी हासिल करते हैं, लेकिन उनका अंजाम जलाया जाना है। खुदा के उसी जिंदगी देने वाले जराए से जिंदगी हासिल कर रहे हैं। फिर मैं इस बात का मतलब भी समझ गया जो यीशु ने कही थी कि वो अपने फलों से पहचाने जाते हैं। अब इसलिए कि बारिश जमीन की कुदरती नबातात पर गिरती है, ये उस रूहानी बारिश की तमसील है जो कलीसिया पर बरसती और उसे हमेशा की जिंदगी देती है। इसलिए हम इसे पहली और पिछली बारिश कहते हैं, और ये बारिश खुदा के रूह से निकलती और उसकी कलीसिया पर गिरती है। गौर कीजिए, ये बड़ी अजीब बात है। देखें, जब वो बीज जमीन में चले गए तो वो वहाँ मिल गए, तो भी उनका आगाज कांटे होता है, लेकिन गंदुम का बीज भी जमीन में गया और जड़ी बूटियों का आगाज जड़ी बूटियों के साथ हुआ, और हर एक जड़ी बूटी एक बार फिर अपने आप को पैदा कर रही है, जो जाहिर करता है कि इसका असल आगाज क्या था। अगर मुमकिन हो तो वो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें, क्योंकि उनको वही बारिश वही बरकतें हासिल हो रही हैं, और उनसे वही निशान और अजीब काम जाहिर होते हैं, समझे। अगर मुमकिन हुआ तो वो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। अब एक कांटा खुद को कांटा बनने से नहीं रोक सकता, और ना ही गेहूं अपने आप को गेहूं बनने से रोक सकता है। ये वही है जिसका इरादा इन सब के खालिक ने इब्तदा में किया था। वो मुंतखब हैं एक ही बारिश के लिए। सूरज सुबह को तुलू होता है और जमीन पर अपनी रोशनी को फैलाता है, जैसा कि ये इस जमीन पर आज के दिन है जिसमें हम रहते हैं। जो सूरज मशरिक से तुलू होता है, बिल्कुल वही सूरज मगरिब में गुरूब होता है। जिस मट्टी से हमारे बदन बने हैं, उसी मट्टी में गल्ले को पकाने के लिए सूरज को भेजा जाता है। हम किसी चीज के मरने के वसीले जिंदा रह रहे हैं। जिंदा रहने का वाहिद यही तरीका है, और हर रोज किसी चीज को मरना पड़ता है ताकि आप जिस्मानी तौर पर जिंदा रह सकें। तो क्या फिर ये सच नहीं है कि जब आपके जिस्मानी तौर पर जिंदा रहने के लिए किसी को मरना पड़ता है, उसी तरह आपको रूहानी लिहाज से जिंदा रखने के लिए किसी चीज को रूहानी तौर पर भी मरना पड़ता है। और खुदा ने मादी जिस्म इख्तियार किया और मरा ताकि हम जिंदा रह सकें। खुदा के अलावा कोई कलीसिया या कोई और चीज आपको बचा नहीं सकती। सिर्फ यही एक चीज है जिससे जिंदा रहा जा सकता है। अब कलाम में देखें, यीशु कलाम है। इब्तदा में कलाम था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम मुजस्सम हुआ और वही हमारे दरमियान रहा। आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा जिस्मानी जिंदगी के लिए, बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। यूं आपने देखा, हम कलाम से जिंदा रहते हैं और कलाम खुदा है। अब सूरज निकलता है और गल्ला को पकाता है। अब ये उसे एकदम नहीं पका सकता। जो जो वो बलूगत की तरफ बढ़ता है तो ये पकता जाता है और बिलाखर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और इसी तरह आज यही सूरत कलीसिया के साथ है। तारीख दौर में जब ये जमीन के अंदर थी तो ये इसका बचपन का आगाज था। अब ये बलूगत की उम्र को पहुंच गई है, और हम इसे कामलियत के साथ देख सकते हैं। खुदा ने हमेशा फितरती नमूनों के जरिए सिखाया, और आप फितरत में खलल नहीं डाल सकते। आज भी यही सूरत हाल है। हम बम उड़ाते और समुद्रों में फेंकते हैं, और हम इस फितरत को एटमी बमों से तोड़ रहे हैं और इसका सीना फाड़ रहे हैं। जितनी ज्यादा मट्टी को आप खोद रहे हैं, उतना ही आप इसके अंदर गिरते जा रहे हैं। आप दरख्तों को काट रहे हैं, आपको तूफान घेर लेंगे। आप दरियाओं पर बंद बांध रहे हैं, इनमें सैलाब आएंगे। आपको चाहिए खुदा के काम करने के तरीके को मालूम करें और उसके साथ खड़े रहें। हमने कलीसियाओं और तंजीमों में लोगों को मुनज्जम कर रखा है, देखें इसे क्या हासिल हुआ। इसलिए सिर्फ खुदा के मुहैया करदा तरीके के साथ खड़े रहें। लेकिन आप देखें, आए अपने मजमून पर वापस चलते हैं। वो अपनी बारिश रास्तबाजों और नाराजतों पर बरसाता है। मत्ती 24 में यीशु ने आपको बताया कि ये आखिरी वक्त का निशान होगा। अब अगर ये निशान आखिरी जमाने में ही इल्म में आएगा तो फिर इसे मोहरों के खुलने के बाद जाहिर हो जाना चाहिए, समझे? ये आखिरत का निशान है। आखिरी दिनों में जब ये चीजें वाकया होंगी तो ये जाहिर होगा। ये एक निशान होगा, इसलिए अब बरगजीदों को इन चीजों के मुतालिक उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। क्या आप समझ गए? फिर इसे मुनकशिफ और जाहिर होना चाहिए। गौर कीजिए, गेहूं और कड़वे दाने दोनों आसमान से एक ही मसा हासिल करके जिंदा रहते हैं। दोनों इस पर खुशी का इजहार करते हैं। उस दिन ग्रीन मिल की मिसाल के हवाला से मैं इसे याद रखता हूं। जब मैंने उस रोया को देखा, वहां बहुत सी जमीन थी और इस सारी जमीन में हल चलाया गया और पहले वहां एक बीज बोने वाला आया। मैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूं। देखें कि पहले कौन जाता है और इसके बाद पीछे कौन आता है। जब यह पहला शख्स सफेद लबास में मलबूस इस जमीन में बीज बोकर गया और फिर इसके पीछे एक और शख्स स्याह लबास पहने हुए आया। वो बहुत ही फरेबी दिखाई दे रहा था। वो पहले शख्स के पीछे चलते हुए कड़वे दाने बो गया। जब ये हो गया तो फिर मैंने दोनों फसलों को उगते हुए देखा और जब वो और ऊपर आई तो उनमें से एक गंदुम और दूसरे कड़वे दाने थे। फिर खुश मौसम आया और तब बिल्कुल इस तरह दोनों ही ने सर झुका लिए, जिसका मतलब है बारिश के लिए रोना और चिल्लाना। फिर बहुत बड़ा बादल जमीन की तरफ आया और उससे बारिश हुई। गंदुम ने अपना सर उठाया और कहा, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तारीफ हो। कड़वे दानों ने भी अपना सर उठाया और बुलंद आवाज से कहा, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तारीफ हो। एक जैसे नताइज, दोनों खत्म हो रहे थे मगर फिर इकट्ठे बढ़ते गए। फिर गंदुम ऊपर आई और उसे प्यास लगी और चूंकि ये उसी खेत या बागीचे में उसी जगह पानी के एक ही मंबा के नीचे थी, इसलिए गंदुम और कड़वे दाने दोनों एक जैसे हालात से दो चार हुए। गौर करें, एक ही मसा का पानी गंदुम और कड़वे दाने दोनों को जिंदगी देता है। वही रूलकुश जो कलीसिया को मसा करता है और उनके अंदर रूहें बचाने की ख्वाहिश पैदा करता है, उन्हें मौजज़ात दिखाने की कुदरत देता है, बिल्कुल वही रास्तबाजों और नरास्तों पर नाजिल होता है। बिल्कुल एक ही रूह है। अब आप मत्ती 24:24 को समझने के लिए कोई दूसरा तरीका इख्तियार नहीं कर सकते। यीशु ने कहा, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, झूठे मगर मसाशुदा। उन्हें एक हकीकी चीज का मसा मिला, लेकिन उससे झूठे नबी और झूठे उस्ताद निकले। अगर कोई शख्स किसी ऐसी चीज का झूठा उस्ताद बनना चाहे जो सच्चाई हो, तो उस शख्स का क्या बनेगा? हमें चंद मिनटों में इससे हैवान का निशान हासिल होगा और आप देखेंगे कि ये तंजीम है। देखें, झूठे उस्ताद, झूठे ममसू, मसाशुदा मसीह, लेकिन झूठे उस्ताद। आप सिर्फ इसी तरीके से इसे समझ सकते हैं। कुछ अर्सा पहले की बात है, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, मुझे अब भी जिक्र करना चाहिए क्योंकि हमें इस वक्त पूरे मुल्क में सुना जा रहा है। एक दिन मैं अपने दोस्त से गुफ्तगू कर रहा था, वो आज सुबह एरिजोना में आ रहा है। उसका लीमुओं का एक खेत था, उसके हाथ संतरे का एक दरख्त था जिस पर ग्रेपफ्रूट, लेमू, टैंगलो, टैंगराइन के फल लगे हुए थे और अब मुझे याद नहीं और कितनी किस्मों के फल लगे हुए थे। और मैंने उस आदमी से पूछा, मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है और ये किस किस्म का दरख्त है? उसने जवाब दिया, ये दरख्त बजाते खुद संतरे का दरख्त है। मैंने कहा तो फिर इसमें ग्रेप फ्रूट कहाँ से आ गए और इसमें लीमू कहाँ से आ गए? उसने कहा ये सब इसमें पैवंद किए गए हैं। मैंने कहा मैं समझ गया, ठीक है। अब मैंने कहा अब अगले साल इस दरख्त पर दूसरा फल लगेगा क्योंकि ये सब फल एक ही मौसम में पकते हैं। मैंने कहा तो फिर ये सारे का सारा संतरों पर ही मुश्तमिल होगा। अगरचे ये असलियत के लिहाज से संतरे का दरख्त है तो इसमें असल संतरे लगेंगे, क्यों जनाब, क्या ऐसा ही होगा? उसने कहा नहीं जनाब, हर एक पैवंद शुदा शाख अपनी ही किस्म का फल पैदा करेगी। मैंने कहा आपका मतलब है कि एक लीमू की शाख इस संतरे के दरख्त में से लीमू पैदा करेगी? उसने कहा जी हाँ जनाब। क्या ग्रेपफ्रूट की शाख इस संतरे के दरख्त से ग्रेपफ्रूट पैदा करेगी? उसने कहा जी हाँ जनाब। ये पैवंद शुदा शाख की फितरी खसूसियत है। मैंने कहा खुदा की तारीफ हो। उसने कहा क्या मतलब है आपका? मैंने कहा एक और सवाल है, क्या ये संतरे का दरख्त कभी दोबारा संतरे पैदा नहीं कर पाएगा? उसने कहा जब कभी ये कोई दूसरी शाख निकालेगा, यानी उस वक्त जब ये कोई और शाख पैदा करेगा, उस वक्त नहीं जब शाख इसमें पैवंद की जाएगी। मगर ये सब संतरे के खानदान के फल हैं और वो संतरे के दरख्त में मौजूद जिंदगी को हासिल करके ही जिंदा रह रहे हैं। मैंने कहा ये है आपकी हालत। मेथोडिस्ट हर बार मेथोडिस्ट ही पैदा करेंगे, बैप्टिस्ट हर बार बैप्टिस्ट ही पैदा करेंगे, कैथलिक हर बार कैथलिक ही पैदा करेंगे, लेकिन जिंदा खुदा की कलीसिया जब ये जड़ से असल शाख पैदा करेगी तो हर बार मसीह यानी कलाम को जन्म देगी। अब आप इस चीज को पैवंद कर सकते हैं, आप समझ गए? हर ग्रेप फ्रूट, लीमू, टेंगलो, टेंगराइन और संतरे के खानदान के तमाम अरकान इस दरख्त पर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इससे जिंदगी हासिल करने के बावजूद फल इससे मुख्तलिफ पैदा करेंगे। क्या आप समझ गए? वो इस दरख्त के अंदर मौजूदा जिंदगी से जिंदगी और परवरिश पा रहे हैं। अब यहाँ मत्ती 24:24 वाले उसी जिंदगी से जिंदा है, लेकिन वो इब्तदा ही से दुरुस्त ना थे। वो उस दरख्त की झूठी गवाही पेश कर रहे हैं। वो लीमू का दरख्त है हालांकि वो संतरे का दरख्त है, और लोग कहते हैं इस कलीसिया इस तंजीम के अंदर मसीह की जिंदगी है, जबकि उन्होंने गलत बपतिस्मा लिया और कलाम की गलत गवाही पेश करते हैं और कहने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा की कुदरत सिर्फ शागिर्दों के लिए थी। यीशु ने खुद कहा सारी दुनिया में जाओ और हर शख्स के सामने अंजील की मुनादी करो, हर शाख के सामने जो कभी ये दरख्त लाएगा या कभी भी इस दरख्त पर लगेगी। ये निशान हकीकी शाखों में जाहिर होंगे। कब तक? जब तक ये दरख्त है, जब तक ये शाखें पैदा करता रहेगा, यानी दुनिया के आखिर तक। वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो कुछ जरर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। इस घड़ी को देखें जिसमें हम रह रहे हैं। देखें यीशु ने क्या कहा था। याद रखें ये आखिरी वक्त है, ये वेस्ली या इससे पिछड़ों का वक्त नहीं है। अब इसे तो आखिरी वक्त में पूरा होना है। अब नविश्तों को देखें और ये गवाही देते हैं। यीशु ने कहा तुम किताबें मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि तुम समझते हो या ईमान रखते हो कि तुम्हें इसमें हमेशा की जिंदगी मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। और दूसरे लफ्जों में अगर ये दरख्त कभी शाख पैदा करेगा, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और तुम मेरी डालियाँ हूँ। जो कोई मुझ पर ईमान लाता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। मुकद्दस यूहन्ना 14:12। अब वो जो मुझ में कायम रहता है, वो जो इब्तदा ही से मेरी जड़ में मौजूद था, यही वजह है यीशु दोनों यानी दाऊद की असल और नस्ल था। वो दाऊद से पहले, दाऊद में और दाऊद के बाद भी था। वो दोनों दाऊद की जड़ भी है और नस्ल भी है। वो सुबह का रोशन सितारा, शारून का गुलाब, वादी का गुले सोसन, अल्फा और ओमेगा, बाप बेटा और रूल कुछ है। अलुहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। वो दाऊद की असलो नस्ल है। वो पहले से चुनी गई जिंदगी और पहले से मुकरर शुदा जिंदगी है। वो जो मुझ में है और वो कलाम है जो के इब्तदा ही से है। जब वो जिंदगी आएगी तो वो मेरे लिए फल लाएगी, मुकद्दस यूहन्ना 14:12। लेकिन दूसरे भी इसी चीज से जिंदा रहेंगे, वो भी अपने आप को मसीही और ईमानदार कहेंगे, ना कि वो सब जो मुझे ए खुदावंद कहते हैं दाखिल होंगे। अब इस चीज को आखिरी दिनों में वाकया होना है और जाहिर होना है, जब खुदा के सब भेद मुकम्मल हो जाएंगे। ये बात हम थोड़ी देर बाद हासिल करेंगे। ये दोनों दरख्त यानी हकीकी अंगूर और झूठा अंगूर, ये दोनों किस तरह इकट्ठे परवरिश पाते हैं, आप कई सालों से मुझे इस पर मुनादी करते हुए सुन रहे हैं। उन्हें अफराद मिलाकर काइन और हाबल में साबित किया कि वो दो किस्म के अंगूर एक ही कुर्बान गाह पर इकट्ठे हुए। दोनों ही मजबी थे, दोनों ही मसाशुदा थे, दोनों जिंदगी की ख्वाहिश रखते थे और दोनों ही एक ही खुदा की इबादत करते थे। लेकिन एक को रद्द कर दिया गया जबकि दूसरे को कबूल कर लिया गया। सिर्फ एक ही चीज थी जिसकी मदद से कबूल किए जाने वाले ने अपने भाई से मुख्तलिफ काम किया, और वो चीज ये थी कि उस पर कुछ मुनकशिफ किया गया था। क्योंकि बाइबल कहती है ईमान ही से, अब्रानियों 11:12 में, ईमान ही से हाबल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा को पेश की और खुदा ने गवाही दी कि वो रास्तबाज था। यीशु ने कहा ये रूहानी मुकाशफा है कि वो कौन था। लोग इब्ने आदम के बारे में क्या कहते हैं कि वो कौन है। उसने यानी पतरस ने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। मुबारक है तू ए शमौन बरयूना, खून और गोश्त ने ये बात तुझ पर जाहिर नहीं की बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। किस पर? कलाम के हकीकी मुकाशफे पर। अब फिर एक हकीकी अंगूर है जैसे हाबल ने ईमान से किया। आप कहेंगे ये तो मुकाशफा नहीं था। ईमान क्या है? ईमान एक ऐसी चीज है जो आप पर जाहिर की जाती है। अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ तो ईमान रखें ऐसा होगा। ईमान खुदा की मर्जी का मुकाशफा है, इसलिए ये मुकाशफा से आता है। और आज की कलीसियाएं रूहानी मुकाशफा पर यकीन नहीं रखती। वो किसी निजाम की खुद मुख्तारा तालीम पर ईमान रखती है। ईमान ही से हाबल ने काइन की निस्बत खुदा को अफजल कुर्बानी पेश की और खुदा ने गवाही दी कि वो रास्तबाज था। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए हैं। देखें हम कहाँ रह रहे हैं और देखें किस घड़ी में हैं। कुछ अरसा हुआ एक आला मसीही आलिम से गुफ्तगू कर रहा था। उसने कहा मिस्टर ब्रैनम हम तमाम मुकाशफात का इनकार करते हैं। मैंने कहा फिर तो आपको मसीह का भी इनकार करना पड़ेगा क्योंकि वो खुदा का मुकाशफा है। खुदा इंसानी बदन में जाहिर हुआ। इसलिए जब तक आप इसे नहीं समझते आप खोए हुए हैं। यीशु ने कहा अगर तुम ईमान ना लाओ कि मैं वही हूँ तो अपने गुनाहों में मरोगे। वो खुदा का मुकाशफा है। खुदा का रूह इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ। अगर आप इस पर ईमान नहीं ला सकते तो आप खोए हुए हैं। अगर आप उसे खुदा के अलावा दूसरा तीसरा या कोई और शख्स बनाते हैं तो आप खोए हुए हैं। अगर तुम ईमान ना लाओ कि मैं वही हूँ तो तुम अपने गुनाहों में मरोगे। ये एक मुकाशफा है। इसमें हैरत की कोई बात नहीं कि वो मसीह को नहीं देख सकते। कोई इंसान मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा बाप उसे खींच ना ले। और वो सब जिनको बाप ने मुझे दिया है जो जड़ों में हैं वो मेरे पास आ जाएंगे। समझे? क्या आप समझ गए? हो हमें किस कदर उससे मोहब्बत, उसकी तारीफ और उसकी प्रस्तिश करनी चाहिए ताकि हम इन आखिरी दिनों में रूह के फलों को देखें और वक्त के इख्तिताम पर शजरे दुल्हन की पुख्तगी को देखें। हकीकी अंगूर और झूठे अंगूर दोनों को एक ही मसा मिला। दोनों पर एक ही बारिश हुई। हैरानगी नहीं कि उसने हमें खबरदार किया, अगर ये मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। गौर करें, वो एक जैसे दिखाई देते हैं, वो एक ही मसा से मामूर हैं। लेकिन गौर कीजिए तुम उनके फलों से। आप कैसे जानेंगे? आपको कैसे इल्म हुआ कि ये संतरे नहीं है क्योंकि इस पर ग्रेप फ्रूट लगा हुआ है? ये शाख बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि ये दरख्त में लगी हुई है, लेकिन ये ग्रेप फ्रूट पैदा कर रही है। ये पहले वाले की तरह नहीं है। और अगर कोई कलीसिया कहे कि उनका ईमान है कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है और उसकी कुदरत, उसके कामों और उसके कलाम का इनकार करे, तो मगर जो कलीसिया यीशु मसीह पर ईमान रखेगी तो वो यीशु मसीह जैसे काम भी करेगी क्योंकि उसके अंदर यीशु मसीह की जिंदगी होगी। और अगर ऐसा ना हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर जिंदगी उतर रही है। अगर ये जड़ में पहले से मुकर्रर नहीं तो ये हर बार ग्रेप फ्रूट ही पैदा करेगी या कोई मुख्तलिफ चीज पैदा करेगी। लेकिन अगर उस जड़ में पहले से मुकर्रर शुदा जिंदगी है तो इसमें यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा होगा। तो जड़ से कलाम ऊपर आ रहा होगा। जड़ मसीह है जो के वक्त का आगाज है। गौर कीजिए, लेकिन जो फल वो पैदा करते हैं वो फल आपको वो फर्क बताते हैं। यीशु ने कहा उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। कोई इंसान ऊंट कटारे से अंगूर नहीं तोड़ सकता, यहाँ तक के भले उस ऊंट कटारे को अंगूर की बेल में पैवंद किया गया हो। अगरचे ऐसा मुमकिन होता, लेकिन फल उसकी असलियत को जाहिर कर देता है। फल क्या है? कलाम, जो के किसी मौसम के लिए फल है। लेकिन ये वो है जो उनकी तालीम है। किस चीज की तालीम? किसी मौसम की तालीम, कि ये कौन सा वक्त है। इंसान की तालीम तंजीमी तालीम है, लेकिन किसी मौसम के लिए खुदा का कलाम क्या है? अब वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है, हमें बहुत सारे वक्त की जरूरत हो सकती है। लेकिन मुझे यकीन है कि आप जो यहाँ हैं, और मुझे यकीन है जो मुल्क के दूसरे हिस्सों में सुन रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम ज्यादा देर तक यहाँ ठहर नहीं सकते। मगर आप देखते हैं कि मसा नाराज़ों और झूठे उस्तादों पर भी आता है, और वह बिल्कुल ऐसे कामों को करते हैं जिन्हें करने का हुक्म खुदा ने नहीं दिया, लेकिन हर सूरत में वो लोग उसे करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो इससे बाज नहीं रह सकते। एक ऊंट कटारा किस तरह ऊंट कटारे के अलावा कुछ बन सकता है? कोई बात नहीं, चाहे इस पर कितनी अच्छी बारिश हुई है, वो ऊंट कटारा ही बनेगा। यही वजह है कि यीशु ने कहा कि वो इतने मिलते जुलते होंगे, अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। लेकिन जो जड़ों में हैं, अगर ये मुमकिन होता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। गेहूँ सिर्फ गेहूँ ही पैदा कर सकता है, ये सिर्फ यही पैदा कर सकता है। गौर करें, याद रखें कि खुदा तंजीम का मुसन्नफ नहीं है, बल्कि तंजीम का बानी शैतान है। और इसी तरह पिछली दफा मैंने इसे कलाम के जरिए साबित किया था, इसके अलावा और कई मर्तबा, मगर आज सुबह हम इसकी तफसील में नहीं जाएंगे। हम जानते हैं खुदा ने कभी लोगों को इस तरह मुनज्जम करके कोई तंजीम नहीं बनाई। आखिरी शागिर्द की वफात के कई सौ साल बाद उन्होंने पहली तंजीम बनाई, ये हमेशा नाकाम साबित हुई। और अगर ऐसा नहीं तो आज हम सब मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेसबिटेरियन, कैथलिक मोहब्बत में एक क्यों नहीं है? हमारे दरमियान खुदा के काम क्यों नहीं है? और फिर हर कलीसिया की बुनियाद एक ही चीज यानी कलाम पर क्यों नहीं है? वो चीजें क्यों हैं जो भाईचारे की बजाय तफ़रीका पैदा करती हैं? कलीसियाएं कह रही हैं कि अब हम पहले की निस्बत खुदा से कहीं ज्यादा दूर हैं। अब हमें बताया गया है कि तमाम पुरानी चीजें हमारी तालीम, मलामत और तंबी के लिए बतौर मिसाल इस्तेमाल हुई। जो पुराने ऐदनामे में बातें वाकया हुई वो अक्स हैं कि नए ऐदनामे के तहत हमारे दिनों में क्या कुछ होगा। बिल्कुल यूं जैसे आपने अपना हाथ कभी ना देखा हो, आप निगाह दौड़ाएं और दीवार पर एक साया दिखाई दे, जैसे रोशनी से मेरा हाथ बनेगा। और अगर आपको साया में पांच उंगलियां दिखाई दें जबकि ये नेगेटिव है, और फिर आप अपना हाथ आगे पॉजिटिव की तरफ बढ़ाएं, इस तरह नेगेटिव से पॉजिटिव में भी पांच उंगलियां ही दिखाई देंगी। बाइबल ने हमें बताया कि पुराना अहदनामा नई चीजों के लिए आने वाला नमूना या अक्स था, ये बिल्कुल मौजूदा चीजों के लिए नहीं बल्कि आने वाली चीजों के लिए अक्स है। आइए वापस चलें और देखें कि क्या चीजें किस जमाना के लिए थीं। क्या आप तमन्ना कर रहे हैं? तो फिर हम इसे कलाम के मुताबिक आगे पीछे से साबित करेंगे, ना कि किसी आदमी के ख्याल या नजरिए के मुताबिक। मुझे परवाह नहीं कि वो कौन है, चाहे मैं खुद हूँ या फिर कोई दूसरा इंसान हो। अगर वो शरीयत या नबियों के सहीफों के मुताबिक नहीं बोलता तो उसके अंदर कोई रोशनी नहीं, समझे? जो कुछ बाइबल ने कहा वो यूँ है, खुदा सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा, इससे कतई नजर कि वो कौन सा आदमी है। आइए अब वापस चलकर देखते हैं कि हमें दिखाने के लिए एक मिसाल वाकया हुई। आइए हम खुरूज की किताब में वापस जाते हैं और मूसा नामी करदार के मुतालिक बात करते हैं। वो एक मसाशुदा नबी था, वो अपनी पुष्ट के लिए खुदा की मर्जी और कलाम से मुलब्बस करके खुदा का भेजा हुआ शख्स था। चूँकि खुदा का कलाम तसलसल के साथ चलता है, इसलिए उसने कहा कि खुदा उस वक्त तक कुछ नहीं करता जब तक पहले वो अपने बंदों नबियों पर जाहिर ना करे। उस वक्त भी खुदा ने यही किया। जी हाँ, अब खुदा झूठ नहीं बोल सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता। अगर वो ऐसा करे तो वो खुदा नहीं।
नहीं
जनाब, उसे हमेशा सच्चा रहना है, खुदा में जरा भी झूठ नहीं। वो और वो इसे तब्दील नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो फिर वो खुदा नहीं है, इसलिए कि उसने गलती की। उसे तो लामहदूद होना है और लामहदूद से कभी गलती नहीं हो सकती, समझे? बस खुदा ने कभी भी जो बात कही वो ताअबद सच्ची है, समझे? और खुदा ने इसका वादा किया था। इसलिए ध्यान दीजिए, इसलिए बाइबल में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ इसका तसलसल कायम ना रहे। अब खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था कि उसकी नस्ल 400 साल तक अजनबी जमीन में परदेसी रहेगी और फिर खुदा उन्हें बड़े जोरावर और कुदरत वाले हाथ से निकाल लेगा। खुदा उन लोगों को जिनके दरमियान तेरी नस्ल के लोग रहते होंगे बड़े बड़े निशान और अजीब काम दिखाएगा। उस वादे का वक्त करीब आ चुका था, लोग उसे भूल चुके थे। उनके यहाँ फरीसी और सदूकी और कई दूसरी तंजीमें थीं, लेकिन खुदा खुद वहाँ आ मौजूद हुआ और एक ऐसे शख्स को निकाल ले गया जो उनमें से किसी से ताल्लुक नहीं रखता था। खुदा ने कभी किसी भी जमाने में और किसी भी वक्त में किसी तंजीम में से नबी नहीं लिया। नहीं जनाब, क्योंकि ऐसा शख्स बल खाया हुआ होता है, वो इस काम को नहीं कर सकता, इसलिए कि उसे अपनी तंजीम के साथ कायम रहना पड़ता है। मूसा खुदा के कलाम के साथ खुदा का भेजा हुआ शख्स था और जब वो इसराइल को लेकर वादे की सरजमीन को जा रहा था और खुदा के हुक्मों पर सख्ती से कायम था और उसे उस सफर के दौरान एक और नबी मिला एक और ममसूर जिस पर उसी हकीकी रुलकुश का मसा था जिसका मसा मूसा पर था। ये सच है, वो एक नबी था। रुहुलकुस उस शख्स पर था और उसका नाम बलाम था। हम सब उसको जानते हैं। ठीक है, जो बातें बिल्कुल जो बातें उसने कही थी वो 2800 साल बाद आज भी पूरी हो रही हैं। ए इसराइल, तुझ में जंगली सांड की सी ताकत है। जो तुझे बरकत दे वो बरकत पाएगा, जो तुझ पर लानत करे वो मलाउन होगा। तू ताकत और जोर में बढ़कर है, ए यकूब तेरे डेरे क्या ही खुशनुमा है। देखें, वो खुद को बाज नहीं रख सकता था। वो अपने दिल में उन लोगों पर लानत करने का इरादा लेकर आया था। ओ ए झूठे उस्तादो, तुम जो कई सालों से इन टेपों को सुन रहे हो और देख रहे हो जो खुदा ने कहा एन अपने वादे के मुताबिक उनकी तस्दीक कर रहा है, तुम खुद मुतालिया करते हो और जानते हो ये सच है, लेकिन अपने तंजीमी तफरीकों के बायस तुम इन पर बहस करते हो और लोगों को कहते हो कि ऐसा नहीं है। तुम पर अफसोस, इसलिए कि तुम्हारा वक्त करीब आ गया है। बलाम, उस पर भी उसी रुहुलकुस का मसा था जिसका मूसा पर था। मगर फर्क क्या था? मूसा की तालीम कामिल थी। बाइबल दूसरे पत्रस में कहती है कि उस बलाम की तालीम को बनी इसराइल ने कबूल किया जिसे खुदा ने कभी माफ नहीं किया। ये उनके हक में नाकाबले माफी गुना ठहरा, उनमें से कोई न बचा, अगरचे वो खुदा से बरकत पाकर निकले थे। और खुदा के जोरावर हाथ को उस नबी के वसीला काम करते और खुदा की तरफ से पूरी तरह उसको साबित होते हुए देखा था। और एक और नबी मुतजाद तालीम लेकर आ गया और मूसा के साथ बहस की और लोगों के सामने मूसा को गलत साबित करने की कोशिश की। दातन, कूरा और उनमें से बहुत सारे उसके साथ मिल गए और उन्होंने बनी इसराइल को सिखाया कि हरामकारी करें और उसकी तंजीम की पैरवी करें, क्योंकि हम सब एक हैं। हम मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन या पेंटिकॉस्टल, जो कोई भी हैं, हम सब एक हैं। हम एक नहीं हैं। तुम अलग क्यों वे लोग हो और खुदावंद के लिए मुकद्दस हो। तुम कलाम और खुदा के रूह के लिए मखसूस किए गए हो ताकि वो फल पैदा करो जिसका खुदा ने इस जमाने के लिए वादा कर रखा है। आप उन लोगों में से नहीं हो। मैं जानता हूँ कि वो खौफनाक हद तक मजबूत हैं, मगर ये सच्चाई है, आज भी वही है जो इन आखिरी दिनों में खिदमत के लिए मखसूस हैं। उनमें से बाहर निकल आओ। अब बलाम की तालीम गलत थी, बलाम की नबूवत गलत ना थी, बिल्कुल दुरुस्त थी, ये खुदा था। कितने इस बात पर यकीन करते हैं? बलाम की नबूवत बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि वो इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता था। खुदा का मसा इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता था, और खुदा ने इसका सच होना जाहिर और साबित किया, लेकिन बलाम की तालीम गलत थी। अब मत्ती 24:24 से इसका मुवाजना करें। वो मसाशुदा हैं, लेकिन उनकी तालीम झूठी है। तसलीस और इसी तरह की बाकी बातें गलत हैं। ये मुखालफ मसीह है। मुझे उम्मीद है कि आपके एहसासात मजरूह नहीं होंगे और आप अपने फोन बंद नहीं करेंगे। जो यहाँ बैठे हैं वो उठकर चले नहीं जाएंगे। जरा बैठे रहें और हम देखेंगे कि क्या रूल कुछ इसे हम पर जाहिर और साबित करता है। कहें, लेकिन जैसा कि आप जिस भी बात पर ईमान रखते हैं, फक्त बैठे रहें और सुनें और खुदा से कहें कि वो आपके दिल को खोल दे। तब आप देख सकेंगे कि आप कांटेदार झाड़ी हैं या ऊंट कटारा हैं, या इस वक्त आप किस मकाम पर खड़े हैं। समझे? अब हत्ता के यहूदा इस्करियोती, जो पहले से मुजरिम ठहराए जाने के लिए मुकर्रर था, यीशु के सामने बैठा था और यीशु ने उसको बताया, तू ही वो है, जो कुछ तू करने जा रहा है और जो कुछ तुझे करना है, मियाँ जल्दी कर ले। वो जानता था उसे क्या करना है। बस उसने खुदावन यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों और शोहरत के इर्ज बेच डाला। वो उसके शागिर्दों में से एक था। वो कलीसिया का खजानची था। यीशु उसे दोस्त कहकर पुकारता था। समझे? तो भी बाइबल कहती है कि वो हलाकत के फर्जंद के तौर पर पैदा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु खुदा के बेटे के तौर पर पैदा हुआ था। अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। इस मुतालिया के दौरान हम अच्छी तरह गौर करेंगे। हम सलातीन की किताब में से एक और वाकया जेरे गौर लाएंगे। वहाँ एक नबी था और उसका नाम मिकाया था। वो इमला का बेटा था और वो एक नबी था। वो नबी था और वहीं एक और नबी था, नबियों की तंजीम का सरबरा था, जो मसाशुदा था। और बाइबल कहती है कि वो नबी थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने कहा बलाम नबी था, मसाशुदा थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे उनमें से एक का नाम मिकाया था, जो खुदा से मसाशुदा और कलामे इलाही के साथ भेजा गया था। एक का नाम सदकिया था, जो खुद को खुदा का भेजा हुआ समझता था। वो भी खुदा से मसाशुदा था, लेकिन उसकी तालीम खुदा के कलाम के खिलाफ थी। झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े निशान दिखाएंगे। अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। गौर कीजिए, वो दोनों मसाशुदा थे। अब आप कैसे बता सकते हैं दुरुस्त कौन था और गलत कौन था? देखें, कलाम ने अखियब के साथ क्या वादा किया था। एलिया, जो उससे पहले नबी था, अपने जमाने के अजीम तर नबियों में से एक था और वो साबित शुदा नबी था। और उस साबित शुदा नबी ने कहा था, चूंकि अखियब ने ये बुराई की है, इसलिए इसका खून कुत्ते चाटेंगे, इसलिए कि इसने नबूत की जिंदगी ली है। एजबल की लाश को कुत्ते खाएंगे, और उसकी लाश मैदान में फेंक दी जाएगी। अब आप कैसे उसको बरकत देंगे जिस पर खुदा ने लानत की हो? जैसे बलाम ने कहा, जिसको खुदा ने बरकत दी हो उस पर आप लानत कैसे कर सकते हैं, समझे? लेकिन ये नबी मुखलिस थे, उनके अच्छे और मौजिज आदमी होने पर शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसराइल में नबी होना, बल्कि इसराइली नबी होना बड़ी ही इज्जत की बात थी। अगर वो इज्जतदार ना हो तो उन्हें संसार कर दिया जाता था। वो मौजिज आदमी थे, वो जहीन थे, वो तलीम याफ्ता थे, वो पूरी कौम में से अखियब के चुने हुए थे। बहन राइट, क्या आप समझ गई हैं? पूरी कौम में से चुने हुए, बहुत ही मुनासिब। और अब मिकाया ने रोया देखी तो वो अपने दिल से जानता था कि कलाम ने क्या कह रखा है, लेकिन वो देखना चाहता था कि जो रूल कुछ उसके अंदर था वो क्या कहता है। उन आदमियों ने उसे कहा, जो कुछ दूसरे नबी कह रहे हैं तू भी वही बात कहना, और अगर तू ऐसा करेगा तो बेशक तुझे दोबारा अपनी रफाकत में शामिल कर लेंगे, समझे? हम तुझे भी अपने में शामिल कर लेंगे, हम वापस तुझे अपनी तंजीम में ले लेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि तू नबी है, लेकिन तू हमेशा हम पर लानत करता रहता है, तू हमेशा अखिया पर लानत करता है। अब सदकिया जो के सरबराह है, वो पोप या जो कुछ भी था, अब उसने अखियब को बरकत देकर कहा, जा और कब्जा कर ले। अब इमला के बेटे, तूने भी बिल्कुल वही बात कहनी है, तू गरीब आदमी है और तेरे पास तो अभी तक मुश्किल से जमात भी नहीं है, जबकि उन नौजवानों के पास लाखों लोग हैं, पूरी कौम उनके साथ है। अब तू भी वही कहना जो उन्होंने कहा, तू समझ गया कि तुझे क्या करना होगा? तू मुल्क का सबसे अच्छा मेवा खाएगा। वो वहाँ गलत आदमी से बात कर रहे थे। क्या होता अगर उससे यूँ कहा जाता, मिकाया क्या तुझे सदकिया में कोई बुराई नजर आती है? नहीं। क्या तूने उसे कभी गुनाह करते पकड़ा है? नहीं। क्या तूने उसे कभी किसी पर लानत करते देखा है? नहीं। क्या तूने उसे कभी शराब पीते हुए पकड़ा है? नहीं। क्या तू उसकी तालीम पर बहस कर सकता है? नहीं। क्या तुझे यकीन है कि उसकी डॉक्टर की डिग्री गलत है? नहीं। क्या तुझे यकीन है कि उसकी PhD दुरुस्त है? यकीनन, उसने ये सनेड्रिन काउंसिल से हासिल की है और अंदाजा है कि ये काउंसिल से ही है, और मेरा ख्याल है ये बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, तो फिर तू क्यों इसके साथ शामिल नहीं हो जाता? क्योंकि वो कलाम से दूर हो चुका है। ठीक है, तो फिर हम मुकाबला करवा के देखेंगे, जैसे इससे पहले एलिया के वक्त हुआ। अगर आप खुदा के बच्चे हैं तो फिर आपको इस बाइबल के नबी के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि ये कलाम है। वक्त या मौसम पर गौर करें। ठीक है, क्या होता अगर सदकिया कहता, ओ मैं जानता हूँ कि नबी ने ये कहा है, लेकिन ये किसी मुस्तकबिल की पुश्त के लिए है, ये अब से बहुत देर बाद की बात है। मिकाया ने कहा, इंतजार करो, पहले मैं खुदा की तरफ से रोया देख लूं, फिर तुम्हें बताऊंगा। उन्होंने कहा, क्या तू फिर उनकी तरह ही कहेगा? उसने कहा, मैं सिर्फ वही कहूंगा जो खुदा का सुखन होगा, ना ही इसके अलावा और ना ही इससे ज्यादा कहूंगा, ना ही मैं इसमें एक लफ्ज का इजाफा कर सकता हूं और ना ही कोई लफ्ज घटा सकता हूं। बस उस रात दुआ के दौरान खुदावंद एक रोया में उसके पास आया। वो अगली सुबह उनके पास गया और कहा, अब यहाँ भी दो नबी हैं, अफवाज और अवाम की नजर में सदकिया कौम का सबसे बड़ा आदमी था। वो बादशाह की तरफ से सरबरा था, वो तंजीम की तरफ से बाकी तमाम दूसरे नबियों का सरबरा था। उसकी तंजीम ने उसे तमाम नबियों पर सरबरा मुकरर किया था, शायद इसलिए कि वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, सबसे ज्यादा बेहतर तालीम याफ्ता हो और इस काम के लिए सबसे मुनासिब हो। उस पर रूल कुछ का मसा भी था, इसलिए तो उसे नबी कहा जाता था। यकीनन वो था, वो कोई आम नबी नहीं था बल्कि एक अबरानी नबी था। अब उसे देख लीजिए। सदकिया ने कहा, खुदावर ने मुझसे कलाम किया, उसने मुझे ये लोहे के दो सिंह दिए हैं। ये एक अलामत थी, एक नबी अक्सर अलामत इस्तेमाल करता है। खुदावर ने फरमाया है, लोहे के दो सिंह बना। रूल कुछ ने मुझसे कहा है, ये ले, उसने मुझे मसा किया है, और ये मत सोचना कि ये कोई कुर्बानी के मुतालिक है, बल्कि एक नुक्ता पर पहुंचने के लिए है। रूहुल कुद्स जो मेरे वसीला गैर जुबानों में बातें करता है और जिसने मुझे साबित किया है, उसने कहा, ये लोहे के सिंह ले और बादशाह को बता कि इसके जरिए मैं अरामी लोगों को पीछे धकेल कर मुल्क से बाहर निकाल दूंगा और मैं इसे ये जमीन वापस कर दूंगा जो हकीकत में इसराइल की मलकियत यानी कलीसिया की है। भाइयों, ये इंतहाई बुनियादी बात है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस जगह बलाम था। बलाम भी मूसा ही की तरह बुनियादी लिहाज से बोल रहा था। मूसा खुदा का दुरुस्त नंबर 7 है और बलाम ने कहा, मेरे लिए 7 कुर्बान गाहें बनाओ, कुर्बानी के लिए 7 बेहतरीन बैल और 7 मेंढे तैयार करो। ये खुदा के बेटे की आमद की गुफ्तगू थी। बुनियादी तौर पर वो इतना दुरुस्त था जितना के कोई हो सकता है। और यहाँ सदकिया भी बुनियादी तौर पर दुरुस्त था कि ये जमीन हमारी मिरास है, इसलिए क्यों अरामी और फलस्ती इस हासिल शुदा खुराक से अपने बच्चों और दूसरों के पेट भर रहे हैं, जबकि वो हमारे दुश्मन हैं और हमारे बच्चे इस खुराक से महरूम हैं, जबकि खुदा ने वो जमीन हमें दी है। भाइयों, ये अच्छी दलील है। मेरा अंदाजा है वो बनी इसराइल के आगे ललकार रहा होगा और वो भी अपने पूरे जोर से चला रहे होंगे। अब मैं आज के दौर के बारे में बात कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ जाएंगे। सभी ललकार और पुकार रहे हैं। क्या आपको गुज़िश्ता इतवार की दाऊद के मुतालिक गुफ्तगू याद है? समझे, आप लोग जो रेडियो पर सुन रहे थे या जिन्होंने टेलीफोन के जरिए राब्ता कर रखा था, अगर आप पिछले इतवार के पैगाम को नहीं समझ सके तो इसे समझने की कोशिश करें। खुदा की मर्जी के बगैर खुदा की खिदमत करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना मुखलिस और अच्छा है, खुदा इसे हरगिज कबूल नहीं करेगा। समझे, अब सदकिया भी यहाँ खुद को दुरुस्त ख्याल कर रहा था। मिकाया ने कहा, मुझे खुदा से पूछ लेने दो। बस वो अगले सुबह खुदावंद यूं फरमाता है के साथ आ मौजूद हुआ। उसने अपनी रोया को कलाम के मुताबिक परखा। अब अगर वो सदकिया से कहता, क्या तुझे मालूम है कि बाइबल के नबी ने इस शख्स का क्या अंजाम बताया था? लेकिन इस वक्त नहीं, क्योंकि ये आदमी एक दयानतदार आदमी है। वो कोशिश कर रहा था इसे समझने में नाकाम ना रहे। वो कलीसिया को उसकी मेरास की चीजें वापस दिलाने की कोशिश कर रहा था। वो कलीसिया को उसकी जायदाद वापस दिलाने की कोशिश कर रहा था, रूहानी चीजें नहीं। अगर ऐसा होता तो वो पूरी कौम को हिला देता जैसे एलिया ने किया, लेकिन वो उन्हें मादी चीजें देने को कोशा था। ये हमारी जायदाद है, हम एक बहुत बड़ी तंजीम है, हम इसमें शामिल है, हम तमाम और आप तमाम लोग और तुम प्रोटेस्टेंट लोगों को भी हमारे साथ मिलकर चलना चाहिए। जी हाँ, हम थोड़ी देर में इसमें आ रहे हैं। बहरसूरत ये सब भाई और बहने हैं। ऐसा नहीं है, खुदा की हकीकी कलीसिया के साथ ना कभी ऐसा था और ना कभी ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। गौर करें, सदकिया ने रोया देखी और फिर उसने कहा, खुदा ने मुझसे कलाम किया है। अब देखें, वो मुखलस आदमी था। उसने कहा, खुदा ने फरमाया है कि ये सींग बना और बादशाह के सामने जाकर मगरिब की तरफ धकेल उनकी मौजूदगी के मकाम से, जिस सिमत में भी वो इलाका बनता था, धकेल, और ये खुदावन यूं फरमाता है होगा, यानी वो फतह याब होकर वापिस लौटेगा, कलीसिया को फतह होगी, वो दुश्मनों को निकाल देगा। ये इंतहाई करीब की बात है, क्या ऐसा नहीं है? ये क्या मामला था? जब मिकाया वहाँ आया तो उससे कहा गया, अब तू अपनी नबूवत बयान कर। उसने कहा, चढ़ाई कर, मगर मैंने बनी इसराइल को भटकी हुई भेड़ों की मानी देखा जिनका कोई चरवाहा ना हो। ये बात बिल्कुल बरक्स थी। अब आप जो इस जमात में मौजूद हैं, अब उनमें कौन दुरुस्त था? दोनों ही नबी थे। सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप उन दोनों में फर्क बता सकते हैं, और वो ये है कि उन्हें कलाम के मुताबिक परखें। उन्होंने कहा, तुझे ये बात किस तरह हासिल हुई? उसने कहा, मैंने खुदा को एक तख्त पर बैठे देखा और कहा, मैंने आसमानी मजलिस को उसके गिर्द जमा होते देखा। अब याद रखें, सदकिया ने यही कहा था कि मैंने भी खुदा को रूह में देखा है, मैंने खुदा को देखा, उसने मुझे ये लोहे के सिंह बनाने को कहा, जा और उन कौमों को वहाँ से निकाल दे क्योंकि वो जगह हमारी है, दूसरों का उस पर कोई हक नहीं। अगर वो दुरुस्त तौर पर खुदा के साथ खड़े रहते तो वो इसे हासिल कर सकते थे, लेकिन वो खुदा से दूर हो चुके थे। और यही बात तंजीम बंद कलीसिया पर सादिक आती है, ये चीजें इसका हक हैं, लेकिन आप धोखा खाकर इससे बाहर हो चुके हैं, क्योंकि आप खुदा के कलाम और खुदा के रूह से दूर हो चुके हैं, वरना वो आपको मसा करता और वक्त का कलाम आप पर जाहिर करता। आप इस पैगाम को हासिल करने में नाकाम रहे। ध्यान दें, अब क्या हुआ? मीकायाह ने कहा, मैंने खुदा को देखा। उसने ऐसा कहा, मैंने आसमान में तख्त पर बैठे देखा और उसकी मजलिस उसके गिर्द जमा थी। उसने कहा कि हमारी तरफ से अखियब को बहकाने कौन जाएगा ताकि मेरे साबित शुदा एलिया नबी की बात सच साबित हो। मैंने फरमाया और वो आया। एलिया के पास मेरा कलाम था। आसमान और जमीन टल जाएंगे मगर मेरा कलाम हरगिज न टलेगा। मुझे परवाह नहीं कि वो कितने जदीद हो गए हैं या कितने अच्छे हो गए हैं या कितने तलीम याफ्ता हो गए हैं या कितने ज्यादा हो गए हैं, लेकिन मेरा कलाम कभी न टलेगा। और आलमे रवा में से एक झूठ बोलने वाली रूह उसके कदमों में आकर गिरी और बोली, अगर तुम मुझे इजाजत दे तो मैं उसके नबियों को अपना मसा दूंगी और उन्हें किसी किस्म के निशान और अजीब काम दे दूंगी, हत्ता कि उन्हें कलाम से दूर कर दूंगी। वो ये भी जान ना पाएंगे कि ये तेरा कलाम है। वो शोहरत की खातिर इसे नजरअंदाज कर देंगे। भाइयों, वक्त तब्दील नहीं हुआ। भाई नेवल, ये सच है। आपको याद है कि ये सच है। मैं उसमें दाखिल हो जाऊंगी और उससे वही काम जाहिर होंगे जो दूसरे करते हैं। मैं उसे नबुवत करने और झूठ पर आमादा करूंगी। ये कैसे झूठ हो सकता था? क्योंकि ये कलाम के बरक्स था। आप इन झूठे बपतिस्मों को और बहुत सी झूठी चीजों में से किसी को लें। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि वो कितनी हकीकी दिखाई देती हैं। वो चाहे कितनी भी नकल करने की कोशिश करें, अगर ये इस जमाने के लिए खुदा के कलाम के मुतजाद हैं, तो फिर ये झूठ है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। आप कहेंगे, ठीक है, हमारी कलीसिया और हमने ये किया और हम ये करते हैं और हमारी कलीसिया का यही तरीका है और वो है। मुझे परवाह नहीं कि ये क्या है। अगर वो आज के जमाने के लिखे हुए कलाम के बरक्स है तो ये झूठ है। तो खुदा का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने मुखलिस, कितने तलीम याफ्ता, कितने जहीन, कितने सच्चे और कितने जिम्मेदार दिखाई देते हैं। वो आज के जमाने के कलाम के मुतजाद हैं। अगर वक्त ने इजाजत दी तो हम चंद मिनटों के बाद मजीद इसकी गहराई में जाएंगे। अगर ऐसा ना हो सका तो आज रात हम दोबारा इस बात को लेंगे। गौर करें, वो बिलाशुबा मुखलिस और अच्छा आदमी था। और उसने कहा, फिर मीकायाह ने कहा, उसके मुंह पर कहा, ना कि उसके पीछे, बल्कि इस तरह कहा, तेरे ऊपर एक झूठी रूह का मसा है। क्या यही बात किसी बिशप को बतानी चाहिए? लेकिन मीकायाह ने यही कुछ किया और वो बिशप आगे बढ़ा और बोला, तेरी हमारे साथ मजीद कोई रफाकत ना होगी। और उसने मीकायाह के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, तू जानता है कि मैं एक साबित शुदा आदमी हूँ, इसी वजह से मेरी कलीसिया ने मुझे इस चीज का सरबराह मुकरर किया है। खुदा के लोगों ने राय शुमारी करके मुझे ये मकाम दिया है और मेरी तंजीम ने मुझे सरबराह बनाया है और खुदा ने ये जमीन हमें दी है और वो चाहता है कि ये हमारी मेरास हो जाए और मैं खुदावंद यूं फरमाता है का हामिल हूँ। उसने मीकायाह को थप्पड़ मारा और कहा, खुदा की रूह मुझ में से निकलकर किस रास्ते से तेरे पास आई? मीकायाह ने कहा, इन्हीं दिनों में किसी दिन तू देख लेगा जब कैलिफोर्निया समुन्दर की तह में और ये सारी चीजें गर्क हो जाएंगी, समझे? जब तू अंदर की कोठरी में कैद होगा तो तू देख लेगा कि वो किस रास्ते से गई। अब अखियब, तू क्या कहेगा? मैं तो अपने नबी का यकीन करता हूँ और बस यही बात कहता हूँ। अगर वो कलाम से तलाश करता तो क्या होता? देखें, वो अपने आप को मलाउन देखना नहीं चाहता था। मेरी सुने, वो अपने आप को मलाउन नहीं देखना चाहता था। कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहता। और मेरे तंजीमी भाइयों, यही मामला आपके साथ भी है। आप सोचते हैं कि आप दुरुस्त हैं, जबकि आप अपने दिल में जानते हैं, क्योंकि जब आप बाप बेटे और रूह कुदस के अलकाब में बपतिस्मा देते हैं तो आप झूठ बोल रहे होते हैं। और जब आप पेश नगोइयां करते हैं और वो बातें कहते हैं जो अमलन आप कर रहे हैं, और जब इब्तदाई सबूत और दीगर ऐसी बातों को शामिल करते हैं, तो आपको इल्म होता है कि आप गलत हैं। ये कैसे मुमकिन है कि इब्तदाई सबूत गैर जुबाने बोले और खुदा के वादे के खिलाफ बातें करें जो इस जमाने के लिए हैं? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आप मलाउन कहलवाना नहीं चाहते, क्या आप चाहते हैं? लेकिन ये लिखा है और ये पूरा होगा। यही हैवान का निशान है। ये सच्चाई के इतना करीब होगा कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। हर निशान, हर अजीब काम, मसाशुदा लोग, नबुवत और इस किस्म के तमाम काम हो रहे हैं, तमाम किस्म के निशानात, तमाम किस्म के अजीब काम हो रहे हैं। आप फर्क कैसे बयान करेंगे? इस जमाने के लिए जो कलाम है उस पर निगाह करें। इसी तरह आप मालूम कर सकते हैं, मूसा को देखें, वो किस तरह बलाम को जवाब देने के काबिल हुआ। मिकाया को देखें, हमने कैसे जाना कि वो दुरुस्त था। इससे पहले कलाम ने अखियब के खिलाफ नबुवत की थी, और कलाम ने हमारे सामने आज के लिए नबुवत कर रखी है कि ये तंजीमें लानत के नीचे हैं, और ये काम खुदा की कलीसिया के वसीले होंगे जो उसके दुरुस्त मसा के तहत होगी। उसके पास खुदा का कलाम होगा, वो कलाम की दुल्हन होगी। ये हमारा मकाम है। अब आज सब कुछ वैसा ही है जैसा कि तब था। बाइबल ने कहा, दो या तीन गवाहों के मुंह से हर बात सच्ची साबित होगी। मैंने बलाम के बारे में गुफ्तगू की, मैंने बलाम और मूसा की बात की, और मैंने मिकाया और सदकिया की बात की। अब मैं एक और मिसाल देने जा रहा हूँ। सैकड़ों मिसालें हैं, लेकिन एक मजीद दूंगा ताकि तीन गवाहियाँ पूरी हो जाएं। मैंने सबकी फहरिस्त लिख रखी है, लेकिन मैं वक्त को बचाना चाहता हूँ। यर्मिया बरादरी से खारिज किया हुआ था, लेकिन खुदा का साबित शुदा नबी था, और वो लोग उससे नफरत करते थे। उन्होंने उस पर कच्चे सड़े फल और दीगर ऐसी चीजें फेंकी, और उसने उन पर लानत कर दी, और उसने कई काम किए, और वो अपने पहलू के बल लेटा रहा और बहुत कुछ किया और निशान जाहिर किए कि इसराइल गलत है। हर सच्चा नबी जो कभी दुनिया में आया, उसने कलीसिया के तंजीमी अदारों पर लानत की। ला तब्दील खुदा उसे कैसे तब्दील कर सकता है? रूल कुछ इस घड़ी का नबी है, वो अपने कलाम को जाहिर और साबित कर रहा है। रूल कुछ मूसा के जमाने का नबी था, रूल कुछ मिकाया के जमाने का नबी था। रूल कुछ जिसने कलाम लिखा वो आता है और कलाम की तस्दीक करता है। अब मिकाया के जमाने में क्या हुआ? अखियब मारा गया, और खुदा के कलाम के मुताबिक कुत्तों ने उसका लहू चाटा। बस खुदा फरमाता है, तुम सब झूठे असातजा, जो कुछ तुम बो रहे हो वो किसी दिन काटोगे, ऐ अंधों के अंधे रहनुमाओ। मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अगर रूहुल कुद्दुस ने इस कमरे में मुझे यूं ना कहा होता, तो मैं कभी भी इस अंदाज में आपसे ना कहता। क्या मैंने आपको कोई गलत बात बताई है? बल्कि वही जिसे खुदा दुरुस्त साबित करे। जाग उठो मेरे भाइयों, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मुझे ये कहने दीजिए, जब कांटे बड़े होकर ऊंट कटारे बने, तो क्या वो इसके लिए पहले से मुकर्रर ना थे? तो बरगजीदा लोग इसे देखे बगैर कैसे रह सकते हैं? क्योंकि बरगजीदा इसे देखने के लिए मुंतखब किए गए हैं। वो सब जो बाप ने मुझे दिए हैं मेरे पास आ जाएंगे, यीशु ने कहा। उनमें से कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता अगर वो बनाए आलम से पेशतर मुझे दिया ना गया हो, जब उनके नाम बरा की किताबे याद में लिखे गए थे। कलीसिया के रिकॉर्ड में नहीं, बल्कि किताब बरा की किताबे हयात में। गौर करें, यर्मिया खड़ा हुआ, वो लोगों के सामने साबित शुदा नबी था, हालांकि वो लोग उससे नफरत करते थे। और वो गया और उसने एक जुआ बनाया, उसने उसे लिया और अपनी गर्दन पर रख लिया, और इसी हालत में लोगों के सामने चला गया। उन्होंने कहा, ओ हम खुदा के अजीम लोग हैं, क्योंकि हम इसराइली हैं, हम अपने इबादत खाना से पूरी अकीदत रखते हैं, हम हर इतवार को इबादत के लिए जाते हैं, हम कुर्बानियां चढ़ाते हैं और हम हदिये देते हैं। नबूकदनज़र किस तरह खुदा की मुकद्दस चीजें ले सकता है? तुम्हारे गुनाहों ने ऐसा किया। खुदा ने कहा, अगर तुम मेरे हुक्मों पर कायम रहोगे तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा ना करो तो ये तुम्हारी तरफ आ रहा है। और ये बिल्कुल सच है, अभी तक ऐसा ही है। उसके हकाम पर, उसके कलाम पर, जिसका उसने इस जमाने के लिए वादा किया है। अब गौर कीजिए, अब यर्मिया खुदा की मर्जी से साबित शुदा नबी था, अगरचे उससे नफरत की जाती थी। हर जमाने के नबी से नफरत की गई। उन्होंने अपने जमाने की तंजीमों के बरक्स इतने काम किए कि हर कोई उनसे नफरत करता था, हत्ता के बादशाह और सब लोग नफरत करते थे। बस यर्मिया ने अपनी गर्दन पर एक जुआ रखा और कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, 70 साल तक तुम इस तरह गुलाम रहोगे, इसलिए कि खुदा के कलाम ने उसे समझ बख्शी थी। 70 साल तक फिर हननिया हननिया, मेरा ख्याल है इसका तलफ्फुज यही है, HANANIAH। हननिया भी लोगों के दरमियान एक नबी था। तब वो आया, उसने यर्मिया की गर्दन पर से जुआ उतारा और तोड़ डाला और कहा, बल्कि उसने लोगों के दरमियान एलानिया कहा, देखें, और वो खुदा के कलाम के बरक्स कह रहा था और उसने कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि 2 साल के बाद ही तुम वापिस आ जाओगे। दोनों मसाशुदा नबी थे, उनमें फर्क क्या था? एक खुदा के कलाम के मुताबिक बोल रहा था जबकि दूसरा उसके बरक्स बोल रहा था। यर्मिया ने कहा आमीन तमाम बुजुर्गों और सारी जमायत और इसराइलियों के सामने। देखें, वो भी खुद को यर्मिया जितना बड़ा साबित करना चाहता था। तू जानता है कि वो तुझे किसी तौर पर भी पसंद नहीं करते, इसलिए कि मैं भी एक नबी हूँ, मैं तुझसे बढ़कर नबी हूँ, क्योंकि तू झूठी नबूवत कर रहा है। तूने कहा है कि खुदा के लोग इस तरह के हालात से दो चार होंगे। वो आज भी यही कुछ कहते हैं, लेकिन आप वहाँ कलीसिया की हैसियत से होंगे, आप मालाउन ठहराए गए हैं। तमाम कलीसियाएं और तंजीमें जो खुदा के कलाम की बजाय इंसानी रवायात को थामे हुए हैं, खुदा की तरफ से मलाउन करार दी गई हैं। अब गौर करें, वो आता है और हननिया उसकी गर्दन से जुए को उतार कर, जो कि खुदा का एक निशान था, तोड़ देता है और कहता है, खुदावंद यूं फरमाता है कि वो 2 साल के बाद ही वापिस आ जाएंगे, सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि मैं फला फला हूँ, क्योंकि वो उनमें एक तंजीमी नबी की हैसियत से खड़ा था। यर्मिया बियाबान में तन्हा जिंदगी गुजारने वाला था। वो हमेशा उनके खिलाफ बुराई की नबूवत करता था क्योंकि वो बुरे थे, लेकिन हननिया उनको बता रहा था, ओ तुम सब बिल्कुल दुरुस्त हो क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक इसराइल से है और जब तक तुम इसराइली हो ये सब जरूरी है। देखें, आप हम खुदा ऐसा नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ कि यहाँ छोटा सा वाक्य हुआ है, लेकिन आप खतरा महसूस ना करें और ना ही खौफ खाएं। हो भाइयों, वो अब भी जिंदा हैं। फिक्र की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक है, हमने हर चीज पर काबू पा लिया है, हम कलीसिया हैं। आप इस तरह का ख्याल ना करें। जी हाँ, बस हननिया ने कहा, सब कुछ ठीक है, वो 2 साल में वापिस आ जाएंगे। बस ये छोटी सी बात वाक्य हुई है, ये कोई गैर मामूली बात नहीं, ऐसा पहले भी हुआ है। सिर्फ नबूकत नजर यहाँ आएगा, लेकिन हमारा खुदा इस सारे मामले की देखभाल करेगा। हालांकि कलाम ने कहा कि 70 साल पूरे गुजरेंगे हत्ता कि ये नस्ल खत्म हो जाएगी और एक और पुश्त पैदा होगी। एक पुश्त 40 साल की है और तकरीबन 2 पुश्तों तक तुम वहाँ रहोगे। और यर्मिया ने ये बात खुदा के कलाम के मुताबिक कही थी। हननिया ने जुआ तोड़ डाला। यर्मिया ने कहा ठीक है आमीन। लेकिन हननिया, हमें ये याद रखना चाहिए कि हम दोनों नबी हैं और खादम हैं। इसलिए मेरे भाई, मैं तुझसे कहता हूँ, हम याद रखें कि हमसे पहले भी नबी हुए हैं। उन्होंने बादशाहतों के खिलाफ नबूवत की और उन्होंने कई और बातों के खिलाफ नबूवत की। लेकिन याद रख कि जब कोई नबी नबूवत करे तो उसे जरूर ही कलाम के मुताबिक होना चाहिए, जैसे मिकाया और मूसा और बाकी सब नबी थे। इसे जरूर ही कलाम के मुताबिक होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो याद रख के क्या होता है। तब हननिया का कहर भड़क उठा, मैं हननिया हूँ, इसमें कोई शक नहीं, मैं खुदावंद का नबी हूँ और ये मैं कहता हूँ कि सिर्फ 2 साल असीर रहेंगे। दूसरे लफ्जों में, मुझे कोई परवाह नहीं कि कलाम क्या कहता है, ये उसका मसा है। मैं कहता हूँ कि 2 साल बाद ये वापिस आएंगे। यर्मिया उसके सामने से बाहर चला गया और कहा, खुदावन मुझे परवाह नहीं कि हननिया ने क्या कहा, मेरा अब भी ईमान है और मैं जानता हूँ तेरा कलाम यूँ कहता है, मैं तेरी सच्चाई पर कायम रहूँगा, मैं इस शख्स से धोखा नहीं खाऊंगा। खुदा ने कहा, जा और हननिया को बता दे कि अब मैं उन पर लोहे का जुआ रखूंगा, क्योंकि उसने ये किया, इसीलिए हननिया को उसी साल रूहे जमीन से मिटा दिया गया। ये हमारी मिसालें हैं, वो दोनों ही नबी थे। इस वक्त के मुतल्लिक बहुत सी बातें और बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन गौर करें, यीशु ने कहा कि इन आखिरी दिनों में एक मर्तबा फिर 2 रूहें दोबारा करीब करीब आ जाएंगी। क्या ये दुरुस्त है? अब गौर कीजिए, अब ये इतनी ज्यादा करीब होंगी जैसे कि ये तब थी, क्योंकि ये आखिरी वक्त है। ओ बच्चों, खुदा हम पर मेहरबान है। उस वक्त तक ये इतनी हकीकी सूरत इख्तियार कर लेगी कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। अब आप कैसे बात करेंगे? हमने इनके जमानों में से इन्हें बयान किया है। आप इसे आज के जमाने के लिए कैसे बयान करेंगे? इसका एक ही तरीका है कि कलाम के साथ खड़े रहें। इसलिए कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। अब इस सारे पैगाम को निगाह में रखें, हत्ता कि जब इस जमीन पर मेरा वक्त खत्म हो जाएगा और मैं यहाँ से जा चुका हूँगा, तो आप इस टेप को सुनकर इसका हवाला दे सकें। मेरी आवाज को सुनिए कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। अगर खुदावंद अपनी आमद से पहले मुझे बुला ले, तो याद रखें कि खुदावंद के कलाम से मैंने खुदावंद के नाम में आपको बता दिया है। जी हाँ, गौर करें, इनमें इतनी करीब की मुशाबत होगी कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। क्योंकि एक रूह से एक जैसे निशान और एक जैसे मौजजात जाहिर होंगे। क्या ये बात दुरुस्त है? जिस तरह उन दो नबियों का मामला था जिन नबियों के मुतालिक हमने गुफ्तगू की, अब इसी तरह ये लिखा है। अब अगर आप चाहते हैं तो आएं इस एक हवाले को लेते हैं जो दूसरा तिमोथियस 3 में है। आइए छोड़ न जाएं। मैं नहीं चाहता, मैं घड़ी को देख रहा हूं और मैं बहुत सी बातें छोड़ देना चाहता था, लेकिन अब मेरा ख्याल है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें, गौर करें, जैसा कि मैं यहाँ खड़ा पसीने में भीगा हुआ हूँ, लेकिन देखें, मैं फिर भी खुश हूँ और मैं जानता हूँ कि ये सच है। दूसरा तिमोथियस 3:8, पालूस जिसने ये बात कही, अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी इस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी सुनाए तो मलाउन हो। अब एक और फरिश्ता नीचे आता है, ये दूसरा तसल्ली क्यों हो, मैं माफी चाहता हूँ। अब दूसरा तिमोथियस 3:8 पर गौर करें। गौर करें, पालूस अब क्या बता रहा है। आइए शुरू करते हैं, आइए पहली आयत से शुरू करते हैं और अब बड़ी तवज्जो के साथ सुने। जिनके पास बाइबल है वो मेरे साथ पढ़ें और जिनके पास बाइबल नहीं है वो गौर से सुने। लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाने में, इन अल्फाज पर निशान लगाएं, आखिर जमाना, क्योंकि इसी वक्त में ये बातें पूरी होंगी। बुरे दिन आएंगे, हम इन्हीं में हैं, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, कुफरगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्रे, ना पाक होंगे। इस हजुम पर निगाह करें जिससे आज हमारा वास्ता है, जो के गले सड़े हुए हैं। यहाँ तक के जवान मर्द बाहर गलियों में औरतों की तरह अपने बालों को पेशानियों पर सजाए हुए नजर आते हैं। ये बरगश्तगी है, ये सदूमी है। क्या आपने इसी साल इसी महीने के रीडर डाइजेस्ट में पढ़ा है, लिखा है बहुत से अमरीकी लोग इस उम्र में, मेरा ख्याल है 20 से 25 साल की उम्र में, अभी से वो अधेड़ उम्र की हालत में लगते हैं। वो खत्म हो चुके हैं, वो गल सड़ चुके हैं। साइंस कहती है कि जब एक मर्द और एक औरत तकरीबन अपने इब्तदाई 20 साल को पहुंचते हैं तो वो अधेड़ उम्र के लगते हैं, इसलिए उनके जिस्म गल सड़कर कचरे में तब्दील हो चुके हैं। हो अमेरिका, खुदा ने कितनी बार तेरे ऊपर जुम्बश की, लेकिन अब तेरा वक्त आ गया है, इसलिए कि तू गंदगी में बाकी दुनिया से आगे है। बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्रे, ना पाक, तबाई मोहब्बत से खाली, यहाँ तक कि आप में से एक दूसरे के लिए सच्ची मोहब्बत नहीं है, ना मर्द को औरत से, ना औरत को मर्द से, हत्ता कि कुदरती मोहब्बत ही नहीं बल्कि जिनसी गंदगी है। संग दिल, तोमत लगाने वाले, बेजब, तुंद मजाज और नेकी के दुश्मन, दूसरे लफ्जों में वो हमें कहते हैं जनूनियों का ग्रो। किसी रोज कोई शख्स यहाँ गिरजे में आ रहा था और उससे कहा गया वहाँ मत जाना क्योंकि वो सिर्फ शोरगुल करने वाला ग्रो है। देखें, ये नेकी के दुश्मन हैं, दगाबाज, डीट, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को दोस्त रखने वाले। आप कहेंगे भाई ब्रैनम ये तो कम्युनिस्टों के मुतालिक है। अगली आयत देखें क्या कहती है, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे लेकिन क्या होगा, लेकिन उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। यीशु मसीह जो कलाम है कल, आज और अब तक यकसा है, जिसने आज के जमाने के लिए अपने वादे को जाहिर किया, और बिल्कुल हननिया और सदकिया और बलाम और पीछे बाकी दूसरे झूठे नबियों की तरह करेंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, वो ममसू होंगे, समझे? ममसू और मुकर्रर खादम वजह तो रखेंगे, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, मगर इस बात के मुनकर होंगे कि यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। उसके कलाम का इनकार करेंगे। यीशु के दिनों में उन्होंने किसका इनकार किया? जब उन्होंने यीशु का इनकार किया तो किसका इनकार किया? कलाम का। वो मजहबी थे, वो बाइबल में से सिखाते थे, लेकिन अपने जमाने का इनकार करते थे। वो आज क्या है? वही कुछ, वो मसा शुदा है, पेंटिकॉस्ट की खुशखबरी की मुनादी करते हैं, लेकिन आज के जमाने के लिए कलाम के वादे का इनकार करते हैं कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। क्या आप समझ गए? क्योंकि उन्हीं में से वो लोग हैं जो दबे पांव घरों में घुस आते हैं और उन छिछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाह में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में हैं, हमारी राबता टीमें और हमारी फला फला चीजें। कोई शख्स आता है और कलाम की गलत तर्जमानी करने की कोशिश करता है और कहता है कि बहन, आपके लिए छोटे बाल रखना ठीक है, इस अहमकाना बात पर तवज्जो ना दें, समझे? अगर आप ये पहन लें तो इससे कुछ नहीं होता। जो बातें इंसान के दिल से निकलती हैं वही उसे नपाक करती हैं, समझे? क्या आप महसूस करते हैं कि आपके ऊपर एक बुरी शहवत प्रस्त और गंदी रूह का मसा है? एहतियात करें, शायद आप कटे हुए बालों के साथ क्वायर में गीत गाती हों, तो फिर आपने एक बुरी रूह को हासिल कर रखा है। ये कलाम के बरक्स है और ये सच है, ये वो बात है जो बाइबल कहती है। लेकिन आप कहती हैं, ठीक है, मैं मुख्तसर लबास पहनती हूँ, लेकिन इससे मैं मुजरम नहीं ठहरती। लेकिन तो भी अगर कोई औरत मर्द जैसा लबास पहने तो ये खुदा की नज़र में नहायत मकरूह काम है। ला तब्दील खुदा ने यही फरमाया है। ओ, ऐसी और बहुत सारी बातें हैं, हम कैसे इनके जरिए चल सकते हैं, हमारा वक्त गुजर जाएगा। लेकिन आप दुरुस्त और गलत के इम्तियाज के लिए काफी कुछ जानते हैं। मैं किस तरह उन्हें ये करने को कहूँ? मैं क्यों कर ऐसा करूँ? आप कहेंगे, ठीक है, मगर आप किस बात पर शोर मचा रहे हैं? मैं आपके खिलाफ गवाह हूँ। किसी दिन जब अदालत लगेगी तो आपको छुपने की कोई जगह न मिलेगी। क्या मिकाया उनको रोक सका? मूसा ने क्या किया? क्या उसकी पुकार और कोशिश उन्हें रोक सकी? क्या यशुआ या कोई और उनको रोक सका? यहाँ तक कि लावी ने तलवार खींची और उन्हें कत्ल कर दिया, क्या कोई रोक सका? लेकिन वो फिर भी उसी राह पर चलते रहे। ये पेशनगोई है कि वो इसी तरह करेंगे और वो अब भी किए जा रहे हैं, क्योंकि उनका ये अमल खुदावन यूं फरमाता है के मुताबिक है। क्या आप सोच सकते हैं कि वो तंजीमें कभी अपनी तंजीम बंदी खत्म करके वापस कलाम की तरफ आ जाएंगी? ये खुदावन यूं फरमाता है के मुताबिक है, वो ऐसा नहीं करेंगी। क्या वो मुखालफ मसीह में चली जाएंगी? बिल्कुल, क्योंकि खुदावन यूं फरमाता है कि वो ऐसा करेंगी। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मुझे तो एक गवाह बनना है, और इसी तरह आपको और तमाम ईमानदारों को। गौर करें, छिछोरी औरतें जो तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में हैं। खैर, बाकी सब औरतें भी इसी तरह करती हैं। झूठे नबी, अब सुनिए, मैं अब झूठे नबियों के बारे में बात कर रहा हूँ। वो आखिरी दिनों में क्या करेंगे? वो छिछोरी औरतों को काबू करेंगे जो तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में है। खैर, क्योंकि मैं बाकी औरतों को भी जानता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलिफोर्निया में इस बड़े वाक्य से पेशतर मैंने कहा था, आप लोग जो यहाँ लॉस एंजलिस में हैं, आप जानते हैं कि हर साल जब मैं यहाँ आता हूँ तो कटे हुए बालों वाली औरतें और जनाना किस्म के मर्दों की तादाद बढ़ चुकी होती है, उसकी तादाद पहले से ज्यादा हो चुकी होती है और मजीद खादम तंजीमों के अंदर जा चुके होते हैं। आप इल्जाम से बरी नहीं हैं। अगर ये बड़े काम सदूम और अमूरा में किए जाते जो आपके सामने किए गए हैं तो वो आज भी कायम रहता। हो कैफरनहूम, तू जो फरिश्तों का शहर यानी लॉस एंजलिस कहलवाता है, देख तुझ में क्या हो रहा है। ये कौम ठीक समुन्दर की तह में गर्क होने जा रही है। कब मैं नहीं जानता कब ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होगा। ए नौजवानों, अगर मैं जीते जी ना देख सका तो आप जरूर देखना, ये कौम खत्म हो चुकी है। वो हमेशा तालीम पाती रहती है लेकिन हक की पहचान तक कभी नहीं पहुँचती। अब ये यहाँ झटका लगाने वाली बात है, ये गौर से सुने। क्योंकि जैसे यूनिस और यम्ब्रीस ने मूसा की मुखालफत की, इसी तरह ये लोग भी हक की मुखालफत करते हैं। ये ऐसे आदमी हैं जिनकी अकल बिगड़ी हुई है और वो ईमान के एतबार से नामकबूल हैं, जो एक ही बार मुकदसों को सौंपा गया, बेशक ईमान के एतबार से, और वो औलाद के दिल वालिदों के ईमान की तरफ वापिस वालिदों के ईमान की तरफ फिरेगा। ईमान के इतबार से नामकबूल, क्या आप नामकबूल का मतलब जानते हैं? अगर आप स्कोफील्ड बाइबल में देखें तो वहाँ एक एच भी नजर आ रहा है, वहाँ पर लफ्ज लिखा है बेदिन, एक बेदिन, और वो यही कुछ है। अब सिर्फ एक मिनट, मैं यहाँ एक चीज देखना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि मैंने इसे लिख रखा है, मैं पुरयकीन नहीं हूँ, इसलिए बयान करने से पहले मैं इसे देखना चाहता हूँ। अब फक्त एक मिनट, सच्चाई के एतबार से नामकबूल और ईमान के एतबार से नामकबूल। ईमान, ईमान एक ही है, ये सच है, वो ईमान के एतबार से नामकबूल है। अब मैं लूका 18 को पढ़ना चाहता हूँ, सिर्फ एक मिनट, आप इस हवाले को लिख सकते हैं मगर पढ़ने की जरूरत नहीं। उसने उनसे ये कहते हुए कि एक आदमी को दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, एक तमसील कही, कहा किसी शहर में एक काजी रहता था जो ना खुदा से डरता था और ना ही आदमियों की कुछ परवाह करता था, और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मदई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने जी में कहा, गो मैं ना खुदा से डरता हूँ ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा, ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मेरे नाक में दम कर दे। खुदावर ने कहा, सुनो ये बे इंसाफ काजी क्या कहता है, बस खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या वो जमीन पर ईमान पाएगा? अब यहाँ एक सवाल है, मैं इसे इसी जगह से हासिल करना चाहता हूँ, मुकाशवा 10 बाब में, जहाँ से चंद मिनट बाद हम कलाम की एक और आयत को देखेंगे। उसने कहा, सातवें फरिश्ते के पैगाम देने के जमाने में खुदा का पोशीदा मतलब पूरा होगा। यहाँ पर वो सवाल है, अगर आप इस आयत को मौजूदा जमाने तक ले आए तो क्या ये पूरा होगा? क्या मैं ईमान पाऊंगा? क्या इस जमाने में मलाकी 4 बाब पूरा होगा? औलाद का ईमान वालिदों के ईमान यानी असली कलाम की तरफ वापस फेरा जाएगा, समझे? जिस तरह बेदीन, नामकबूल, यूनिस और यम्ब्रीस ने मुखालफत की, अब इसी तरह गौर से सुने 2 तिमोथियस 3:8। जिस तरह यूनिस ने मूसा की मुखालफत की, उसी तरह आखिरी दिनों में नामकबूल लोग आएंगे। अब देखें, यहाँ बाइबल कह रही है कि वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, ये मसाशुदा लोग हैं। अब आप वापस घर जाएं तो इस हवाले को दोबारा जरूर पढ़ें, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसे आज सुबह मुकम्मल करूं। ईमान के एतबार से नामकबूल, जिंदगी गुजारने के एतबार से नामकबूल नहीं, बल्कि वो बेहतरीन और महजब लोग हैं। अब गौर कीजिए, जब मूसा खुदावंद यूं फरमाता है के साथ मिस्र की तरफ गया और उसे साबित भी किया गया, तो उसने बनी इसराइल को बुलाया जो कि कलीसिया नहीं थी, वो लोगों का एक ग्रोह था, इसराइल लोगों का एक ग्रोह था, वो कलीसिया ना थी, क्योंकि लफ्ज कलीसिया का मतलब है बुलाए हुए, वो सब खुदा के लोग थे। फिर जब उन्हें कलाम से मसा किया गया और उनको बुलाया गया तो वो खुदा की कलीसिया बन गए, लेकिन फिर वो गुमराह हो गए क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम पर ईमान ना रखा और एक झूठे नबी की बात सुनी। मुझे उम्मीद है कि इसी बात ने उन्हें डुबो दिया। बनी इसराइल खुदा के लोग थे, वो खुदा के हाथ के वसीले बाहर लाए गए, खुदा की कुदरत के साथ कलाम से मसा किए गए थे, उन्होंने खुदा के अजीब काम और निशान देखे थे, और जब खुदा उन पर जुम्बश कर रहा था तो एक झूठा नबी, एक ममसू उनके दरमियान आ गया और उसने खुदा के असल कलाम के बरक्स उन्हें सिखाया और उन्होंने उसकी आवाज को सुना। बस 3 लोगों के अलावा बाकी सब लोग बियाबान में फना हो गए। अब इसे जहन में रखें, जैसा नूह के दिनों में हुआ जब 8 जाने पानी के वसीला बचाई गईं, इब्ने आदम के आने पर भी वैसा ही होगा। जैसा लूत के दिनों में हुआ जब 3 अशकास सदूम से निकले, इब्ने आदम के जाहिर होने के वक्त भी ऐसा ही होगा। मैं फक्त खुदावंद के कलाम के हवाले दे रहा हूँ, जैसा कि आसमान और जमीन टल जाएंगे, ये बहुत थोड़े लोग होंगे। अब यहाँ गौर कीजिए, मूसा हारून के पास गया, मूसा गोया खुदा की जगह था, खुदा ने उसे अपनी जगह मुकरर किया था, तू गोया खुदा होगा और तेरा भाई हारून तेरा नबी होगा। अगर तू ठीक तरह से नहीं बोल सकता तो अपने अल्फाज उसके मुंह में डाल। खुदा ने कहा आदमी को गूंगा किसने बनाया, किसने आदमी को बोलने के लायक बनाया? खुदावर ने ये सब किया है। और वो उस जगह गया, उसने क्या किया? उसने एक सच्चा दुरुस्त मौजजा दिखाया जो खुदा ने उसे दिखाने को कहा था। खुदा ने उससे कहा अपना आसा जमीन पर डाल दे, उसने ऐसा किया और वो एक सांप बन गया। उसने उसे उठाया और वो फिर आसा बन गया। खुदावंद ने फरमाया जा फराउन के सामने यही कर और कह खुदावंद यूं फरमाता है। जब फराउन ने ये देखा तो कहा ये तो जादू का एक हल्का सा करतब है। उसने कहा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप जानते हैं ये कोई टेलीपैथी या कोई और ऐसी चीज है। हमारी तंजीम में भी ऐसे लोग हैं जो यही काम कर सकते हैं। बिशप फलां फलां यहाँ आओ और तुम भी यहाँ आकर ये करो। हमारे आदमी भी यही काम कर सकते हैं। ये शैतान था जो फराउन के जरिए बोल रहा था, लेकिन वो खुदा था जो मूसा के जरिए बोल रहा था। और गौर करें, मूसा निकल खड़ा हुआ, यनीस और यमरीस मूसा के सामने आ खड़े हुए और उन्होंने लोगों के सामने सरेआम वही मौजजे किए जो मूसा ने किए थे। अगर मुमकिन हो तो वो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। क्या ये दुरुस्त है? उन्होंने वही कुछ किया जो मूसा ने किया। क्या आप इस बात को समझ गए? अब याद रखें, कलामे खुदा यूं कहता है कि आखिर दिनों में यही कुछ दोहराया जाएगा। मूसा और यमरीस में क्या फर्क था? मूसा ने कहा पानी खून बन जाए और उन झूठे नबियों ने कहा यकीनन हम भी पानी को खून बनाएंगे और ऐसे ही हुआ। फिर मूसा ने कहा मच्छर आ जाए। वो इन्हें कहाँ से हासिल कर रहा था? बराह रास्त खुदा से, समझे? और उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा ठीक है यकीनन हम भी मच्छर ला सकते हैं, और वो लाए। उन्होंने भी हर वो मौजजा किया जो मूसा कर सकता था। लेकिन याद रखें और इसे अपने जेन में रखें, हम थोड़ी देर बाद फिर इस बात की तरफ आएंगे। वो हर काम कर सकते हैं जो कि दूसरे कर सकते हैं, मगर वो कलाम के साथ खड़े नहीं हो सकते। वो कलाम के साथ खड़े हो ही नहीं सकते। अब गौर करें, उन्होंने मौजजात किए, लेकिन मूसा खुदा का सच्चा और भेजा हुआ नबी था और उसे खुदा से इख्तियार मिला था, लेकिन उसने कभी उनके साथ झगड़ा ना किया। उसने कहा यहाँ तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं कि तुम कलाम के साथ चल सको, तुम नहीं चल सकते। उसने उन्हें अकेला छोड़ दिया, उन्हें ऐसी ही चाल चलने दी क्योंकि वो तंजीमी नबी थे, लेकिन उन्हें चलने दिया। लेकिन मूसा राह पर कायम रहा और खुदा का शिनवा हुआ और खुदा ने उससे कहा अब तू ऐसा कर, और मूसा गया और उसने वैसा ही किया। उसने एक नया काम किया। जब वो देखते तो अपने जेन में रख लेते और वो भी आ जाते और वो भी बिल्कुल वही काम करते जो मूसा करता था। अब गौर करें, जब ये जाहिर हुए, ओ सामीन, इस बात को समझने से कासिर ना रहें। ये नकाल, ये बहरूपिये उसी वक्त जाहिर होते हैं जब पहले सच्चा आदमी कोई काम करता है, समझे? वो उसकी नकल करते थे। देखें, उन्हें ऐसा ही करना था, क्योंकि शैतान कोई चीज तख्लीक नहीं कर सकता। वो सिर्फ असल को गुमराह करने वाला है। और गुनाह क्या है? रास्तबाजी से इनराफ। जनाकारी क्या है? असल अमल से इनराफ। झूठ क्या है? सच्चाई का गलत इजहार, सच से इनराफ। अनन्या पर निगाह डालें, वो हकीकी कलाम से मुनहरफ था। बलाम पर निगाह डालें, वो हकीकी कलाम से मुनहरफ था। सदकिया पर निगाह डालें, वो भी हकीकी कलाम से मुनहरफ था। और बाइबल कहती है कि हकीकी कलाम की सच्चाई जाहिर और सच साबित होगी, और इसके बाद ऐसे लोग सामने आएंगे जो हकीकी कलाम से गुमराह करेंगे। बिशारत का काम अंजाम दे, फिर वहाँ उसी जगह अपनी खिदमत को पूरा कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तलीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। वो अपनी मर्जी से चलते रहेंगे और कहेंगे कि ये सब दुरुस्त है और हमें भी वही अजीब काम और निशान हासिल हुए हैं। वो अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों की तरफ, यानी रस्म और रवाज की तरफ मतवज्जो होंगे। हो रूहुल कुछ की आगाही तब हासिल होती है जब आदमी की रूह पर एक रोब सतारी हो जाता है और उसका अपना सोचने का अमल रुक जाता है। और ये बात हमारे दरमियान कितनी वजाहत और सच्चाई के साथ मौजूद है। उस कोने के पत्थर को उखाड़कर उसके नीचे से उस कागज के टुकड़े को पढ़ें जो 33 साल पहले मैंने वहाँ रखा था। देखें, खुदावर ने उस सुबह जब ये पत्थर रखा गया था, सातवीं गली के मुतल्लक कहा गया था। अब इस पर गौर करें, जब दरिया पर खुदावन का फरिश्ता आग के सतून की शक्ल में नीचे आया था, सैकड़ों कलीसियाएं और सैकड़ों कलीसियाओं के लोग किनारे पर खड़े थे, तब उसने क्या कहा था? देखें, क्या ये पूरा हुआ? देखें, क्या ये वाकया हुआ था? ये बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ कि ये देखने में मुश्किल है, मगर बहुत सारे भाई वहाँ मौजूद थे। लेकिन बाइबल कहती है, यीशु ने अपनी जुबान से कहा, अगर मुमकिन हुआ तो वो बरगजीदों को भी गुमराह कर ले, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, वो कभी इसे देखने के काबिल ना हो सकेंगे। अगर मुमकिन हो तो बरगजीदा भी उससे धोखा खा जाएं। गौर करें, ये आदमी उस वक्त जाहिर हुए जब खुदा का सच्चा ममसू, उसका सच्चा नबी मूसा भेजा गया था। जब मूसा पहले कोई भी काम करता तो फिर ये आदमी उसकी नकल करते थे। अब भाई और बहनों, ये मेरी कलीसिया है, मैं इस कलीसिया में मुनादी करने का हक रखता हूँ जब तक खुदा के कलाम से बाहर ना हूँ। मैं आप लोगों को मुजरिम नहीं ठहरा रहा, लेकिन आइए उस घड़ी और उस जमाने को जाने जिसमें हम रह रहे हैं। भाई रेडल और भाई जूनियर जैक्सन को सलाम, और वो बाहर हैं और हमारी कलीसिया के भाई हैं। मैं पहले भी भूल गया था, मेरा ख्याल है आज सुबह यहाँ जगह ना होने की वजह से वो भी टेलीफोन पर सुन रहे हैं। अब एक मिनट के लिए इस बात पर गौर करें। देखें, उन्होंने बिल्कुल वही मौजज़े किए जो मूसा ने किए थे। मूसा मच्छरों को लाया, उन्होंने भी इसकी नकल की और मच्छरों को लाए, समझे? खुदा ने कहा था, जिस रोज तूने ये फल खाया उसी रोज तू मरा। शैतान आया और कहा, यकीनन तुम नहीं मरोगे बल्कि तुम अकलमंद बन जाओगे, तुम्हारी ज्यादा अच्छी तंजीम बन जाएगी, एक ज्यादा अच्छी, तुम जानते हो हर चीज तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगी और तुम्हें ज्यादा रोशनी हासिल हो जाएगी। देखें, ये बरगश्तगी है। चाहिए कि याद रखें, खुदावन यूं फरमाता है, दूसरा तिमोथियस 3:18 के मुताबिक, कि आखिर दिनों में यूनीस और यमरीस दोबारा जमीन पर जाहिर होंगे। अब मैं आपकी तवज्जो उनमें से दो की जानिब मबजूल करवाना चाहता हूँ। देखें, जो के नकाल थे। अब हम कुछ वक्त के लिए वापस सदूम की बात करेंगे, जहाँ तीन शख्स थे। हम जानते हैं तीन फरिश्ते नीचे उतरे थे, वहाँ हम नकाल और इसी तरह बाकी चीजों को भी देखेंगे। देखें, फिर नतीजा अक्स करेंगे, दुरुस्त क्या है और गलत क्या है, समझे? गौर करें, उन्होंने बिल्कुल वही मौजज़े किए। लेकिन ध्यान दें, पहले खुदा ने सच्चे नबी को भेजा था और उसके बाद उन्होंने सच्चे मसाशुदा कलाम की नकल की। नकालों ने देखकर इसकी नकल की। मैं फिक्रमंद हूँ, अगर हम एक मिनट के लिए सोच सकते हैं तो। कुछ अरसा हुआ, तकरीबन 20 साल पहले, एक निशान दिखाया गया कि लोग कुछ हाथों में पकड़े हुए हैं। जवानों, वहाँ बहुत सारे निशान थे और हर कोई, एक ने इसे अपने दाहिने हाथ में पकड़ रखा था और एक ने इसे अपने बाएं हाथ में पकड़ रखा था और कोई उसे सूंघ रहा था। देखें, हर किस्म का था। और मैं हैरान हूँ, खुदा इस बात की हकीकी सच्चाई आपको बताने के लिए मुझे इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन एक दिन आप इसे पा लेंगे। इसका मकसद उनकी हमाकत जाहिर करना था, ये आगाज में दुरुस्त ना था। अगर खुदावर ने इजाजत दी तो एक दिन मैं आपको बता दूंगा। गौर करें, उन्होंने बिल्कुल वही मौजज़े किए, लेकिन वो, गौर करें, उन्होंने उस वक्त तक कुछ ना किया जब तक पहले हकीकी कलाम ने कुछ करके ना दिखाया। यही तरीका शैतान ने बागे अदन में इस्तेमाल किया और यही तरीका उसने हमेशा इस्तेमाल किया है। पहले किसने नबुवत की? मूसा ने। पहले मंजर पर कौन आया, मूसा या बलाम? मूसा। पहले मंजर पर कौन आया, यर्मिया या हनन्या? आप समझ गए मेरा क्या मतलब है? गौर करें, उन्होंने नकल की। वो नफसानी नकाल थे, वो मुखलिस थे। उनका ख्याल था कि खुदा की खिदमत कर रहे हैं, जैसे दाऊद ने ख्याल किया था, जो पिछले हफ्ते मैंने सिखाया था, मगर वो जिस्मानी नकल थी। मैं एक मिनट के लिए इंतजार कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इन मकामात के दरमियान सोचें। अगर मैं ये ना कहूँ, लेकिन रूल कुछ यकीनन इसे बिलखसूस बरगजीदों पर जाहिर कर देगा, समझे? फराउन की तंजीम कहती है, हमारे पास ऐसे आदमी हैं जो बिल्कुल यही काम कर सकते हैं, और उन्होंने किया, समझे? फराउन ने ऐसा क्यों किया? खुदा ने उसे क्यों इजाजत दी? खुदा ने एक सच्चे ममसू और मसाशुदा नबी को फराउन की तरफ भेजा कि उसके सामने मौजज़ात करे और फिर उसने क्यों इजाजत दी एक तंजीमी निकाल आए और लोगों के सामने उस मौजजे की नकल करे? उसने क्यों एक बहरूपिये को खड़ा होने और वही मौजजा दिखाने की इजाजत दी जो खुदा के हकीकी रूह ने दिखाया था? देखें, क्योंकि कलाम को जरूर ही पूरा होना था। गौर करें, खुदा ने इसलिए ऐसा किया कि वो फराओन और मिस्रियों के दिल सख्त करे और साबित कर सके कि सिर्फ मूसा ही के पास कलाम ना था। वो इसी तरह मौजजात कर सकते थे जैसे मूसा कर सकता था। और खुदा ने इस चीज को आखिरी दिनों में क्यों होने दिया? इसलिए कि जिस तरह झूठ बोलने वाली रूह ने सदकिया से कहा, हम अखियब को किस तरह बहकाएं कि ये बातें पूरी हों। अब वो किस तरह इन लोगों को उबार रहा है जो अपनी कलीसियों पर भरोसा रख रहे हैं, ताकि वो बातें पूरी हों जो उसने पेशनगोई कर रखी है। ये इस लौदीकियाई कलीसिया का जमाना है, क्योंकि तू कहती है कि मैं दौलतमंद हूँ और किसी चीज की मोहताज नहीं, मैं मलका बन बैठी हूँ मगर तेरे पास कुछ भी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त, ख्वार, नंगा और अंधा है। खुदावर ने कहा, मैं तुझे सलाह देता हूँ मुझसे तेल और सोना खरीद ले। उसने ऐसा क्यों किया? वो इन आखिरी दिनों में इस बहरूपियत को किस तरह फिर उभरने देगा जबकि ये सारे काम खुदा के दुरुस्त कलाम से सरंजाम पा रहे हैं? वो कैसे इजाजत देगा कि नकाल उठ खड़े हों और बिल्कुल यही काम करें जो खुदा के सच्चे कलाम का इनकार करते हैं? खुदा ने मूसा के वक्त ऐसा किया और फराउन ने मूसा के खिलाफ ये किया और उन योनीस और यमरीस ने मूसा की मुखालफत में ये काम किए, और बाइबल कहती है कि ये बात आखिरी दिनों में फिर दोहराई जाएगी। हम यहाँ हैं। अब अगर वो कलाम पूरा नहीं होता तो फिर इसे कब पूरा होना है? क्या मूसा ने उनसे झगड़ा करके कहा, यहाँ यहाँ तुम ये काम नहीं कर सकते, सिर्फ मैं अकेला ही इस काम के लिए मुकर्रर हूँ, यहाँ ठीक है तुम अपने काम बंद करो? उसने उन्हें उनकी मर्जी पर चलने दिया, उन्हें उनकी मर्जी पर चलने दो। याद रखें, बाइबल कहती है जैसे उनकी बेवकूफी जाहिर हो गई थी वैसे ही आखिरी दिनों में उन लोगों के साथ होगा जब दुल्हन उठा ली जाएगी और आसमान में दाखिल हो जाएगी। गौर कीजिए, मूसा जो सच्चा और जाहिर शुदा कलाम था उसने कभी कुछ न कहा बल्कि उन्हें इसी तरह चलने दिया, लेकिन खुदा ने इसलिए ऐसा किया कि वह फराउन के दिल को सख्त कर सके ताकि वह धोखे में रहें। यही कुछ उसने तब किया जब अखियब ने धोखा खाया। वहाँ एक मामूली सा आदमी खड़ा था, मामूली मिकाया, वो उन्हें कह रहा था खुदावंद यूं फरमाता है, और वहीं एक और ममसू खड़ा हुआ और कह रहा था खुदावंद यूं फरमाता है। वो दोनों एक दूसरे के बरक्स कह रहे थे। आज हम खुदावंद यूं फरमाता है के साथ खड़े हैं और कहते हैं आखिरी जमाने में बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में होना चाहिए, और एक दूसरा आदमी खड़ा होता है और ऐसे ही मौजजे दिखाता है जबकि वो एक तसलीसी है। मुझे बाइबल में लफ्ज तसलीस दिखाएं, मुझे दिखाएं बाइबल में कहां तीन खुदा हैं, मुझे दिखाएं कि ऐसी बातें कहां पर हैं। ये खुदा के कलाम में नहीं है। ऐसा कोई मकाम नहीं मिलता कि किसी ने कभी बाप, बेटे और रूल कुछ के नाम में बपतिस्मा दिया हो जैसा कि आप इल्काब इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर वो लोग इन सब बातों के लिए कहते हैं ओ बहनों ये सब कुछ ठीक है, ये सब ठीक है आपके लिए, आप छोटे बाल रख सकती हैं, ये ठीक है, आपको ये वो या कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हो ये कैसी हमाकत है, ये पुरानी तर्ज की बातें हैं। लेकिन बाइबल कहती है और खुदा का वादा है कि वो आखिरी दिनों में एलिया की रूह को भेजेगा और वो लोगों को बुलाएगा और खुदा के बच्चों को वापस उस असली ईमान की तरफ ले जाएगा जो खुदा के कलाम के आगाज में था। वो कलाम साबितशुदा था कि आखिरी दिनों में इब्ने आदम के अयाम में वैसा ही होगा जैसा कि सदूम के दिनों में था, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। खुदा ने इसे पूरा करने का वादा किया है, ये खुदा का वादा है, ये खुदावंद यूं फरमाता है। गौर कीजिए, उन्होंने वही कुछ किया जैसा मूसा ने किया, हत्ता के खुदा ने बहुत सा मकसद हासिल कर लिया था। अब याद रखें कि ये खुदावन यूं फरमाता है, ये इस दिन में पूरा होगा। अब दुनिया में तलाश करें, हर कौम, हर कबीले, हर इंसान और हर कलीसिया को लें। मैं मसीह के नाम में तमाम मबल्लगीन को इसके करने का जिम्मेदार ठहराता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि आप अखबारात का मुतालिया करें या आप जहाँ भी जाना चाहते हो इसे जहन में रखें और देखें कि क्या अब ये जमीन पर ऐसा नहीं है, समझे? तो फिर यूँ मत्ती 24:24 बिल्कुल दुरुस्त है, आखिरी दिनों में झूठे मसाशुदा लोग और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को गुमराह करेंगे, और अब ऐसा हो रहा है। इसे मिसालों के वसीला से देख लें। देखें, बहुतों को गुमराह करेंगे। नबी, जमा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मसीह, मसा शुदा, ये दोनों लफ्ज भी जमा के मायनों में हैं। इसका मतलब है कि वो बहुत से होंगे। आप जानते हैं, कोई मेथोडिस्ट का, कोई बैप्टिस्ट का और कोई पेंटिकोस्टल का, और इसी तरह और बहुत से हैं, समझे। मगर हकीकी मसीह का रूह एक है, जो कि खुदा के वादे के मुताबिक मुजस्सम कलाम है। अब हम कुछ मजीद हवाला जात की जानिब आगे बढ़ते हैं। जबकि खुदा ने काफी हद तक अपना मकसद हासिल कर लिया, तो उनका काम खत्म हो गया, उनकी हमाकत जाहिर कर दी गई। गौर करें, याद रखें, छिलके के भूसे वाले हिस्सों की शक्ल बिल्कुल गंदुम के दानों जैसी होती है, समझे। अब आप ये नहीं कह सकते कि लूथरन जमाने में तना गंदुम था, अगरचे इसमें जिंदगी थी। लेकिन याद रखें, तना बिल्कुल दुरुस्त था, इसमें जिंदगी भी दुरुस्त थी, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ गई। एलिया से अलीशा की तरफ जिंदगी आगे बढ़ती रही। लेकिन याद रखें, ये इसका दूसरा मुकाम होता है। ये इस मकाम पर कायम नहीं रह सकती। हम किसी और जमाने की गली सड़ी खुराक नहीं खा सकते। हम मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट या पेंटिकोस्टल जमाने की गली सड़ी खुराक नहीं खा सकते। देखें, वो गल सड़ चुकी है, लेकिन हमारे पास ताज़ा खुराक है, यानी इस जमाने का कलाम। याद रखें, छिलके के खोल गंदुम के दानों की सी शक्ल रखते हैं। आप इसे ये देखने में पत्ते की तरह नजर नहीं आता, ये देखने में इसके किसी भी तेज सिरे की शक्ल में नजर नहीं आता, लेकिन दाने की हम शक्ल चीज यकीनन छिलका है। लूथर के जमाने में यीशु मसीह कल और आज यकसा दिखाई नहीं देता, न ही वेस्ली के जमाने में ऐसा हुआ, लेकिन पेंटिकोस्टल जमाने में यकीनन ऐसा नजर आया। अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। देखें, और ये आपका जमाना है, लेकिन याद रखें, आखिरी दिनों में पेंटिकोस्टल कलीसिया लोदिकिया की कलीसिया थी, और मसीह इससे बाहर था, जो कि बजाते खुद बीज यानी गंदुम है। जब उसने कोशिश की, याद रखें, जब खुदावन ने कोशिश की कि वो अपना आप कलीसिया में जाहिर करे, तो उसे बाहर निकाल दिया गया। वो सिर्फ कलीसिया कहलाती है और ममसू होने का दावा करती है, लेकिन यहाँ मसीह बजाते खुद है। वो ममसू कलाम है, जो उनको छोड़कर अपने बदन यानी दुल्हन की खातिर आ गया। जिस पानी से गंदुम सैराब होती है, उसी से कड़वे दाने भी सैराब होते हैं, जिसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं, इसलिए वो भी मसा हासिल करते हैं। फक्त बरगजीदा और पहले से मुकरर शुदा ही इस काबिल होंगे कि उनमें फर्क मालूम कर सकें। अब इफ्सियों 5:1 इसी तरह बताती है कि ये किस तरह होना चाहिए। वो ममसू हैं। हर कोई कहता है, खुदा को जलाल मिले, हमने आजादी हासिल कर ली है, हालेलुया। हम गैर जुबाने बोलते हैं और उछलते कूदते हैं। हमने औरतों की आजादी हासिल कर ली है। आप लोग इन्हें ऐसी चीजों के मतायत लाने की कोशिश करते हैं। देखें, इन्हें इसी तरह चलने दें, आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं, ठीक है, हम गैर जुबानों में बोलते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम रूम में नाचते हैं, हम कलाम की मुनादी करते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है, आप इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकते। बाइबल में माजी के आदमी ऐसा ही किया करते थे। यीशु ने कहा, अगर मुमकिन हुआ तो वो ऐन बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। अब छिलकों के खोल पर गौर कीजिए, ये असल दाने से बने जो जमीन में दफन हुआ था, मगर वो तो कोई तंजीम ना था, वो तो अपनी जात में अकेला दाना था। लेकिन जब वो ऊपर आया तो वो अकेला दाना ना था, बल्कि देखें, ये पत्तों और गल्ला पर मुश्तमिल एक तंजीम था। फिर वो एक और दौर में दाखिल हुआ, ये जरदाना बनना था, लेकिन ये अभी भी इब्तदा की मानिंद ना था, ये तंजीम था। फिर छिलके बनने का वक्त आया, अब बहुत से पत्ते थे और पेंटिकोस्ट की शक्ल बिल्कुल दानों जैसी बन गई। इसे गौर से देखें, ये हर वक्त एक जैसी शक्ल इख्तियार करता आया। जब आप गंदुम के दाने के इस छिलके को देखते हैं, तो इसकी शक्ल बिल्कुल दानों जैसी दिखाई देती है, लेकिन बिलाखिर इसकी असलियत जाहिर हो जाती है और फिर कोई तंजीम नहीं रहती। दाने को उठाए रखने वाली चीज खत्म हो जाती है। तंजीम दानों को उठाए रखने के लिए थी, अब मजीद उठाने वाले खत्म हो गए। तने को मरना होगा, दानों के छिलकों को मरना होगा, हर हिस्से को जरूर ही मरना होगा, लेकिन दाने जिंदा रहेंगे। ये उस जी उठे का बदन है जो नीचे आता और उन्हें ऊपर ले जाता है। बहुत सारे अव्वल आखिर और आखिर अव्वल हो जाएंगे, वो उन्हें उठाकर क्यामत में शरीक कर लेता है। क्या आप ये समझ रहे हैं? ठीक है, गौर करें, छिलका दाने की, छिलका बिल्कुल दाने की तरह दिखाई देता है, और वो शख्स जिसने गंदुम की फसल या कोई दूसरी फसल काश्त की हो, तो वो उसे देखकर कहेगा, खुदा की तारीफ हो, मुझे गंदुम की फसल हासिल हो गई, हालांकि उसे गंदुम का एक दाना भी हासिल नहीं हुआ। ये बिल्कुल गंदुम के दाने की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये छाल है। अब अजीजों मेरे साथ वापस चलें और देखें कि गंदुम के दाने मरने के बाद, जो कि मसीह का बदन है या दुल्हन है, कि जमीन में गिरने के बाद पहली बेदारी कब आई, किस मकाम पर मसीह ने अपनी दुल्हन या कलीसिया को मुनज्जम किया। उसने कभी मुनज्जम नहीं किया, उसने तो अपनी कलीसिया को कामिल करने के लिए रसूल, नबी और खादम मुकरर किए। लेकिन इससे 306 साल बाद नासियाई रोम में उन्होंने इसे मुनज्जम किया और एक तंजीम बनाई, क्या ये दुरुस्त है, और ये मर गई। और इस तंजीमी कलीसिया से इत्तफाक ना करने वाली हर चीज को मौत के घाट उतार दिया जाता था और वो कई सौ साल तक मिट्टी में दफन रही, लेकिन एक अरसे के बाद लूथर के जमाने में ऊपर निकल आई। गंदुम की इब्तदाई कॉम्पलें ऊपर आ गईं और फिर दूसरी शाख इसमें से फूट निकली और ये सिलसिला जारी रहा और इस तरह ज्वांगली और दीगर तंजीमें बनती चली गईं। कुछ अरसे के बाद एंग्लिकन आ गए और फिर क्या हुआ, वेस्ली एक नई बेदारी लेकर आया जो जरदाने का दौर था, इसकी दानों के साथ करीब की मुशाबत थी। फिर इसके साथ क्या हुआ, ये मुनज्जम हो गए और मौत से दो चार हुए। जिंदगी छिलके की छाल में मुंतकिल हो गई, छाल ने तकरीबन हूबहू दानों की शक्ल इख्तियार कर ली। लेकिन आखिरी 8 या 10 सालों में, बिलखसूस आखिरी 3 सालों में, इसकी बेवकूफी जाहिर कर दी गई। अब ये क्या करती है, ये दानों से अलग हो जाती है। अब इस अजीम बेदारी के 20 साल बाद भी हमारी कोई तंजीम क्यों नहीं बनी, इनमें ममसू नबी, ममसू उस्ताद और इसी तरह दूसरे लोग हैं, मगर ये वहाँ क्यों नहीं है, गंदुम से हटकर कोई चीज नहीं है। देखें, ये बगैर तंजीम बनाए वापस जा चुकी है। ओ मेरे अजीजो, ये एक अंधा इंसान भी देख सकता है, ये मुनज्जम नहीं हो सकती क्योंकि ये तंजीम बंदी के सख्त खिलाफ है। ये बजाते खुद गंदुम का दाना है, इब्ने आदम जाहिर किया जाएगा। आखिरी दिनों में गंदुम अपनी असल हालत में, यानी इब्ने आदम में जाहिर होगी और इन आखिरी दिनों में झूठे नकाल उठ खड़े होंगे और अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। देखें, उनके तंजीमी छिलके अब दूर होते जा रहे हैं, ये इसलिए है कि गंदुम की बरगजीदगी जाहिर की जा सके जो इसका हिस्सा है। गौर करें, ये अब कितनी खूबसूरती से यहाँ लाया गया है, सिर्फ ध्यान दें, चुने हुए हकीकी बरगजीदा और पहले से मुकरर किए हुए इफ्सियों 1:5 के मुताबिक इस काबिल हैं, या 5:1 के मुताबिक, बल्कि वही जो पहले से चुने हुए हैं और मुकरर होंगे, यही वो लोग होंगे जो धोखा नहीं खाएंगे। गौर कीजिए, ममसू नबी झूठे होंगे और उन्हीं के दरमियान सच्चे ममसू भी होंगे। आप ये कैसे बताएंगे कलाम के वसीले से, हमने तशबियात में देखा है, क्या आप इसे समझ गए हैं, तो फिर कहें आमीन। देखें, गौर करें, वो सब ममसू हैं, उनमें मोजजात से नहीं बल्कि कलाम से फर्क मालूम किया जा सकेगा। ओ, मोजजात से नहीं, क्योंकि वो एक ही जैसे मोजजात दिखाएंगे, लेकिन कलाम उनके माबैन फर्क वाजे करता है, यकीनन कलाम फर्क बताता है। वो सब नबुवत करते हैं, वो सब ये वो और दूसरे यकीनन एक ही जैसे काम करते हैं। यीशु ने कहा वो एक जैसे काम करेंगे, मगर गौर करें, इनमें मोजजात से नहीं बल्कि कलाम से फर्क मालूम किया जाता है। क्या आपने गौर किया, यीशु ने यहाँ मत्ती 24 में कहा, उसने इस तरह नहीं कहा था कि आखिरी दिनों में बहुत सारे झूठे यीशु उठ खड़े होंगे। ओ नहीं, वो इस हैसियत से कभी खड़े नहीं होंगे, कभी नहीं। आप किसी पेंतिकोस्टल, बल्कि हकीकी पेंतिकोस्टल से उसके अपने मुतालिक पूछें, क्या वो यीशु है, समझे। आप किसी झूठे मेथोडिस्ट या एक बैप्टिस्ट या कोई भी उन्हीं की तरह या किसी भी तंजीम के शख्स को लें, क्या वो कहेंगे हम यीशु हैं? वो इसे बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन बाइबल कहती है झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, ना के बहुत से यीशु होंगे, लेकिन बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। उनमें से कोई भी ये कहते हुए नहीं मिलेगा कि मैं यीशु हूँ, ओ नहीं, मगर वो झूठे मसीह हैं और उनको इल्म तक नहीं तो वो कलाम के बरक्स हैं और खुदा का कलाम साबित करता है। अब मैं इस चीज को मवाजने के लिए आपके सामने लाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने उन लोगों को दर हकीकत एक जैसे काम करते देखा है और यीशु ने भी इसी तरह कहा था। अब जैसा कि मैंने अभी कहा था कि मैं टेलीफोन के जरिए और मुल्क के दीगर हिस्सों में से सुनने वाले लोगों को भी मुजरिम नहीं ठहरा रहा, लेकिन ये मेरी अपनी कलीसिया है और ये वो जमायत है जो रूल उसने मुझे दी है और मैं इन्हें सच्चाई बताने का जिम्मेदार हूँ। अब देर होती जा रही है, अब वो कलाम के लिए खड़े नहीं होंगे, लेकिन झूठे मसीह, झूठे मसाशुदा लोग कलाम के हर लफ्ज को लेंगे, हर मौजजा दिखाएंगे। क्या वो रूल कुछ के बपतिस्मा पर ईमान रखते हैं? बिल्कुल ईमान रखते हैं। क्या वो इन सब बातों पर ईमान रखते हैं? जी हाँ। क्या वो गैर जुबान बोलने पर ईमान रखते हैं? जी हाँ। क्या वो ईमान रखते हैं कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे? जी हाँ, वो मेथोडिस्ट नहीं है, वो बैप्टिस्ट नहीं है, नहीं नहीं, वो पेंटिकोस्टल है। देखें, ये आखिरी जमाना है। अब पहले कलीसियाई जमाने ने इस पर कभी गौर नहीं किया, मेथोडिस्ट कलीसियाई जमाने ने इस पर गौर नहीं किया, बैप्टिस्ट कलीसियाई जमाने ने इस पर कभी गौर नहीं किया, प्रेस्बिटेरियन कलीसियाई जमाने ने इस पर कभी गौर नहीं किया, लेकिन पेंटिकोस्टल असल चीज के इस कदर मुशाबे है। ये वो मकाम है कि गंदुम बल्कि छिलके की शक्ल बिल्कुल दाने से मुशाबे होगी। वो इस पर कभी तवज्जो नहीं देंगे, समझे? वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जिनको आखिरी दिन कहा जाता है वो यही दिन है। जी हाँ जनाब, गौर करें, जैसे शुरू में था वैसे ही आखिर में होगा। जैसे हवा ने एक लफ्ज की गलत तर्जमानी की और शैतान ने हवा को बहकाया और उसने उसका यकीन किया। हवा ने, ना के आदम ने, मतलब ये काम कलीसिया ने किया, ना के मसीह ने, समझे? ये कलीसिया ही है जिसने झूठा कलाम हासिल किया, समझे? आदम ने नहीं बल्कि हवा ने, मसीह ने नहीं बल्कि कलीसिया ने, दुल्हन ने, जो ममसू है और खुद को ख्याल करती है कि वो दुल्हन है। देखें, कलीसिया ने झूठा कलाम हासिल किया। क्या आप इसे समझ नहीं सकते? क्यों? इसलिए कि ये एक लड़ी की मानित बाहम पवेस्ता है, आपकी आंखों की पलकों की तरह। इसलिए जब आप हर बात में बाइबल से रुजू करेंगे तो ये ठीक आपस में मिली होगी। हवा ने, ना के आदम ने, हवा ने शैतान का यकीन किया, ना के आदम ने। आज की नाम नहाद दुल्हन ने इसका यकीन किया, ना के मसीह ने। नाम नहाद दुल्हन में सारी इकसाम शामिल है और ये उन्हीं निशानों और उन्हीं अजीब कामों और इसी तरह की हर चीज की हामिल है, लेकिन असली नहीं है। अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। अब हम तेजी से चलेंगे और अगर हमने इसे 15 मिनट में मुकम्मल कर लिया तो इसका मतलब होगा हमने वक्त पर खत्म कर लिया है। अब हकीकी तवज्जो से सुनिए ताकि आप इसके बारे में किसी गलत फहमी का शिकार ना हो जाएं। अब झूठा यस्सू कहलवाने के लिए वो कभी खड़े ना होंगे, वो कभी भी खड़े ना होंगे कि यस्सू कहलवाएं। यकीनन वो खड़े नहीं होंगे, ये बिल्कुल वाज़े बात है। कोई भी शख्स ये जानता है, कोई भी शख्स जान लेगा कि वो यस्सू नहीं है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि उनकी पुश्त पर तेल, हाथों पर और आंखों के ऊपर नीचे लहू लगा हुआ हो, तब भी वो इसे जानते हैं। कोई भी शख्स जिसमें जरा भी समझ है वो जान सकता है कि ये यस्सू नहीं है, समझे? इस हैसियत से कोई भी खड़ा ना होगा, लेकिन वो ममसू कहलवाते हैं और वो निशान और अजीब काम दिखाते हैं, हो सके तो बरगजीदों को गुमराह कर लें। लेकिन झूठे मसीह यानी झूठे ममसू उठ खड़े होंगे ताकि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। अब इसे ध्यान से सुने, इस बयान को खोना दें क्योंकि ये सुनने के काबिल है। वो भाई माइक्रोफोन पर टेप लगा रहा है ताकि उड़ ना जाए, इसलिए कि मुझे पसीना आया हुआ था जो टेप पर गिरता रहा, आप समझ गए? और बस ये सब वैसे ही होगा जैसे बाइबल ने कहा था कि ये होगा, समझे? गौर करें, वो झूठे यस्सु नहीं हैं, बल्कि झूठे मसीह हैं। वो अपने ममसू होने पर तो ईमान रखते हैं और ये भी जानते हैं कि वो यस्सु नहीं है। देखें, ये बिल्कुल साफ है। आज अगर कोई आदमी ऊपर चढ़ जाए और कहे, मेरे हाथों पर जख्मों के निशान देखो, मेरी पेशानी को देखो, मैं यस्सू हूँ, खैर हम सब जानते हैं कि यह गलत है। और याद रखें, यस्सू ने यह कभी नहीं कहा था कि ऐसे अशकास जाहिर होंगे। उसने कहा था कि झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। मसीह जमा का लफ्ज है, ये तंजीमें हैं और इसी तरह उनके ममसू हैं। वो तंजीमी रूह का मसा रखते हैं, ना के कलाम का। क्या आप समझ रहे हैं? झूठे यस्सू नहीं बल्कि झूठे मसीह, वो झूठे ममसू हैं। देखें, ओ कितनी वाज़े बात है और हम अब यकीनन इसे समझने से कासिर नहीं रहेंगे। अब याद रखें, मैंने हमेशा आपको बताया है कि तीन किस्म के लोग हैं। लोगों की तीन नस्लें हैं, सिम, हाम और याफ्त, ये तीन नस्लें हैं। और मैं कहता हूँ कि ये तीन ग्रोह हैं, ईमानदार, बनावटी ईमानदार और गैर ईमानदार। ऐसा हमेशा हुआ है और ऐसा हमेशा होगा, समझे? मूसा ईमानदार था जबकि यूनिस और यमरीस गैर ईमानदार थे, समझे? वही बलाम था और मूसा। हमेशा लोगों के तीन ग्रोह रहे हैं, तीन ग्रोह, ईमानदार, बनावटी ईमानदार और गैर ईमानदार। अब याद रखें, गैर ईमानदार जो के तंजीमी कलीसिया है, उनके किसी भी मौजजे का यकीन ना करें। वो सर्द, तंजीम प्रस्त, अकड़ी हुई दुनिया में तंजीमी कलीसिया है। लेकिन बनावटी ईमानदार गंदुम के दानों पर छिलके की तरह हैं। ये वो लोग हैं जो ईमानदार बने हुए हैं। और फिर तीसरा दुरुस्त ईमानदार जो दर हकीकत सच्चा है। अब इन्हें एक मिनट के लिए देखते हैं कि अब वो कैसे चल रहे हैं, और अब गौर करें कि गैर ईमानदार या बनावटी ईमानदार, और ये गैर ईमानदार कितने दलेर हैं। मेरे अजीजो, वो दलेर हैं। देखें, यहाँ तक कि शैतान हकीकी कलाम की हजूरी में खड़ा था और उसने कहा, ये लिखा है। क्या ये सच है? शैतान ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि वो उस कलाम को नहीं जानता था। वो जानता था कि उस जमाने के लिए कलाम था, लेकिन वो उस हलीम आदमी के कलाम होने पर शक कर रहा था। अगर तू खुदा का बेटा है, मैं जानता हूँ कि खुदा का बेटा आ रहा है, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि वो आएगा, और यूँ लिखा है, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। समझे? इसे मेरे सामने साबित कर और एक मौजजा दिखा, ताकि मैं देखूँ कि तू ऐसा कर सकता है। समझे? समझे? देखें, गैर ईमानदार और बनावटी ईमानदार नकाल और बेरूपिये हैं। यहूदा इस्करियोती को देखें, जो कि बाकियों के दरमियान उसी वक्त में मौजूद था, मगर वह बनावटी ईमानदार था। समझे? और ध्यान दें, वहीं हकीकी कलाम भी मौजूद था। वो कितने दलेर हैं? अब इस हमाकत पर कोई तवज्जो न दें, इसमें कुछ भी नहीं है। वहाँ मत जाएं, ये सिर्फ शोरगुल मचाने वाला ग्रोह है, इसमें कुछ भी नहीं है। वो महज अफसाना है जो कि तुम्हारे जहन में है। देखें, समझे मेरा क्या मतलब है? ठीक कलाम की हजूरी में खड़ा होना और फिर ऐसी बातें कहना। शैतान यहूदा में मुकम्मल तौर पर समा गया, जैसा कि बाइबल कहती है। यहाँ तक कि जब मुकर्रम फरिश्ते ने शैतान के साथ बहस की और कहा, खुदावंद ही तुझ पर मलामत करे, कलाम खुद अपनी मुखालफत नहीं कर सकता। और यहाँ ममसू मुखालफ मसीह खड़ा हुआ, जमाना के हकीकी कलाम यीशु मसीह की मुखालफत करते हुए कहता है, यूँ लिखा है, आखिरी दिनों पर निगाह डालें, ये इतनी करीब की मुशाबत रखते होंगे, अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। ओ मेरे अजीजो, बरगजीदा गुमराह नहीं होंगे। आप जानते हैं क्यों? इसकी वजह यह है कि वो कलाम है। समझे? क्योंकि उनमें वही जिंदगी है जो जड़ में थी, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बयान किया था कि ये खुद अपना इनकार नहीं कर सकती। देखें, ये कलाम है और कलाम के मौसम में है, ये सच है। बिल्कुल जैसे यर्मिया को इल्म था, उससे कोई गर्ज नहीं कि हनन्या ने क्या कहा, यर्मिया जानता था वो कहाँ खड़ा था। बिल्कुल उसी तरह मूसा ने और बाकियों ने किया, इसलिए कि वो जानता था, इससे कता नजर कि झूठे नबी क्या कहते हैं, क्योंकि उसके लिए खुदा का कलाम मौजूद था जो कि तहरीरी शक्ल में मौजूद था। यही सबब था कि मकाया ने उनसे कहा, ठीक है, बस इंतजार करो और देखो, जबकि अखियब ने कहा, मुझे अपने नबियों पर यकीन है, मेरी तंजीम दुरुस्त है, मैं सलामती से वापिस आऊंगा, इस शख्स को कैद में डाल दो, मैं आकर इसकी खबर लूंगा, इसे दुख की रोटी देते रहना, इसे अलग कर दो, इसके साथ हरगिज रफाकत ना रखो, जब मैं सलामती से लौटूंगा तो इस शख्स की खबर लूंगा। मिकाया ने कहा, अगर तू वापिस आ गया तो खुदावंद ने मेरे साथ कभी कलाम ही नहीं किया। वो जानता था कि उसके पास खुदावंद यूं फरमाता है कि सच्चाई है, और ये रोया ऐन खुदावंद यूं फरमाता है के साथ है, ये किसी और मौसम के लिए नहीं बल्कि इसी मौसम के लिए है। आमीन, हालेलुया। यही मौसम है। इतने दलेर हैं कि खड़े होकर मुकर्रम फरिश्ते के साथ बहस कर सकते हैं। ये कहा गया है कि अहमक ऊंची एड़ी के जूते पहनकर उस जगह चलेंगे जहां फरिश्ते भी चलने से खौफ खाते हैं। ये दुरुस्त है। यीशु ने कहा, बरगजीदा धोखा नहीं खाएंगे, और इसकी वजह यह है कि वो कलाम है। वो इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकते, वो इसके अलावा कुछ और नहीं सुन सकते, वो इसके अलावा और कुछ नहीं जानते। ये दुरुस्त है। याद रखें, मूसा को उन तमाम नकालों के बावजूद हिलाया ना जा सका। क्या वो डगमगाया था? क्या मूसा ने कहा, अब फराउन एक मिनट ठहर जा, क्या तू जानता है कि खुदा ने मुझसे ये करने को कहा, लेकिन खुदा को जलाल मिले, मैं देखता हूँ तेरे जवान भी बिल्कुल यही कुछ कर सकते हैं, बस मैं बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊँगा। अरे, ये खुदा के नबी वाली बात ना होती, बिल्कुल नहीं। इसकी बजाय मूसा पूरी सख्ती के साथ खड़ा रहा। वो जानता था कि खुदा बिल्कुल किसी भी सूरत में इसको संभालेगा, क्योंकि ये उसका वादा है, मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे हर किस तरक ना करूंगा। वो इस बात को जानता था, बस वो उनके साथ शामिल ना हुआ। ओ, वो शामिल नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक उनके मुकाबले में खड़ा हो गया। वो उनकी किसी तंजीम को नहीं चाहता था, वो ठीक खुदा के साथ खड़ा रहा। वो उनके तमाम कामों के बावजूद ना डगमगाया। जब मूसा जुए लाया तो उन्होंने भी यही काम किया, वो भी जुए लाए। मूसा ने खून बनाया तो उन्होंने भी खून बनाया। मूसा ने जो कुछ भी किया, उन्होंने हर मामले में ठीक उसकी नकल की। तो भी मूसा मजबूती से खड़ा रहा। वो पूरी तरह जानता था कि ये क्या है, क्योंकि खुदा उस काम में उसके साथ था। क्या अब आप समझ गए हैं? क्या आप जानते हैं कि 2 + 2 = 4 होते हैं? बस आपको इसके लिए ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, लिहाजा आप इसे समझ गए हैं। क्यों? इसलिए कि वो इससे धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि वो हकीकी ईमानदार हैं। वो पहले से मुकर्रर शुदा बीज हैं, जिन्हें इस दिन में खड़ा रहना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह यीशु ने कहा, उस रोज बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे, खुदावन, क्या मैंने तेरे नाम से बदरुहों को नहीं निकाला। यीशु ने कहा, आखिरी दिनों में जब वक्त पूरा हो चुका होगा और मुर्दे जी उठेंगे, तो बहुत सारे आएंगे और बादशाही में शामिल होंगे। खुदा की बादशाही आपके अंदर है। वो बहुत से होंगे, कड़वे दाने आएंगे और गेहूं के साथ बैठकर कहेंगे, खुदावन, अब एक मिनट ठहरे, मैं गैर जुबाने बोलता था, मैं जोर से नारे लगाता था, मैं रूम में नाचता था, मैं बदरूहों को निकालता था, मैं बेगाना जुबानों में बोलता था, मैंने ये सारे काम किए थे। वो उनसे क्या कहेगा? गौर करें, ऐ बदकारो, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। बदकारी क्या है? किसी से भी इसके मायने पूछें। ऐसा काम है जो आप जानते हो कि आपको करना चाहिए, मगर फिर भी आप नहीं करते। वो इस कलाम को जानते थे, उन्होंने इसे सुना था। आप इस टेप को सुन रहे हैं, आप इस पैगाम को सुन रहे हैं। आपने देखा कि खुदावन ने यूं कहा है। आप देखते हैं कि खुदा ने इसकी तस्दीक की है और इसे सच्चा ठहराया है। आप जानते हैं कि ये चमकते हुए सूरज की तरह बिल्कुल वाजे है। लेकिन तो भी अगर आप अपनी तंजीम को थामे रहेंगे और उन झूठी बातों को थामे रहेंगे, तो आप बदकार ठहरेंगे। ओ हाँ, मैंने बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया। उसने कहा, ऐ बदकारों, मेरी नजर से दूर हो जाओ, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ठीक है, मगर रूल कुछ मुझ पर नाजिल हुआ था, मुझे इस पर जरा भी शक नहीं। मैं गैर जुबाने बोलता था, मैं रूम में गाता था, मैंने ये किया, मुझे इस पर जरा भी शक नहीं, इस पर कोई सवाल नहीं। हो भाई और बहनों, ये किस किस्म की हालत है? ये कांप उठने का वक्त है। हम कहाँ पर हैं? अब ये कलाम जिंदगी की शक्ल में आ रहा है, इसलिए तवज्जो दें। जी हाँ, यीशु ने कहा कि वो ऐसा करेंगे। गौर करें, ऐ बदकारो, मैंने एक हवाला यहाँ लिख रखा है, मैं नहीं जानता ये कहाँ था। मैंने बहुत सा वक्त ले लिया है, मैं सिर्फ एक मिनट के लिए इस हवाले पर नजर डालना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। ये मत्ती 7:21 में है। मैं नहीं जानता ये कहाँ है, मुझे कभी कभी जरा सा भी पता नहीं चलता। ठीक है, इस तरह जब मैं मुनादी कर रहा होता हूँ, तब मैं भूल जाता हूँ कि मैं कलाम में से कौन सा हवाला दे रहा था। आइए मत्ती 7:21 को पढ़ते हैं। जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं। उस रोज बतेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबुवत नहीं की? ये नबी हैं, ये मसाशुदा हैं। क्या ये सच है? क्या हम नबी नहीं थे? क्या हम मसू नहीं थे? क्या हम मसाशुदा नहीं थे? क्या हमने तेरे नाम से नबुवत नहीं की? और क्या तेरे नाम से बद्रोहों को नहीं निकाला? आप किस तरह ये सब कुछ करते हैं और यीशु के नाम में बपतिस्मे का इनकार करते हैं? देखें, ओ मेरे अजीजों, देखें वो कैसे धोखा खा रहे हैं। वो ठीक इस नुक्ता तक पहुंचते हैं और फिर गिर पड़ते हैं। वो ठीक कलाम तक पहुंचते हैं और फिर गिर पड़ते हैं। अब इस पर गौर करें, हम एक मिनट में इसे हासिल करेंगे। बतेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबुवत नहीं की? क्या हम तेरे नबी नहीं रहे? जी हाँ, मैंने मत्ती 24:24 में इस पर बात की है। और क्या तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? और उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। ऐ बदकारो, मेरे सामने से दूर चले जाओ, क्योंकि जब इसे तुम्हारे सामने पेश किया गया, तुमने इसे देखा, तुमने इसे जुम्बश करते देखा, तुमने देखा कि ये कलाम था, लेकिन तुम अपनी तंजीम की खातिर उससे लिपटे रहे। मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि तुमने कितनी बद्रोहों को निकाला या तुमने कितने ऐसे वैसे काम किए। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। बलाम ने कहा, मैंने तेरे नाम में ठीक नबुवत की और ये पूरी हुई। ये बिल्कुल सच है, लेकिन जब ये कलाम आया तो तुमने इसका इनकार किया। ओ भाइयों, क्या आप धोखा देने वाले हिस्से को देख रहे हैं? अगर कोई नबी भी पूरी तरह इस कलाम के साथ नहीं, इस कलाम के साथ जो सच्चा है और मुनकशिफ और साबित किया गया है, तो फिर वो बदकारों में शामिल है। शैतान ने हर जमाने में सच्चे कलाम की नकल करने की कोशिश की है। हम इस बात को जानते हैं, क्या हम नहीं जानते? गौर करें, वो सरहद तक आए मगर फिर वापिस भाग गए। यहाँ देखें, जो उसने अब्रानियों 6 में कहा था, हम कुछ देर पहले पढ़ रहे थे और अब आपने देखा। मैं आपको उसकी तरफ वापस चलने को कहता हूँ और हम इसे अगले 2 मिनटों के लिए देखेंगे। उसने कहा, लेकिन झाड़ियाँ और ऊंट कटारे वो नामकबूल हैं और करीब हैं कि लानती हों और उनका अंजाम जलाया जाना है। ये सरहदी हैं। जो आसमानी बख्शीश का मजा चख चुके। मजा चखा, दूसरे लफ्जों में तुमने उसे देखा। तुम उसे अपने मुंह से नहीं चख सकते। बल्कि तुमने उसे देखा और तुम जानते थे कि यह सच्चाई थी। तुम जानते थे कि यह सच्चाई थी। आसमानी बख्शीश का मजा चख चुके और रूलकुश में शरीक हो गए जो तुम पर नाजिल हुआ था, और खुदा के उम्दा कलाम का जायका ले चुके। जायका लिया यानी तुमने देखा कि यह दुरुस्त था, और रूलकुश तुम पर नाजिल हुआ यानी झाड़ियों और ऊंट कटारों पर जो खेत में थे। और अगर वो बरगश्ता हो जाएं और उस मसीह का इनकार करें जिसने तुम्हें मुकद्दस किया और तुम्हें बुलाया और मसा तुम पर नाजिल किया, तो गुनाह के कफारे के लिए कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। ये नाकाबले माफी है। सच्चाई के कलाम पर गालिब आना उनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि उन्हें सच्चाई के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है। वो जो रूलकुश में शरीक हुए थे, ऊंट कटारों और झाड़ियों पर रू नाजिल हुआ। देखें, वो यस्सु नाम से शुरू हुए और कहा, खुदावंद मैं इसी के जरिए आगे बढ़ूंगा, लेकिन जब तुम कलाम के सामने आए तो वापिस हो लिए। रूलकुश में शरीक हुए, यहाँ तक के जायका लिया और खुद कलाम को जाहिर होते देखा, और फिर भी इससे बरगश्ता हो गए, तो ये उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन है कि इसे समझ सकें या इसकी तरफ आ सकें। ये कलाम यूं फरमाता है, अब ये आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन कलाम नहीं टलेगा। क्या आप समझ गए? बिल्कुल नामुमकिन है। बाइबल इसी तरह कहती है और रूह इसे कायम रखता है। ध्यान दीजिए, मुझे एक छोटी सी मिसाल पेश करने दीजिए। उन लोगों को देखें जो मूसा की नबूवत के तहत थे, उस तंजीम में से निकलकर आए। वो नबूवत के तहत हर चीज को छोड़कर निकल आए और उन्होंने बड़े बड़े अजीब काम और मौजजात और इसी तरह की दूसरी चीजें देखी और उस सरहद तक पहुँचे जहाँ से उन्हें अंदर दाखिल होना था। ली, अब वहाँ आपका नाम किताब में आता है, समझे? आपने इसे कायम रखा है। और आप लोग जो यहाँ नहीं हैं, बल्कि टेलीफोन पर सुन रहे हैं, डॉक्टर ली वेल यहाँ बैठे हुए हैं। वो सात कलीसिय जमानों की तफसीर की किताब को ग्रामर के मुताबिक बना रहे हैं, और इसमें इन्हें एक मसला पेश आ गया। ये सवाल उठा, आपके नाम का बरा की किताब हयात में से काटा जाना। देखें, इस बात से बहुत से खादम उलझन में पड़ गए हैं, लेकिन किताब मिलने तक इंतजार करें। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी रोशनी हुई तो आप समझ जाएंगे, समझे? गौर करें। अब अगर आप अपना रुख मोड़ लेंगे और इसकी तरफ देखना भी गवारा ना करेंगे तो आप इसे समझ नहीं सकते। जैसे मेरी वालदा कहा करती थी, तुम एक शलजम से खून हासिल नहीं कर सकते, इसलिए कि उसके अंदर खून होता ही नहीं। गौर करें, रोशनी को आना पड़ता है, वो तारीकी में मौजूद नहीं होती। रोशनी तारीकी के पास आती है और तारीकी इसे कबूल नहीं करती। अब इस जमाने के मसाशुदा लोगों पर गौर करें। जब मूसा बनी इसराइल को निकाल कर लाया तो उन्होंने आवाज को सुना, मगर फिर उस जगह पहुंचकर उस बड़ी कौम में गुल मिल गए। अब बनी इसराइल तंजीम बंदी में दब गए हैं। इसराइल का कोई मुल्क ना था, कोई घर ना था, वो एक घर की तरफ जा रहे थे। हमारी कोई कलीसिया नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं, हम एक कलीसिया में जा रहे हैं, पैलोटों की कलीसिया में, जो कलीसिया जलाल में है, उस कलीसिया में नहीं जो जमीन पर है और इंसान ने बनाई है, बल्कि उसमें जो जलाल में है, जो अबदी जिंदगी के लिए पहले से मुकरर किए हुए और बुलाए हुओं पर मुश्तमिल है। देखें, वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं, और जब वो उस जगह पहुंचे जहां से उन्हें पार पहुंचना था, तो उन्होंने कलाम पर शक किया और वापिस हो लिए। जब यशुआ और कालिब की रहनुमाई में कुछ लोग वहां गए और वापसी पर अंगूरों का एक गुच्छा लेते आए कि वो सरजमीन मौजूद है, यानी खुदा के वादे के कलाम का सबूत था कि ये अच्छी जमीन है और उसमें दूध और शहद बहता है, और वो उसका सबूत इस पार अपने साथ लाए और उसका जायका चखा और कहा, हो हम वहाँ नहीं जा सकते, ऐसा करना नामुमकिन है। फिर क्या हुआ? वो सब बियाबान में हलाक हो गए। वो उसी मकाम पर रुक गए और अपने आप को मुनज्जम कर लिया, और उनमें से हर एक हलाक हो गया। लेकिन यशुआ और कालिब जो वहाँ गए, वो वापसी पर फल लाए, वो उस मुल्क में दाखिल हो गए। वहाँ पर मूसा तब्दील हो गया, जो कलीसिया के इंतजार में पुराने ऐदनामे की नए ऐदनामे में क्यामत और उठाए जाने वाले बदन की अलामत है। क्या आपने देखा? यहाँ भी तीन अशखास हैं। देखें, इसी तरह ईमानदारों और गैर ईमानदारों को तीन की तर्तीब में कायम रहना पड़ता है, समझे? गौर कीजिए, ये मुकम्मल हालत में कैसा था। याद रखें, खुदा ने कभी इस गुनाह को माफ ना किया। वो किस हालत में दाखिल हो रहे थे? अगर कोई चीज आगाज में कांटेदार झाड़ी हो तो आखिर में भी वो कांटेदार झाड़ी ही होगी, इसे सिर्फ वही देखेंगे जो पहले से मुकरर किए गए हैं। अब नहायत तवज्जो दें। तारीख दौर से पहले सेंट मार्टिन के दिनों पर गौर करें। वो पस्त कद खुदा प्रस्त आदमी था। आप में से कितनों ने सेंट मार्टिन की तहरीरें पढ़ी हैं? आप में से काफी लोगों ने पढ़ी हैं। मैं सेंट मार्टिन की तसानीफ हासिल करने के लिए गया तो प्रीस्ट ने कहा, लेकिन वो तो कोई मुकरर शुदा बुजुर्ग नहीं था। यकीनन वो नहीं था, वो उनका मुकरर करदा नहीं था, बल्कि वो खुदा का मुकरर करदा था। रूल कुश ने हमें कहा कि इसे तीसरे कलीसियाई जमाने में खड़ा किया जाए, समझे? देखे, वो पस्त कद आदमी कितना खुदा प्रस्त आदमी था। वो बुलाया हुआ था और पहले से मुकरर शुदा इंसान था। उसके वालदेन बुत प्रस्त थे। उसका वालिद एक सिपाही था। उसे भी अपने बाप की पैरवी में एक सिपाही बनना था, और जब उसने ऐसा किया तो हमेशा इस बात पर ईमान रखा कि कहीं ना कहीं कोई खुदा है। वो जंगलों में रहने वाला एक आदमी था और उसने खुदा को देख ही लिया था। एक दिन वो एक शहर में से गुजरा, वहाँ एक बूढ़ा शख्स पड़ा हुआ था और मर रहा था और किसी से कुछ मांग रहा था। उस रात बड़ी सर्दी थी। ओ, उसने मांगते हुए कहा, मुझे कुछ ओढ़ने के लिए दे दो वरना आज रात में मर जाऊंगा। किसी ने ऐसा ना किया और मार्टिन एक तरफ होकर ठहर गया और देर तक उसे देखता रहा। किसी ने भी ऐसा ना किया। मार्टिन के पास एक ही कोट था। अगर वो कोट उस शख्स को दे देता तो वो खुद मंजमंद हो सकता था, क्योंकि वो ड्यूटी पर था। बस उसने सोचा, अगर मैं इसे तकसीम कर लूं तो हम दोनों बच जाएंगे। उसने अपने कोट को लिया और अपनी तलवार से कोट को दो हिस्सों में तकसीम किया। निसफ हिस्सा उस शख्स को लपेट दिया और बाकी निसफ हिस्सा अपने चौगिर्द लपेट लिया। हर कोई कहने लगा, देखो ये कैसा मजाका खेज संतरी है, देखो ये कैसा मजाका खेज सिपाही है जिसने आधा कोट पहन रखा है। अगली रात जब वो अपनी ड्यूटी से फारिग होकर अपने बिस्तर पर सो रहा था तो वो जाग उठा। उसने किसी को कमरे में खड़े हुए देखा और वो यीशु मसीह था, और उसी पुराने कपड़े को लपेटे हुए था जो मार्टिन ने उस शख्स के बदन पर लपेटा था। तब वो समझ गया कि जो कुछ तुमने इन छोटों के साथ किया, यानी मेरे ममसूओं के साथ किया, तो मेरे साथ ही किया। वो बात पूरी हुई। वो खुदा का अजीम खादम था। कलीसिया ने उसे ठट्ठों में उड़ाया, उसे सजाएं दी, उसे खारिज कर दिया और दीगर सब कुछ किया, लेकिन वो खुदा का एक नबी था। जो कुछ उसने कहा वो पूरा हुआ। उस जमाने में भी बहुतों ने उसका यकीन किया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे शैतान धोखा दे रहा है। एक दिन मार्टिन बैठा मुतालिया कर रहा था। एक जोरावर फरिश्ता जाहिर हुआ जिसने अपने सर पर ताज, पांव में सुनहरी जूते पहन रखे थे। उसके सुनहरी लिबास के गिर्द जालर लगी हुई थी। उसने कहा, मार्टिन, क्या तू मुझे जानता है? फरिश्ते ने कहा, मैं तेरा खुदावंद और निजात दहिंदा हूँ। मैं वो हूँ जिसने तुझे निजात दी। मार्टिन, मुझे सजदा कर। लेकिन वो नबी समझ रहा था कि उस फरिश्ते में छोटी सी चीज मुख्तलिफ थी। वो उसे देखता रहा। फरिश्ते ने कहा, मार्टिन, मैं यीशु मसीह तेरा निजात देने वाला हूँ, मुझे सजदा कर। मार्टिन, क्या तू मुझे नहीं जानता? मार्टिन उसे देखता रहा। उसके जहन में कलाम गर्दिश कर रहा था। मार्टिन ने कहा, ऐ शैतान, मुझसे दूर हो। मार्टिन ने कहा, तूने अपने सर पर ताज पहन रखा है, जबकि खुदा का कलाम कहता है कि आखिरी वक्त उसके मुकद्दसीन उसे ताज पहनाएंगे। क्या पेंतीकोस्टलों को यही चकमा नहीं दिया गया? मेरे भाई, कलाम को देखें। बस यही एक चीज काबिले तवज्जो है। फिर एक दिन खानकाह में राबों के दरमियान एक उम्र रसीदा बुजुर्ग मौजूद था। उनमें से एक कुछ तुंद मजाज था। तवज्जो दें, आज के लिए ये एक अच्छी तमसील है। वो बाकी राबों से बरतर कोई चीज बनना चाहता था। वो अपनी शख्सियत को नमाया करना चाहता था। वो उस सारे ग्रोह में से ज्यादा बाइख्तियार बड़ी और बेहतर चीज बनना चाहता था। आप जानते हैं, वो आला दर्जे की कोई चीज बनना चाहता था। उसके अंदर हमेशा दूसरे भाइयों जैसा नहीं, आप समझते हैं, बल्कि उनसे मुख्तलिफ बनने की ख्वाहिश थी, समझे? वो ऐसा मुतकब्बर था कि किसी के रुतबे की परवाह नहीं करता था। वो साहिल की कंकरी था, कोई नहीं था जो उसे छू सके। अब देखें क्या हुआ। उसके पास कोई बड़ी चीज होनी चाहिए थी। उसे बड़ी मजालस का हम पल्ला होना था। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझे? बस उसने ये कहकर नबूवत की। उसने कहा, खुदावन ने मुझे भी एक नबी मुकरर किया है और मैं एक नबी हूँ। अब उस वक्त जमीन पर एक साबित शुदा नबी मौजूद था और वो सेंट मार्टिन था। वो पदेश ही से नबी था। लेकिन उस नौजवान लड़के ने कहा, इस नौजवान राहब की उम्र तकरीबन 25 साल थी। उसने कहा, खुदावन ने मुझे एक नबी मुकरर किया है और मैं इस बात को आपके सामने साबित करूंगा। उसने कहा, आज रात खुदावन एक बड़ा और उम्दा चोगा मुझे पहनाएगा और उस सफेद चोगे के साथ मुझे तुम्हारे दरमियान मुकरर करेगा। फिर तुम सब मेरे पास आया करोगे, देखो, और तुम हैकामात लिया करोगे। देखें, अब आज के जमाने के साथ इसका मुवाजना करें। मैं तंजीम का सरबराह हूँ और तुम बाकी राबों की निगरानी करूँगा। सेंट मार्टिन लिखता है, कि उस रात रोशनियां इमारत के अंदर आईं और वाकई ही ऐसा हुआ। इसे पढ़ें और ये मौत पर बात है, ये तारीख है। और रोशनियां उस इमारत के अंदर आईं और बाकियों ने देखा और वहाँ वो सफेद चोगे में उनके दरमियान में खड़ा था। उसने कहा, देख लो मैंने तुमसे क्या कहा था। लेकिन ये कलाम के बरक्स था। और जब वो दरसगाह के बड़े बुजुर्ग उस्ताद के पास गया तो वो थोड़ी देर इधर उधर चलता रहा और फिर उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा ये ठीक दिखाई नहीं देता। उसने कहा, सिर्फ एक ही तरीका है। ये बात है, हमारे पास इसे जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। ये माफूकुल फितरत लगता है। लड़के, जैसे पेंटिकोस ने इस जड़ को जकड़ा और चिमट कर उसमें धंस कर और राबता और बाकी सब कुछ कैम कर लिया। उस्ताद ने कहा, मौजजा दुरुस्त दिखाई देता है लेकिन ये कलाम के मुताबिक दुरुस्त दिखाई नहीं देता। अब हमारे पास एक शख्स मार्टन नामी ममसू नबी है, आओ उसके पास चलते हैं। उस शख्स ने कहा, नहीं नहीं, मार्टन का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। और उस्ताद ने कहा, तुम्हें हर सूरत में चलना होगा। और उन्होंने उसे मार्टन के पास ले जाने के लिए बाजू से पकड़ लिया, तब वो चोगा उससे जुदा हो गया। देखें, अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। देखें, बरगजीदा उसे जानते हैं। यीशु ने कहा, मेरी भेड़े मेरे कलाम को जानती हैं। हो, आप कहेंगे उसने कहा था मेरी आवाज़ सुनती हैं। उसकी आवाज़ उसका कलाम है। इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, समझे। बरगजीदा इसे समझते हैं, वो किसी गैर की आवाज़ या उसके कलाम की पैरवी ना करेंगे। यही मामला उन आदमियों के साथ था, उन्होंने उसकी पैरवी ना की। वो जानते थे कि उस जमाने का नबी मार्टन वहाँ मौजूद था जिसे खुदा ने अपने कलाम से साबित किया था, और वो कलाम को जानता था, और वो शख्स मार्टन के सामने खड़ा ना हो सका। यीशु ने यह भी कहा, जहाँ लाश है या कलाम है वहाँ पर उकाब जमा हो जाएंगे। अब अगर आप इस हवाले को लिखना चाहते हैं तो ये मत्ती 24:28 में है, मत्ती 24:24 से थोड़ा सा नीचे, सिर्फ चार आयात नीचे। देखें, अगर आप इसे हासिल करना चाहते हैं, जहाँ लाश है, मन या कलाम है, वहाँ उकाब जमा हो जाएंगे। अब मुझे जल्दी करनी चाहिए। मैंने निगाहें उठाई और वक्त पर मेरी नजर पड़ी तो 12:07 या 8 हो गए हैं। मैं अब हकीकत में जल्दी करूंगा ताकि आज रात हम इसे खत्म कर सकें। क्या आप भी चाहते हैं कि इसे मुकम्मल कर लिया जाए, फिर आज सुबह या रात को? क्यों जी, इबादत के बाद आप में से कितनों ने आज घर को जाना है? देखें, मुझे अपने हाथ दिखाएं। ओ मेरे खुदाया, जारी रखना बेहतर है। मुझे अफसोस है कि मैंने टेलीफोन पर सुनने वाले लोगों को मजबूर करके बिठाए रखा है, लेकिन अब मैं जल्दी करूंगा। ये आपके पैसों से ज्यादा कीमती चीज है, और देखें, मेरा ईमान है कि ये मेरे लिए ऐसा ही है। आपका पैसा खत्म हो जाएगा लेकिन ये चीज खत्म ना होगी क्योंकि ये कलाम है, समझे। जहाँ लाश है वहाँ उकाब जमा हो जाएंगे। जहाँ लाश है, जो ही किसी चीज को जबा किया जाता है वहाँ उकाब जमा होंगे। जहाँ ताजा गोश्त है, यानी मौसम का कलाम होगा, वहाँ उकाब जमा हो जाएंगे। लेकिन बाद अजां जब ये गल सड़ जाएगा तो वहाँ गिद्धों का झुंड आ जाएगा। जी हाँ, देखें मेरा क्या मतलब है। जब कुछ जबा होता है तो वहाँ उकाब आते हैं, बाद में वो वहीं पड़ा रहता है और गल सड़ जाता है तो फिर वहाँ गिद्ध आ जाते हैं। फिर उकाब उस बचे हुए के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता, समझे। यीशु ने कहा, जहाँ लाश है, जहाँ मन गिरता है, जिस रात मन गिरता है, ताज़ा होता है, वहाँ उसके लिए उकाब जमा होंगे। ये मन आज के वक्त के लिए है, समझे। गौर करें, जब वो गल सड़ जाता है और उसमें सुंडियाँ पड़ जाती हैं, तब वहाँ गिद्ध आ जाते हैं। जब तक वो गल सड़ ना जाए, गिद्ध उसकी बदबू नहीं महसूस कर सकते। हैरत की बात नहीं है कि यीशु ने वहाँ खड़े होकर कहा, ए यरूशलम, तू जो नबियों को संसार करती है। यहाँ इस्तेमाल होने वाले सीगा और इसमें जमीर पर गौर कीजिए। देखें, ए यरूशलम, कितनी बार मैंने, वो कौन था, कितनी बार मैंने चाहा कि तुझे इस तरह जमा कर लो जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले इकट्ठा कर लेती है, लेकिन तूने हर उस नबी को संसार किया जिसे मैंने तेरी तरफ भेजा। यरूशलम की बहुत बड़ी कलीसिया थी, लेकिन हम जमीनी यरूशलम से नहीं हैं, बल्कि हम आसमानी यरूशलम से हैं, जहाँ से कलाम आया, जहाँ हम पहले से मुकरर किए गए थे, समझे। उस पुराने यरूशलम से नहीं जो तबाह हो गया, बल्कि नए यरूशलम से जो तबाह नहीं हो सकता। उस पुराने यरूशलम से नहीं जिसे इंसान ने तामीर किया, बल्कि नए यरूशलम से जिसे खुदा ने तामीर किया। देखें, अब वहाँ कलाम को साबित किया जा रहा है। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। मैं वहाँ जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। खालिद सोने की सड़कें और बाकी चीजें बना रहा है। ये वो जगह है जो कभी तबाह नहीं हो सकती। ऐ यरूशलम, कितनी बार मैंने चाहा, इब्तदाई जमाने से। ये कोई तीसरा शख्स नहीं, कोई गैर नहीं, बल्कि मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, वैसे ही मैं तुझे जमा कर लूं, मगर तुमने ऐसा ना चाहा, लेकिन अब तेरी घड़ी आ पहुंची है। समझे? जहां लाश है वहां उकाब जमा होंगे, लेकिन जब लाश गल सड़ जाएगी तो वहां गिद्ध जमा हो जाएंगे। समझे? गौर करें, मूसा, उसने कभी खुदा के बच्चों को ऐसी चीज ना दी। मूसा एक उकाब था और उसने कभी खुदा के बच्चों को नू की बासी खुराक नहीं दी। समझे? उसके पास खुदा का ताजा कलाम था। खुदावन खुदा मुझसे बियाबान में मिला, उसने अपने कलाम की तस्दीक की, तुम्हें निकाल ले जाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। फिर वहाँ नकाल आ गए और उन्होंने उसकी नकल की। समझे? मगर उसके पास उस जमाने का कलाम था, क्योंकि खुदा ने इब्राहिम से कहा था, जिसके पास खुदा का वादा था कि तेरी नस्ल 400 साल तक अजनबी मुल्क में परदेसी रहेगी, लेकिन मैं उनके पास जाऊंगा और जोरावर हाथ से उन्हें निकाल लाऊंगा। मूसा ने कहा, अब खुदावंद खुदा ने मेरे साथ कलाम किया और मुझे दिखाया और उसने मुझे बताया जो मुझे करना है, मैं तुझे बताऊंगा। मूसा ने कहा, मैं हूँ ने मुझे भेजा है, मैं हूँ, ना कि मैं था या मैं हूँगा, मैं हूँ, फिलहाल है, यानी अब मौजूदा कलाम, वो कलाम नहीं जो था, वो कलाम जो आएगा और अब मौजूद है। देखें, क्या आप इसे समझ गए? मैं हूँ कलाम है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, क्या यह दुरुस्त है? मैं हूँ, खुदा ने मुझे अपना नबी बनाकर भेजा कि उसके सच होने को साबित करूँ कि मैं हूँ, इस कलाम का जवाब है। उसने मुझे यहाँ इस सारे काम को करने के लिए भेजा है। और जब उसने ऐसा किया तो फराउन ने कहा, ठीक है, हमारे ग्रो में भी बहुत से लड़के हैं जो यही काम कर सकते हैं, वो नकाल थे। यीशु ने कहा, अब आखिरी दिनों में ये सब कुछ फिर दोहराया जाएगा। देखें, सब एक ही दावा कर रहे हैं। गौर कीजिए, पहले कौन आता है? गौर करें, कलाम के साथ कौन खड़ा रहता है? ये बात है, इसे जानने का यही तरीका है। इस तरह आप इसे समझ सकते हैं। बस हमने ध्यान दिया कि मूसा ने कभी उन्हें नूह के जमाने की छोड़ी हुई खुराक ना दी। आप जानते हैं, उसने यूं ना कहा कि आओ अब हम एक कश्ती बनाएंगे, क्योंकि वो भी तो खुदा का कलाम था। नूह ने भी तो एक कश्ती बनाई थी। नहीं, क्योंकि आप उसे गिद्ध खा रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ये खुदा का मौजूदा कलाम है। गौर कीजिए, जो पैगाम खुदा ने उसे दिया था उस घड़ी के लिए वो खुदा का पहले से मुकरर करदा कलाम था। ना ही कभी यीशु ने उन्हें मूसा की छोड़ी हुई खुराक दी। मूसा के पास अपने जमाने के लिए कलाम था, मगर मूसा एक नबी था, यहाँ खुद खुदा था। देखें, उसने उन्हें कभी मूसा की छोड़ी हुई खुराक ना दी, लेकिन देख लीजिए कि उस तंजीम के गिद्ध उस खुराक को खा रहे थे। हम जानते हैं, हमने मूसा को कबूल किया है, हम तुझे कबूल नहीं करेंगे। यीशु ने कहा, अगर तुम मूसा को जानते तो मुझे भी जान लेते, क्योंकि मूसा ने मेरी बाबत लिखा। ओ मेरे अजीजो, समझो, जहाँ लाश है वहाँ उकाब जमा होंगे। अकाब, कलाम का ताजा जबिया, वो कलाम जो मोटा ताजा और परवरिश करने वाला हो, जिसे जाहिर किया गया हो और बच्चों की परवरिश के लिए मुहैया किया गया हो। अब पुरानी लाश जो कई सौ सालों से वहाँ पड़ी है, तो वहाँ यही होगा, अब भी ऐसा ही है। लूथर के पास तोबा का पैगाम था, लेकिन आप लूथरन ग्रोह के लोग गिद्ध हैं। बैप्टिस्ट के पास पैगाम था, लेकिन आप बैप्टिस्ट ग्रोह के लोग गिद्ध हैं। समझे? पेंटिकोस्टलों के पास पैगाम था, लेकिन अब आप घर की तरफ आते हुए पेंटिकोस्टल गिद्ध हैं। लेकिन जहां लाश होगी वहां उकाब जमा होंगे। याद रखें, आप किसी लूथरन को उनके दिनों में अब आप दे सकते हैं, कैथोलिक लाश की खुराक नहीं दे सकते थे। नहीं जनाब, लूथर के पास ताजा गोश्त था, ये उसकी कलीसिया का जमाना था। आप मेथोडिस्ट लोगों को लूथरन पैगाम की गजा नहीं दे सकते। ओ नहीं, वो ऐसी खुराक नहीं चाहते, इसलिए कि ये सड़ चुकी थी। देखे, जिंदगी इसे छोड़कर किसी और चीज के अंदर जा चुकी थी। ये वो पुराना तना है जो पीछे मर चुका और जिंदगी आगे बढ़ गई। इसी तरह आप यीशु मसीह की दुल्हन को पेंटिकोस्टलिज्म की गजा नहीं दे सकते। फिल हकीकत नहीं, तंजीमों में सुंडियां पड़ चुकी हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। नहीं नहीं, इसलिए वादा है, खुदावंत के अजीम और होलनाक दिन के आने से पेशतर, मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, वो फर्जंदों के दिल वालदों के ईमान की तरफ वापिस फेरेगा। ये सब वादे बाइबल में किए गए हैं। मैं ऐसा करूंगा और उकाब जमा हो जाएंगे। वो सब जो बाप ने मुझे दिए हैं मेरे पास आ जाएंगे, समझे? यीशु ने कभी इसकी कोशिश ना की। लेकिन जब यीशु आया तो उसने गिद्धों के घोल देखे जो कहते थे हमारे पास मूसा और शरीयत है, समझे? ठीक है, इसको उस वक्त खाना अच्छा था जब वो ताज़ा ज़बह करके उनको दिया गया था। देखें, उस वक्त सब कुछ ठीक था, लेकिन ये वो बात थी जिसकी खुद मूसा ने पेशनगोई की थी, जिसने कुर्बानी की थी। उसने कहा था, खुदावन तुम्हारा खुदा तुम में तुम्हारे भाइयों के दरमियान में से एक नबी बरपा करेगा, और ऐसा होगा जो कोई उस नबी की बातों पर अमल ना करेगा वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा, और ये बात पूरी हुई। देखें किस तरह पुराने ऐहदनामे की तकरीबन 600 नबूवतें यीशु मसीह में पूरी हुई। वो मेरे हाथ और पांव छेदते हैं। तकरीबन मैं भूल गया हूँ कि यीशु की जिंदगी के आखिरी 7 और 8 घंटे में कितनी नबूवतें पूरी हुई। सब नबियों ने पूरी तरह बयान कर रखा था। अगर आज मैं नबूवत करूँ कि अब से 1 साल बाद फलां बात वाकया होगी, तो शायद मेरे पास इसके वाक्य होने के 20% अमकान हो, चाहे दुरुस्त हो या गलत। और अगर मैं पेशनगोई करूँ कि फलां बात वाकया होगी और ये न बताऊँ कि कब, तो मेरे पास इसका अमकान और भी कम हो जाएगा। अगर मैं इसके वकू में आने का वक्त बता दूं, तो थोड़ा सा अमकान पैदा हो जाता है। अगर मैं इसके वकू में आने का वक्त बता दूं, तो अमकान में थोड़ी सी गुंजाइश पैदा हो जाती है। और अगर मैं ये पेशनगोई करूं तो ये फलां शख्स पर वाकया होगी, तो मेरे पास इसके पूरे होने के तकरीबन लाखों अमकान होंगे, बिलफर्ज ये सच ना हो। लेकिन हर वो लफ्ज हालेलुया जो मसीह के लिए लिखा गया था, उसका एक एक हर्फ पूरा हुआ। यहाँ तक कि एक दिन वो कलाम पढ़ रहा था तो वो एक ऐत के दरमियान रुक गया और कहा, खुदा का रूह मुझ पर है ताकि खुशखबरी सुनाऊं और आजाद करूं। और वो इस ऐत को पढ़ते हुए ठीक दरमियान में रुक गया, क्योंकि इस ऐत का बाकी हिस्सा उसकी दूसरी आमद के बारे में था। आमीन। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरा कलाम हरगिज न टलेगा, समझे? वो उस वक्त का कलाम था जो उन्हें खुराक मुहैया कर रहा था। मूसा ने उनको सच्चाई बताई थी, लेकिन आप देखें कि उन्होंने हमेशा उसमें से एक तंजीम बना ली, इसलिए कि वो गिद्ध थे। जब अकाब खा चुकने के बाद अपने घरों को जा चुके होते हैं, तो उसमें से कुछ बाकी रह जाता है, फिर वो कुछ और देखने के मुंतजिर रहते हैं। कलाम के बारे में वो कहते हैं, ख्याल है कि वो यहाँ आएगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज हमारे पास बर्फानी हरन था, आइंदा रोज हमारे पास भेड़ होगी। क्या आप मेरा मतलब समझ गए? वो वहाँ बर्फानी हरन की पुरानी लाश को पड़े तकते रहे, लेकिन आज भेड़े हमारी तरफ आ रही हैं। ये अब कहाँ पर है? देखे मेरा क्या मतलब है, यानी फरिश्तों की खुराक। जिस मन को लोग एक रोज खाते थे, अगर वो उसे दूसरे दिन तक रखने की कोशिश करते तो उसमें सुंडियाँ पड़ जाती थी। क्या आप उन सब नमूनों को नहीं समझते? ये किस कदर कामिल है। यही सूरत हाल अब भी है। गौर करें, यीशु के जमाने के गिद्ध यानी लाश के ममसू भी बदरूहों को निकाल रहे थे। क्या ये दुरुस्त बात है? वो बदरूहों को निकाल रहे थे, यीशु ने इसी तरह कहा। और याद रखें, उन दिनों में उनके पास नबी थे। काइफा सरदार कहन ने नबुवत की थी। कितने ये बात जानते हैं? काइफा ने नबुवत की थी। खेत के कड़वे दानों के मकाम पर गौर करें, वो भी उसी मसा के पानी से सैराब होते थे। बाइबल ने क्यों कहा कि उसने नबुवत की? क्योंकि वो उस साल का सरदार काहिन था। गला सड़ा कचरा गंदुम के दरमियान बैठा हुआ था, जंगली घास और एक ऊंट कटारा, लेकिन उस पर रुलकुश का मसा था और वो खुदा का असली रूह था। खुदा का पाक रूह उसके ऊपर था ताकि मनादी और नबुवत करे, और वो जो नबुवत करे वो पूरी हो, और उस जमाने के लिए नहायती साबित शुदा कलाम का इनकार करे और उसे मसलूब करे। ओ मेरे भाइयों, रहम हो, हम कितनी देर तक इन बातों को बयान करते रहेंगे, देखें। और कलाम मुकद्दस के जरिए कितना कुछ तलाश करेंगे। मैं जल्दी करूंगा, अभी मेरे पास कलाम मुकद्दस के तकरीबन 10 और सफात बाकी हैं। सब चीजें कैसे साबित हो रही हैं? सूरज रास्तबाज और नारास्त दोनों पर एक जैसा ही चमकता है। यीशु ने इसे साबित करने के लिए कहा, अगर मैं खुदा की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ, तो तुम्हारे फर्जंद किसकी मदद से निकालते हैं? वो बदरूहों को निकाल रहे थे, वो नबुवत कर रहे थे, क्या ये सच है? लेकिन वो यीशु को उस जमाने के कलाम की हैसियत से ना पहचान सके। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ मुंसलिक ना था। अब मत्ती 24:24 को देखें, झूठे मसीह यानी मसाशुदा लोग उठ खड़े होंगे और झूठे नबी नबुवत करेंगे, समझे? और अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। क्या अब आप इसे समझ गए? फर्जंदों की तरफ तवज्जो कीजिए, तुम्हारे फर्जंद किसके नाम से निकालते हैं? अगर मैं बदरूहों को खुदा के कलाम से निकालता हूँ जैसा कि वो खुद खुदा का कलाम था, तो फिर तुम्हारे तंजीमी बच्चे किसकी कुदरत से बदरूहों को निकालते हैं? अब हम जानते हैं कि बदरूहों को सिर्फ खुदा ही निकाल सकता है, वाहिद खुदा ही निकाल सकता है, क्योंकि किसी जोरावर के घर में दाखिल होने वाले को उससे ज्यादा जोरावर होना चाहिए। उनके पास इसको करने की कुदरत थी। आप जानते हैं, मुकाशवा की किताब में लिखा है कि आखिरी जमाने में वो मुखालिफ मसीह खड़ा होगा और निशान और मौजजात दिखाएगा, हत्ता कि उसने जमीन पर के बसने वाले सब लोगों को गुमराह कर लिया। उसने मसीहों और दूसरे तमाम लोगों को गुमराह कर दिया जिनके नाम बरा की किताब हयात में लिखे नहीं गए थे। ये मत्ती 24:24 का जवाब है। वो जिनके नाम बनाए आलम से पेशतर बरा की किताब हयात में लिखे नहीं गए थे, वो जिंदगी जो असली संतरे के पेड़ की जड़ में थी, वो लीमुओं और बाकी तमाम चीजों को छोड़ती हुई आगे चलती गई और तमाम तंजीमी बेलों और शाखों से ऊपर चोटी पर अपना असली फल पैदा किया। क्या आप समझ गए? मैं जल्दी करूंगा। जोरावर आदमी। अब याद रखें, दाऊद एक दयानतदार और मुखलिस आदमी था और वो खुदा के लिए काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुदा ने उसे उस काम के लिए मुकर्रर नहीं किया था। वो सब ममसू हैं जिनके बारे में यीशु ने कहा कि वो सब खुदा के कलाम की बजाय इंसानी तफसीर की तालीम देते हैं। देखें, ना के खुदा के कलाम की और ना ही उसके जाहिर शुदा कलाम की, बल्कि वो एक तारीखी मसीह की तालीम देते हैं। देखें, कुछ इस तरह की चीज कि वो था और बाइबल कहती है वो है, मैं हूँ, ना के मैं था या मैं हूँगा, बल्कि अभी ठीक इसी घड़ी में हूँ। वो ऐसा कलाम है जो आखिर तक कायम रहता है। वो इब्तदा में था, वो इसमें था, वो कोंपलों में था, वो पत्तों में था, वो दानों और छाल में था, लेकिन अब वो गेहूं में है। अब क्या आप गुज़िश्ता दौर में जाते हैं और जिंदा रहने की कोशिश करते हैं? अगर वो जिंदगी वापस नीचे चली जाए तो क्या होगा? आप समझते हैं कि वो जिंदगी जो छोड़ गई कभी तो बोलेगी, और जबकि छिलके सूख चुके हैं तो क्या जिंदगी दोबारा उनमें जा सकती है? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि जिनके दिल एक बार रोशन हो गए और वो कलाम के आगे बढ़ने के साथ उसकी पैरवी में ना चले, तो वो मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और जाड़ियां और ऊंट कटारे नामकबूल हैं और उनका अंजाम जलाया जाना है। क्या ये सच है? अब मैं ज्यादा से ज्यादा जल्दी करने की कोशिश करूंगा। अब कलाम पर गौर करें, वो एक तवारीखी खुदा की तालीम दे रहे हैं, देखें, और वो माजी में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि ठीक है, वेस्ली ने यूं कहा, फलां फलां ने यूं कहा, या फलां फलां ने ऐसा कहा। वो आज के मौजूदा कलाम का इनकार कर रहे हैं जो इस घड़ी के लिए वाजे तौर पर शनाख्तशुदा मन है। वो अपनी पुरानी लूथरन, बैप्टिस्ट और पेंटिकोस्टल मैं को हमारी नई मशकों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसे काम नहीं चलेगा, और ना हमारी नई मैं उनकी पुरानी मशकों में काम देगी। और अगर वो इस नई मैं को तंजीम में दाखिल करने की कोशिश करेंगे तो उनकी बेवकूफ़ी जाहिर हो जाएगी। वो ऐसा नहीं कर सकते, ये उसे फाड़ देगी। भाई साहब, अब मैंने खुदा के कलाम की कलाम के वसीला से तकमील देख ली है। अब डॉक्टर साहब, यहाँ देखें, अगर हम इसे नहीं रख सकते, नेड, मेरा ख्याल है कि ये काफी अरसा पहले तुम्हारे पास थी, हम अब इसे यहाँ नहीं रख सकते। मेरा ख्याल है कि आपको इसी तरह चलते रहना चाहिए। आप जानते हैं, देखें, ये काम नहीं देगी, ये फट जाएगी। आप पुरानी पोशाक में नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाते, वरना वो सारा फट जाएगा, समझे? क्या यीशु ने ऐसा ही नहीं कहा? आप नई मैं पुरानी मशकों में नहीं डाल सकते, इसलिए कि ये उन्हें फाड़ देगी, क्योंकि नई मैं के अंदर जिंदगी है। ठीक है, अब जबकि हम अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब जल्दी से हम एक बात पर गौर करेंगे। मुकाशवा 16:13-14 आयत पर गौर करते हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो मेरे पास ऐसा करने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यकीनन इसे देखें। अब गौर करें कि ये छठे और सातवें प्याले के दरमियान सुनाई देता है। अब अगर आप चंद मिनट और बर्दाश्त कर सकें तो हम इसे थोड़ी देर में खत्म कर लेंगे। अब बंद करने से पहले जरा गौर करें, मुकाशफा 16:13-14 आयत पर गौर करें, छठे और सातवें प्याले के दरमियान मेंढकों की शक्ल की तीन नपाक रूहें, क्या आपने इस पर ध्यान दिया, जो के किसी के मुंह से निकली हैं? अब जल्दी से इस पर गौर करें, क्या आप तैयार हैं? तो कहें आमीन। ये रूहों की एक तसलीस है। अब तंजीमी भाइयों, बस एक मिनट के लिए बैठे रहें। जो रेडियो और टेलीफोन पर सुन रहे हैं, उठकर कमरे से बाहर ना जाएं। अपने टेप रिकॉर्ड को बंद ना करें, सिर्फ एक मिनट के लिए बैठे रहें और सुनें। अगर आप खुदा से पैदा हुए हैं तो ऐसा ही करेंगे। मेंढकों की तसलीस। मेंढक एक ऐसा जानवर है जो हमेशा पीछे देखता रहता है। वो कभी नहीं देखता कि कहाँ जा रहा है, बल्कि वो ये देखता रहता है कि कहाँ से आया है। समझे? क्या आप नहीं समझते कि तसलीस की तालीम कहाँ से पैदा हुई? याद रखें, तीन नापाक रूहें, इंफरादी रूहें। क्या आप इसे समझ रहे हैं? गौर करें, वो पीछे नासियाई कौंसिल को देखते रहते हैं जहाँ से तसलीस ने जन्म लिया था, बाइबल से नहीं। बाइबल मुकद्दस में ऐसी कोई चीज नहीं है। वो पीछे रोम में नासियाई कौंसिल को देखते रहते हैं जहाँ से तसलीस ने जन्म लिया। गौर करें कि वो कहाँ से निकले हैं। गौर करें कि ये मेंढकों की तसलीस एक पुरानी तसलीस से बाहर आई और उनकी माँ ने एक नई तसलीस को जन्म दिया। ये किसमें से निकली है? एक तसलीस, एक अजदहा, देखें, हैवान और एक झूठा नबी। ये एक नई तसलीस है। ये मेंढक मंजरे आम पर कब आए और ये कब हुआ? गौर करें, वो शुरू ही से तीन थे, लेकिन ये उस वक्त तक जाहिर ना हुए जब तक छठे और सातवें प्याले के दरमियान इसे जाहिर करने के लिए मोहरें ना खुली, क्योंकि सातवें फरिश्ते के पैगाम के वसीला खुदा के पोशीदा बेद जाहिर हो जाएंगे। तमाम तसलीसी चीजें और झूठे बपतिस्मे और हर एक बात जो पोशीदा थी जाहिर हो जाएगी। खुदा सच्चाई को देखने में हमारी मदद करे, और ये न सोचे कि ये बातें कोई और आपसे कहने की कोशिश कर रहा है। मैं महसूस करता हूँ कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो खुदा का रूह इस बात से खफा हो रहा है। आप समझ गए भाइयों, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बल्कि खुदावंत के फरिश्ते की बात कर रहा हूँ जो खेमे के अंदर मौजूद है, और ये बात बिल्कुल सच है। गौर करें, एक तसलीस, अजदहा। कितने जानते हैं कि अजदहा क्या था? ये रोम था, और वो अजदहा औरत के सामने खड़ा है। जो ही वो औरत उस बच्चे को जन्म दे तो फौरन उसे निगल जाए। क्या ये बात सच है? बाइबल में हैवान का क्या मतलब है? ताकत। ठीक है, झूठा नबी, एक झूठा नबी, एक झूठा जो के ममसू है। समझे? ये कहाँ से शुरू हुआ? ये झूठा नबी इसमें वाहिद है, झूठा नबी यानी पहला पोप, और फिर वहाँ से बड़ी कस्बी और कस्बियों की माँ और बाकी सारी चीजें पैदा हुई। एक झूठी तसलीस उभर रही थी, लेकिन ये इब्तदाई दिनों में नहीं, क्योंकि इब्तदाई दिनों में जाहिर नहीं हो सकती थी। ये उसके साथ साथ बढ़ती रही, लेकिन जब सात मोहरें खुली और सब बेत अया हुए, उसी वक्त मेंढको से मुशाबा तीन नापाक रूहें अपने आप को जाहिर करने के लिए निकल आईं। ये सच्चाई के खिलाफ तसलीस की तालीम थी। समझे? जी हाँ। देखें ये कहाँ से आईं, और देखें कि ये कहाँ को वापस जा रही हैं। इक्तसादी कौंसिल में एक सी रूहों और एक सी चीजों के हामिल होते हुए वो बहरहाल आपस में बाई बाई हैं। और ध्यान करें और उनका धोखा देखें कि मौजजात दिखाते हैं। ये शैतान की रूहें हैं जो जमीन के बादशाहों की तरफ भेजी गई हैं ताकि मौजजात दिखाएं और आखिरी जमाने में उनको धोखा दें, और वो ऐसा करने में कामयाब होंगी। खुदा ने उस बुरी रूह के बारे में क्या कहा था? बुरी रूह ने कहा, मैं जाऊंगी और उन नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊंगी ताकि वो झूठी नबुवत करें, ताकि अखियब जंग करने के लिए जाए और फना हो जाए। खुदा ने कहा, तू जा और तू कामयाब होगी, वो तेरा यकीन करेंगे। वो आगाज ही से इस कलाम के साथ नहीं है। समझे? जा, क्योंकि तू उन्हें कायल कर लेगी। जब तू नबियों के अंदर दाखिल होगी तो तू कामयाब होगी, क्योंकि अखियब अपने नबियों पर तकिया करता है, लेकिन वो कलाम के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही वो इसे जानने की कोशिश करेगा। वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो शुरू ही से एक ऊंट कटारा है। समझे? समझे? तू कामयाब होगी। उन झूठे मेंढकों को देखें जो पीछे देख रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आप जानते हैं कि उन्होंने नासिया में क्या कहा था। मुझे परवाह नहीं कि उन्होंने नासिया में क्या कहा था, मैं वो कह रहा हूँ जो उन्होंने यहाँ खुदा के तख्त पर कहा। क्या होगा? ये नहीं कि क्या हुआ था, बल्कि जो होगा, क्योंकि वो खुदा है जो कहता है मैं हूँ। समझे? झूठे, इस लफ्ज पर गौर करें। जी हाँ, गौर करें, वो कहाँ से आए हैं? अब गौर से सुने, हमने वाजे तौर पर देखा है कि जब सात मोहरें खुल गईं, तो सब बेद आश्कारा हो गए। तसलीस क्या है? देखें, इसे कब तसलीस का नाम दिया गया? समझे? बाइबल में कब कहीं तसलीस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है? तीन खुदा किस तरह हो सकते हैं? और क्या हम तीन खुदाओं की प्रस्तिश करके बुत प्रस्त नहीं है? इनको कैसे जुदा किया गया, जबकि यीशु ने कहा, मैं और मेरा बाप एक हैं। जब तक ईमान ना लाओ कि मैं वही हूँ, तो ऐ बे ईमानो, देखो तुम अपनी बेइतकादी में हलाक हो जाओगे। बेइतकादी गुनाह है और तुम अपनी बेइतकादी में हलाक हो जाओगे। ओ कौन हूँ मैं और तुम कहते हो क्या, कहाँ से मैं आया हूँ तुम कहते हो क्या, हो जानते हो क्या बाप को मेरे, नाम क्या है उसका बताओ मुझे। मैं तो गुलाब हूँ शाहरुन का, सुबह का रोशन सितारा हूँ, क्या बता सकते हैं कौन है वो। मैं हूँ वो जिसने दी थी सलाह मूसा को जलती जाड़ी में, मैं हूँ खुदा इब्राहिम का, मैं सुबह का रोशन सितारा हूँ, मैं तो गुलाब हूँ शाहरुन का, हो कहाँ से मैं आया तुम कहते हो क्या। हो जानते हो क्या बाप को मेरे, नाम है क्या उसका बताओ मुझे। आमीन। मैं अल्फा ओमेगा आखिर और अव्वल हूँ, मैं ही तो हूँ बस तख्लीके कुल, यस्सु नाम है उसका। ये सच है, कोई तसलीस नहीं है। नहीं जनाब, ये एक झूठी तालीम है। सात मोरों के खुलने से वो तमाम राज खुल गए हैं जिससे सब कुछ वाजे हो गया है। मोहरें खुली, तमाम सच्चाइयां अफशा हुई और अपने अंजाम को पहुंची, जिनको मोहरों ने तमाम बरसों से तमाम कलीसियाओं और तंजीमों से पोशीदा रखा हुआ था। बड़ी कस्बी मुकाशवा 17 में, वो कस्बी कौन थी? वो तमाम कस्बियों की माँ है। और ये बात इसी तरह है, समझे? अब आप कहेंगे भाई ब्रहनम आप उन्हें गिद्ध कह रहे हैं, बिल्कुल सच है, मगर याद रखें कि गिद्ध भी एक परिंदा है, उसे भी परवाज का मसा मिला होता है। दो रूहें बहम इस कदर मुशाबे होंगी कि बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। एक गिद्ध भी उकाब जितना ही बड़ा होता है, वो उकाब ही की तरह परवाज कर सकता है, उसे परवाज करने, मुनादी करने, नबूवत करने का मसा मिला होता है। गौर कीजिए, बिल्कुल जैसे उकाब को परवाज करने का मसा मिला होता है। लेकिन वो बुलंदी पर उकाब की पैरवी नहीं कर सकता, नहीं नहीं। अगर वो बुलंदी पर उकाब की पैरवी करने की कोशिश करेगा तो उसकी बेवकूफ़ी जाहिर हो जाएगी। जी जनाब, वो उकाब की पैरवी नहीं कर सकता। हो वो कह सकता है कि मैं ईमान रखता हूँ, यीशु मसीह खुदा का बेटा है, मैं ईमान रखता हूँ खुदा बाप कादर मुतलिक पर जो आसमान और जमीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका बेटा है, और इसी तरह दूसरी बातों पर भी। ओ यकीनन वो सब ये कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के कल आज बल्कि अब तक यकसा होने के बारे में क्या ख्याल है, समझे? उकाब एक मखसूस बनावट का हामिल परिंदा है और जमीन पर इसका कोई सानी नहीं है, समझे? अगर उसकी बराबरी करने की कोई गिद्ध या कोई और परिंदा कोशिश करेगा तो टूट फूट जाएगा और यकीनन उसकी तमाम हमाकतें जाहिर हो जाएंगी। अगर वो नई मैं को पुरानी मश्क में डालने की कोशिश करेगा तो वो फट जाएगी, देखें तो वो फट जाएगी, वो टूट फूट जाएगी। वो ऐसा नहीं बनाया गया, उसके जिस्म की बनावट उसे उस बुलंदी पर कायम रखने की अहल नहीं है। अगर वो पहले से मुकरर किया हुआ चुना हुआ और पदेशी अकाब नहीं है तो जब उसे बुलंदी पर हवा के तेज जकड़ों का सामना करना पड़ेगा तो वो रेजा रेजा हो जाएगा। देखें उसके बाजू पर से पर उखड़ जाएंगे और वह जमीन पर आ गिरेगा। यकीनन वो बुलंदी पर उकाब की बराबरी नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसकी हमाकत जाहिर हो जाएगी। ये सच है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मगर क्यों? इसलिए कि उसकी बसारत उकाब जैसी नहीं है। छलांग लगाने और बुलंदी पर परवाज करने का क्या फायदा जब आप यही ना देख सकते हो कि कहाँ जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर वो बुलंदी पर जाने के लिए उकाब की नकल करने की कोशिश करे तो वो इस कदर अंधा हो जाएगा कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या किए जा रहा है। ये सच है, वो चीखता और ललकारता और इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन ऐसे नौजवान के साथ अगर आप कलाम की बात करें तो उसकी हमाकत जाहिर हो जाएगी। उसके साथ यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा या उसकी कल आज बल्कि अब तक यकसा होने की बात करें और इसी तरह की और बातें करें तो वो कहेगा, हो आप जरा एक मिनट ठहरें, समझे? हो जी हाँ, यही वो मकाम होता है जब उसके पर उखड़ना शुरू हो जाते हैं। वो चीखता, नबूवत करता, बद्रोहों को निकालता, गैर जुबाने बोलता और बुलंद आवाज से ललकारता और छलांगे लगाता और इसी तरह फर्श पर इधर उधर चलता रहा होगा। लेकिन अगर ऐसा शख्स बुलंदी पर जाने की कोशिश करेगा तो उसकी हमाकत जाहिर हो जाएगी। अगरचे वो मुकर्रर था, मसाशुदा था, वो परवाज कर सकता है, वो अपने आप को मतवाजन करके बुलंदी पर चला जाएगा, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। देखें, वो गली हुई लाश को खा सकता है लेकिन वो उस ताज़ा गोश्त को नहीं खा सकता जो तख्त पर से आता है। वो अंधा है, वो काम करता रहा होगा लेकिन उसे इल्म ही नहीं होगा। कि ये क्या करता रहा है। देखें, उस पर वही रू नाजिल हुआ जैसे बारिश कड़वे दानों को गंदुम बनाने के लिए बरसी, लेकिन उसका आगाज गंदुम नहीं था, वो फट जाता है। ओ, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। ओ नहीं जनाब, मैं जानता हूँ, डॉक्टर जोन्स ने कहा। ठीक है, अपनी मर्जी से चलते रहो, समझे? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अपनी मर्जी से चलते रहें। अब गौर करें कि वो पैदाइश या साख्त के एतबार से पहले से इस किस्म का परिंदा मुकर्रर नहीं किया गया था। वो शायद वो एक संतरे के दरख्त पर परवरिश पाने वाला लीमू हो, लेकिन वो कभी भी जड़ों में से नहीं निकला था। वो एक ऐसी चीज है जिसका इजाफा किया गया है, और जब वो अपनी तंजीमों में से इस कदर बुलंदी पर पहुंच जाते हैं कि उन्हें खुदा के पहले से मुकर्रर शुदा कलाम का जाहिर होना नजर नहीं आता, तो उनकी हमाकत जाहिर हो जाती है। ओ, ऐसी चीज ऐसे है जैसे सर के ऊपर आग का हाला। ओ बस, ये अहमकाना सी बात है। देखें, हमाकत जाहिर हुई। वो इतनी दूर तक देखने के लिए नहीं बनाया गया। वो सिर्फ वहीं तक देख सकता है जहां तक उसकी तंजीमी ऐनक उसे देखने की इजाजत देती है, लेकिन इसके बाद वो बिल्कुल किसी चमगादड़ की तरह अंधा हो जाता है। तब उसकी बेवकूफी जाहिर हो जाती है, समझे? ये वो मकाम है जहां से हकीकी उकाब अपनी खुराक खाने को जमा होते हैं। जी जनाब, यही वो मकाम है जहां से मुंतखिब उकाब देख लेते हैं कि वो क्या हैं। जब वो उस कलाम को कबूल नहीं कर पाता तो वो जान जाते हैं कि वो तंजीमी गिद है। क्यों? क्यों वो इतनी बुलंदी पर नहीं उड़ सकता? इसलिए कि उस खुराक को देखें जिसको वो खाता रहा है। वो गली सड़ी तंजीमी लाश खाता रहा है जो उसके जिस्म को रूहानी नहीं बनने देगी, इसे रूहानी तौर पर सेहतमंद नहीं बनने देगी। दूसरे लफ्जों में, उसे तंजीमी तफरीकात से बुलंदतर नहीं जाने देगी, समझे? देखें, वो गली सड़ी खुराक खाता रहा, उसका जिस्म उसी से बना हुआ है। वो इतनी बुलंदी पर नहीं जा सकता जहां उकाब ताज़ा गोश्त को ले रहे होते हैं। वो हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता, समझे? ये मत्ती 24:24 का पूरा होना है। वो उड़ रहा है और ऊपर की तरफ छलांगे लगा रहा है, अपने पर फड़फड़ा रहा है, लेकिन वो उस खास बुलंदी तक नहीं पहुंच सकता, समझे? ये सच है। देखें, वो उस खास बुलंदी तक नहीं पहुंच सकता जहां से ताज़ा मन हासिल कर सके। वो उस पुराने मन को ही खा सकता है जो जमीन पर पड़ा हुआ हो। वो उन्हीं पुराने मुर्दा खरगोशों को खाता रहेगा जो एक हफ्ता, एक महीना या 40 साल पहले मरे थे, जो अब गल सड़ चुके हैं। वो उसी को खाता रहेगा और घूरता रहेगा और मोमल अल्फाज में बोलता रहेगा, नाचता कूदता और शोर मचाता रहेगा और उकाब की मानित उड़ता रहेगा, क्योंकि गिद्ध भी दूसरे परिंदों की तरह मसाशुदा है। और हम जानते हैं शिकरा भी उकाब की ही एक किस्म है, वो यकीनन है, लेकिन वो हकीकी उकाब की नुमाइंदगी नहीं कर सकता, समझे? वो ऐसा नहीं कर सकता। नहीं जनाब, उसका जिस्म उस खास नौयत का नहीं बनाया गया। वो एक मुख्तलिफ लाश को खाता रहता है, देखें। और ये खुराक, ये ताज़ा गोश्त या ताज़ा मन नहीं था, ये वो चीज होगी जो लूथर ने कही, वेस्ली ने या डॉक्टर फ्लां फ्लां ने कही थी। ये वो बात ना होगी जो आज के जमाने के लिए यस्सु ने कही थी। अब आइए इसे जरा करीब से देखें। आखिरी दिनों में मसीह यानी मसाशुदा लोग, लेकिन ये झूठे उस्ताद और झूठे नबी हैं। गौर करें, कैसी छू लेने वाली बात है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसका मुवाजना, हमारे पास पढ़ने का वक्त नहीं है, मत्ती 24:24 और दूसरा तिमोथियस 3:8 के साथ करें। मत्ती 24:24 में कहा गया है कि आखिरी दिनों में देखें झूठे मसीह आएंगे, यानी झूठे मसाशुदा लोग और झूठे नबी आएंगे, और बड़े अजीब काम और मौजजात दिखाएंगे जो असल से इस कदर मिलते जुलते होंगे, और अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। अब ध्यान दें, ये बात यस्सु ने कही। ठीक यस्सु के पीछे पालूस आया और उसने कहा, अब इन आखिरी दिनों में मजहबी लोग आएंगे। देखें, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे और छिछोरी औरतों को जो हर किस्म की दुनियावी ख्वाहिशों में दबी हुई हैं काबू कर लेंगे। फिर वो हैरान होकर कहेंगे, तुम इन औरतों को क्यों लिए फिरते हो, ओ खुदाया, यहाँ तक कि वो जानते तक नहीं। वो छिछोरी औरतों को काबू कर लेंगे जो तरह तरह की ख्वाहिशों में फंसी हुई हैं। वो इन कामों से दूर हैं, जो के देखें, जैसे यूनिस और यमरीस, मत्ती 24:24, झूठे मसीह, झूठे मसाशुदा, जो मौजजात दिखाते और बरगजीदों को धोखा देते हैं। अब जैसे के यूनिस और यमरीस ने मूसा की मुखालफत की, उसी तरह ये लोग करेंगे जो ईमान के एतबार से नामकबूल हैं। नामकबूल जहन के एतबार से, ना के एक ईमान के एतबार से। ईमान, एक ही ईमान, एक ही खुदा और एक ही बपतिस्मा है। आपका ईमान उस वक्त तक एक नहीं हो सकता जब तक आप एक ही खुदावंद पर ईमान ना रखते हों। आप दो किस्म के बपतिस्मे नहीं रख सकते, और ना ही ये एक बपतिस्मा है जो बाप बेटे और रूल कुछ के नाम में है, बल्कि एक ही बपतिस्मा है और वो है यीशु मसीह के नाम में, जो कि दुरुस्त है। देखें, झूठा बपतिस्मा भी है। गौर करें, जब आप घर जाएं तो इनका मुवाजना करके देखें। गौर करें, मत्ती 24:24 में यीशु ने और पालूस ने दूसरा तिमोथियस 3:8 में बहुतों का जिक्र किया है, और अब इन हवालों का मुवाजना करके देखें, और एक और हवाला शामिल कर लें, लूका 17:30 आयत और मलाकी 4 को भी। जैसे यूनिस और यम्ब्रिस ने मूसा की मुखालफत की, यानी उस जमाने के ममसूख कलाम की मुखालफत की, उसी तरह ये लोग करेंगे, ना कि एक आदमी, बल्कि बहुत सारे लोग जो के मसाशुदा लोग हैं, वो सच्चाई को जुटलाएंगे। एन इन्हीं दिनों में इब्ने आदम जाहिर होगा। जब आप घर जाएं, तो मुकाशवा 10:1-7 आयत का मुतालिया करें। जब सातवां फरिश्ता अपना पैगाम पेश करेगा और मोहरों को खोलेगा, ये क्या है? फरिश्ता इब्ने आदम नहीं है, बल्कि ये पैगंबर इब्ने आदम को जाहिर करेगा। क्या अब आप इस फर्क को समझ गए? यही वो मकाम है जहां आप बहुत मुश्किल महसूस करेंगे। आप समझ गए? इब्ने आदम खुद नहीं, बल्कि सातवां फरिश्ता, सातवां पैगंबर लोगों के सामने इब्ने आदम को जाहिर करेगा, क्योंकि उसने भूसे को छोड़ दिया है। वो इसे मुनज्जम नहीं कर सकता, क्योंकि ये खुद दोबारा गेहूं बन चुका है। और जैसा उन दिनों में यूनिस और यम्ब्रिस उठ खड़े हुए, मसीहशुदा लोग, बनावटी ईमानदार और गैर ईमानदार और बराए नाम कलीसिया और पेंटिकोस्टल, हकीकी गेहूं के खिलाफ उठ खड़े होंगे। लेकिन उनको छोड़ दो, उनकी बेवकूफी जाहिर हो जाएगी, जैसे उनसे पेशतर की हुई थी। समझे? क्या अब आप समझ गए? मुकाशवा 10 में लिखा है, सातवें फरिश्ते के आवाज देने के जमाना में। अब याद रखें, सातवीं कलीसिया लौदीकिया की कलीसिया है, जिसमें उस फरिश्ते को आवाज देना होगी, जबकि वो कलीसिया मुनज्जम हो चुकी होगी और एक कलीसिया जमाना बन गई होगी, और पेंटिकोस्टल कलीसिया मुनज्जम हो चुकी होगी। तब वो फरिश्ता आवाज देगा, हर एक पैगंबर क्या था? मार्टिन लूथर क्या था? कैथोलिक कलीसिया को मलामत करने वाला। वेस्ली क्या था? लूथरन को मलामत करने वाला। पेंटिकोस्ट क्या था? उन दूसरों को मलामत करने वाला। अब जिंदगी कहाँ चली गई है? तंजीम से दूर। अब ये मस्जिद भूसा नहीं, बल्कि ये गेहूं बन चुकी है। ये क्या है? पेंटिकोस्टल को मलामत करने वाला। देखें, इस जमाने का कलाम पूरा हो रहा है। समझे? गौर करें, इस पैगंबर की खिदमत के शुरू से नहीं, बल्कि उस दिन पर तवज्जो दें जब उसने अपने पैगाम का ऐलान करना शुरू किया। देखें, पहली खिदमत शिफा की नेमत, दूसरी खिदमत नबुवत, तीसरी खिदमत कलाम का खुल जाना और बेदों का जाहिर हो जाना। नबियों से बढ़कर कलाम को जाहिर करने का और कोई बड़ा दर्जा नहीं, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। और नबी की शिनाख्त सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं, कि वो उस कलाम के जरिए साबित शुदा हो। और याद रखें, तीसरी खिदमत सात मोहरों का खुलना था और उस पोशीदा सच्चाई को जाहिर करना था जो कलाम में सरबा मोहर रखी गई थी। क्या आप इस बात को समझ गए? और यही वो घड़ी है जिस दिन में उन नकाल यूनिस और यम्ब्रिस को एक बार फिर जाहिर होना था, बिल्कुल जैसे वो उस वक्त जाहिर हुए जब मूसा हकीकी कलाम को पेश करने के लिए आया था, और वो उसकी नकल करने के लिए जाहिर हुए। ये बात बिल्कुल इसी तरह पूरी हुई। क्या आप समझ गए? मत्ती 24:24 का क्या मतलब है? देखें, मसीहशुदा लोग, अब खत्म करने से पहले हम तीन बातों का जिक्र करेंगे। वो ये हैं। मैं चाहता हूँ कि जब हम अपनी बात मुकम्मल करने के लिए जा रहे हैं, तो आप नहायत तवज्जो से सुने। याद रखें, तीन बातें पूरी हुई हैं। अब ठीक तीन बातें आपके सामने हैं। पहली बात, दुनिया सदूम किसी हालत में है। यीशु ने कहा था ऐसा होगा। बरगश्तगी को देखें, हमारी औरतें मर्दों का किरदार अदा करने की कोशिश कर रही हैं, और मर्द औरतों का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाना किस्म के, गले सड़े, गंदे, गटिया, बुराई से भरे हुए, और वो इस बात को जानते तक नहीं। बाइबल ने कहा था ऐसा होगा, और ये सब कुछ यहाँ पूरा हो रहा है। दूसरी बात, कलाम के मुताबिक यही वो वक्त है जब यूनिस और यम्ब्रिस जाहिर हुए हैं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, यही वो घड़ी है जब इब्ने आदम को जाहिर होना है। यहीं पर आपके ईमानदार, बनावटी ईमानदार और गैर ईमानदार हैं। हकीकी कलाम जाहिर होकर खड़ा है और साबित हुआ है, और बनावटी ईमानदार इसकी नकल कर रहे हैं, जबकि गैर ईमानदार इन सारी बातों को रद्द कर रहे हैं। लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी, आप जलाल का रास्ता यकीनन तलाश कर लेंगे। क्या ये सच है? इसराइल बेदार हो रहा है और कौमें बिखर रही हैं। बाइबल की बातें, निशानियां जाहिर हो रही हैं। दिन गैर कौमों के खत्म हो गए हैं, यानी सदूम के मसाइब उनके कांधों पर लादे हुए हैं। ऐ बिखरे हुए, अपने घर को लौटो। दिन मखलसी के करीब आ गए हैं। इंसानों के दिल इस खौफ में कांप रहे हैं। खुदा की रूह से मामूर हो जाओ, चरागों को अपने पाक कर लो और साफ कर लो। यूं आप इस जमाने के कलाम को देख सकेंगे। निगाहें ऊपर उठाओ, दिन तुम्हारे मखलसी के करीब आ गए हैं। झूठे नबी भी झूठ बता रहे हैं। वो कहते हैं हम भी उसी मकाम पर हैं, यानी हम भी मसाशुदा हैं। कलाम खुदा को झुठला रहे हैं कि यीशु मसीह हमारा खुदा है, लेकिन वो इस बात पर ईमान नहीं रखते। बाइबल ने कहा था ऐसा होगा और अब ऐसा हो रहा है, लेकिन हम रसूली राह पर चल रहे हैं। वही रोशनी और औलाद के दिल वालिदों के ईमान की तरफ माइल किए जाएंगे। खुलासी के दिन करीब, बहुत ही करीब आ चुके हैं। इंसानों के दिल खौफ से कांप रहे हैं। दुनिया धंसती जा रही है। ओ खुदा की रूह से मामूर हो जाओ, चरागों को अपने कर लो पाको साफ। निगाहें ऊपर उठाओ, दिन तुम्हारे मुखलसी के करीब आ गए हैं। क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं? तो फिर आए, अपने सरों को झुकाएं। मुल्क के तमाम हिस्सों में, मशरकी साहिल से मगरबी साहिल तक, कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक, शमाल से जनूब तक, दीगर ममालिक में, इस टैबरनेकल में और जहाँ जहाँ भी इस पैगाम की आवाज पहुँच रही है। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास ये बड़ी बड़ी और आलीशान फूलदार चीजें और टेलीविजन का निजाम नहीं है। तो भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं जो कि हम कर सकते हैं, लेकिन वो सब जिनको बाप ने मुझे दिया है मेरे पास आ जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि आप जान लें कि ये सच है, और वो जो इस टेप को सुन रहे हैं, और शायद आप सोच रहे हों आज मैं अपने बारे में कहने की कोशिश कर रहा था और इस पैगाम को अपने साथ लपेटने की कोशिश कर रहा था। मैं फक्त एक आवाज होने के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ, और मेरी आवाज ही मेरे खिलाफ अदालत का बाइस होगी। मुझे तो सिर्फ एक जाल बिछाने वाला होना है, लेकिन ये मेरे बाप की मर्जी है कि मैं मुसम्मम तरीके से इसका ऐलान करूं। जो दरिया पर जाहिर हुआ वो मैं ना था, बल्कि जब वो जाहिर हुआ तो मैं सिर्फ वहाँ खड़ा था। ये मैं नहीं हूँ जो इन कामों को करता और इन बातों की पेशनगोई करता हूँ जो हूबहू पूरी होती हैं। मेरी हैसियत सिर्फ इतनी है कि जब वो इन कामों को कर रहा होता है तो मैं उसके करीब होता हूँ। मैं फक्त वो आवाज़ हूँ जिसे उसने कलाम करने के लिए इस्तेमाल किया। ये मैं नहीं था जो मैं जानता था, बल्कि मैंने सिर्फ अपने आप को उसके सुपुर्द कर दिया कि वो मेरे अंदर से बोले। ये मैं नहीं हूँ, ना ये सातवां फरिश्ता था, हो नहीं, बल्कि ये इब्ने आदम का जहूर था। ये फरिश्ता था, ये उसका पैगाम था, ये खुदा का बेद था जो उसने खोला। ये कोई इंसान नहीं है बल्कि खुदा है। फरिश्ता इब्ने आदम ना था, वो तो इब्ने आदम की तरफ से पैगाम रसा था, क्योंकि इब्ने आदम मसीह है। मसीह ही वो है जिससे आप खुराक हासिल कर रहे हैं। आप एक इंसान से खुराक हासिल नहीं कर रहे, एक इंसान का अपना कलाम नाकाम हो जाएगा, लेकिन आप एक नाकाम ना होने वाले इब्ने आदम के जिस्दे कलाम से खुराक हासिल कर रहे हैं। अगर आपने कलाम की हर एक बात को अच्छी तरह नहीं खाया कि वो आपको तमाम तंजीमों और तमाम दुनियावी चीजों से बालातर परवाज की ताकत दे, तो क्या आप इस लम्हा ऐसा करेंगे जबकि हम दुआ करेंगे? प्यारे बाप, ये एक सख्त गुफ्तगु है। किसी फानी इंसान के लिए करना आसान नहीं है, लेकिन तू सब कुछ कर सकता है। और प्यारे खुदा, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि कोई इसका गलत मतलब ना समझे, बल्कि बख्श दे कि ये लोग तेरे कलाम की रोशनी में चलें। और खुदा बाप, मैं नहीं जानता कौन बरगजीदा है, मगर तू जानता है। मैं नहीं जानता कि तेरी आमद कब होगी, मगर मैं इतना जानता हूँ कि तूने फरमाया था कि जब ये बातें होंगी, जब ये झूठे ममसू उठ खड़े होंगे, उस वक़्त नहीं जब उन्होंने शुरू किया था। मूसा ने उन्हें फक्त उनके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि वो और कुछ नहीं कर सकता था। वो फक्त वही कह सकता था जो तूने फरमाया था। तूने मूसा को मक्खियों को बुलाने के लिए कहा, और उन झूठों ने भी मक्खियाँ बुला ली। और तूने मूसा से पानी को खून बनाने के लिए कहा, और उन झूठों ने भी पानी को खून बना दिया। मूसा ने फक्त कलाम के हर लफ्ज का ध्यान रखा जैसा तूने फरमाया, लेकिन फिर तूने उन झूठों की बेवकूफ़ी को जाहिर कर दिया। ए बाप, तू अब भी वही खुदा है। उसी कलाम का कहना है कि आखिरी दिनों में ऐसा ही होगा। बहुत से दयानतदार लोग, जैसा कि हमने पिछले इतवार कहा था, वो उस संदूक को हाथ लगाएंगे, लावियों के कंधों की बजाय नई बैलगाड़ी पर रखा जाएगा, और वो हलाक हो जाएंगे। वो गुनाह और नाफरमानी में हलाक होंगे और अपनी ही अकल के खिलाफ बहस करेंगे। बहुत से खादम इन बातों का मुतालिया करते हैं और इस कलाम को पढ़ते हैं और फौरन सफा पलट देते हैं, और जब वो फटने के करीब पहुंचते हैं तो उन्हें याद आता है कि वो अवामुल नास और अपनी कलीसिया से माशरती रिश्ता खत्म कर बैठेंगे, तब वो जल्दी सफा पलट देते हैं। ऐ खुदा, हमारी मदद कर कि हम कभी ऐसा ना करें। ऐ खुदावन, इस जहान की तमाम गंदगी से हमारे दिलों को पाक कर दे। खुदावन, मैं पाकीजगी और सफाई के लिए तैयार खड़ा हूँ। मैं इस कलीसिया और तमाम सुनने वालों और उन लोगों के हमरा जो इस टेप को सुनेंगे तैयार खड़ा हूँ। खुदावन, मैं खड़ा हूँ और पाकीजगी मांग रहा हूँ। खुदावन, मुझे कमहार के घर ले चल और मुझे तोड़ दे, और मुझे ऐसे खादम की शक्ल में डाल दे जैसा तू चाहता है कि मुझे होना चाहिए। क्योंकि खुदावन यस्सु, मैं नेजसलब इंसान हूँ, जैसे यसाया चिल्ला उठा कि मैं नेजसलब लोगों में रहता हूँ, और मुझ पर अफसोस इसलिए कि मैंने खुदा के मुकाशवा को जाहिर होते देखा, जैसे यसाया ने हैकल में फरिश्ते को देखा था। खुदावंत, मैंने आखिरी वक्त को देख लिया है, इसलिए मुझ पर और मेरे घराने पर अफसोस, मुझ पर और मेरे लोगों पर अफसोस। ऐ अब्दी खुदा, हम पर रहम कर। मैं अपने लिए और अपने लोगों के लिए तुझसे दुआ करता हूँ। हमें उनके साथ हलाक ना होने दे जो ईमान नहीं लाते, बल्कि बख्श दे कि हम ईमानदारों के साथ जिंदा रहें। खुदावंद, हर तंजीम, हर एक मर्द और औरत, खुदावंद, मैं जानता हूँ कि तू तंजीम के खिलाफ है, तो मैं किसी तंजीम के लिए तुझसे बरकत की दुआ नहीं करता, बल्कि खुदावंद, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर उनके दरमियान तेरी कोई भी भेड़ मौजूद है और शायद वो इस टेप को सुने, ऐ खुदावंद, ऐसा हो कि वो इस टेप को सुने और उस समझ के मुताबिक जो तू उनको बख्शेगा इसे समझ जाए, तब वो उनमें से निकलकर तुझे कबूल कर लें, और वो इस जमाने की रवायात और अंधेपन से धोखा ना खाएं। वो किसी ऐसी लाश को खाने की कोशिश ना करें जो किसी और जमाने से पड़ी हो। बख्श दे कि वो कलाम को लें। खुदावंद, इसी तरीके से तुझे फरीसियों ने मसलूब किया, क्योंकि वो मूसा के जमाने की लाश खा रहे थे और उसी पर टिक टिकी लगाए रखने की कोशिश कर रहे थे, जबकि तूने बियाबान में हर रात ताज़ा मन बरसाकर उनको एक नमूना दिया था जिससे मुराद हर एक पुश्त है। यही वो मकाम है जहां वो नाकाम हुए। इससे उनके दरमियान जहर फैल गया और उस आलूदा खुराक को लेकर वो हलाक हो गए। और रूहानी तौर पर अब आज भी ऐसा ही हुआ है। तंजीम ने उन्हें रूहानी लिहाज से हलाक कर दिया है। प्यारे खुदा, हमारी मदद कर यस्सु के नाम में। अब ये सब तेरे हाथ में है। अब जबकि हम सर झुकाए हुए हैं तो हम एक गीत गाएंगे, और इसी दौरान आप फैसला करें, क्या आप आखिर तक चलेंगे? मैं अपने मुनज्जी की आवाज सुन सकता हूँ, और वो कलाम है। मैं सुनता हूँ और सुन सकता हूँ। हो, मैं बहुत अरसा गुमराह रहा, लेकिन हकीकत में मैंने अब उसकी आवाज महसूस की है कि सब मुतलाशी मेरे पास आ जाएं। सुनो, हर रोज अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे चले आओ। जी हाँ, बल्कि अगर मौत के साय की वादी में से मेरा गुजर हो तो मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। वो मुझे हरी हरी चरागाह में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, और जहाँ वो मेरी रहनुमाई करता है। खुदावन, मैंने तसलीसी लोगों की बेवकूफी को देखा है, मैं सारी दुनिया में इसे बोए हुए देखता हूँ। झाड़ियाँ हर तरफ उग रही हैं। लेकिन अब खुदावंत, जहाँ तू मेरी रहनुमाई करेगा, मैं उसी तरफ चलूंगा, जैसा इमाल 19 में है। जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने दोबारा यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। पीछे चलें, मैं काफी दूर तक सफर कर चुका हूँ, लेकिन खुदावंत, अब मैं तुझे कबूल करता हूँ। मैं मंजिल तक उसी के साथ चलूंगा। प्यारे खुदा, मुझे भरोसा है कि ये आवाज मेरे दिल से निकली है। मुझे यकीन है ये आवाज हर उस शख्स के दिल से निकल रही है जो इस वक्त गा रहा है, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस टेप को सुनेंगे मगर इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है और ना ही इसे सुन रहे हैं। खुदावंत, हम तेरी मर्जी के तालिब हों और कीमत की परवाह ना करें। तूने कहा, अगर कोई आदमी या एक सिपाही या एक बादशाह किसी दूसरी फौज पर चढ़ाई करने जा रहा हो तो पहले बैठकर हिसाब लगाता है कि क्या वो ये करने के काबिल है, क्या वो दुनिया की चीजों को छोड़ सकता है, क्या आप दुनिया को छोड़कर खुदा के लिखे हुए कलाम की फौज में शामिल हो सकते हैं, उसके सिपाहियों के साथ मार्च कर सकते हैं, उसके उकाबों के साथ प्रवास कर सकते हैं। खुदावन यीशु के नाम में ये सब कुछ बख्श दे। क्या आप ईमान लाते हैं? क्या आप खुदावन को कबूल करते हैं? ठीक है, अगर खुदावन की मर्जी हुई तो आज रात फिर यहीं आपसे मुलाकात होगी। क्या आप ईमान लाते हैं कि ये सच्चाई है? क्या ये वाज़े बात है? रंजो आलम के बच्चों, नाम यीशु का साथ रखो। खुशी और सुकून देगा तुम्हें, इसे ले लो। अब अपने करीब के साथी से हाथ मिलाएं। बेशकीमत नाम और कितना मीठा, जमीन की उम्मीद, जमीन की उम्मीद, आसमान की खुशी। बेशकीमत नाम, हो कितना मीठा, जमीन की उम्मीद और आसमान की खुशी। यीशु के नाम पर सर झुकाओ, उसके कदमों में खुद को बिखराओ। ताज पोशी करेंगे शाहों के शाह की। वो खुदा है, सफर जब हमारा मुकम्मल होता है। बेशकीमत नाम, बेशकीमत नाम, हो कितना मीठा, हो कितना मीठा, जमीन की उम्मीद और आसमान की खुशी। बेशकीमत नाम, हो कितना मीठा, जमीन की उम्मीद और आसमान की खुशी। मेरा ख्याल है कि आज सुबह तमाम खादमों की शिनाख्त हो गई है। जब एक आदमी पूरा हफ्ता दुआ करता रहा है और इन हवाला जात को देखता रहा है, तो अब तजुब कर रहा है जब ये सब आपके सामने खुले हुए हैं। अफसोस मुझ पर, पालूस कहता है, अगर मैं अंजील की मुनादी ना करूं। अपने सफर के इख्तिताम पर उसने कहा, मैं खुदा की सारी मर्जी तुमसे पूरे तौर पर बयान करने से ना झिझका जो उसने मेरे सपुर्द की थी। बाज़ औक़ात मैं चीजों को पेश करते हुए भूल जाता हूँ, हत्ता के बच्चों को मखसूस करना भी भूल जाता हूँ। बिली ने बताया था, किसी रोज एक आदमी आया और उसने कहा कि मैं 2 साल से अपने बच्चे को मखसूस करवाने के लिए यहाँ ला रहा हूँ। तो बिली ने उससे कहा, आप इस बात से नाराज ना हो, मेरा भी एक बच्चा है और उसकी उम्र 1 साल हो गई है और उसकी मखसूसियत अभी तक नहीं हुई। बस मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो इतना बड़ा हो जाए कि खुद चलकर वहाँ जा सके, और मेरा ख्याल है यही कहता है। इसलिए भाई और बहनों, नतीजा ये निकला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, जैसा कि एक ही बात है कि हमें अपने बच्चों को मखसूस करवाना चाहिए, हम में से हर एक को बपतिस्मा लेना चाहिए। यहाँ तालाब है, पानी भी मौजूद है। अगर आपने पहले बपतिस्मा नहीं लिया तो अब कौन सी चीज आपको रोक रही है? पानी मौजूद है, अभी आएं। आज रात तक इंतजार ना करें, अभी आएं। आदमी तैयार खड़ा है जो हर उस शख्स को बपतिस्मा देगा जो तौबा और इकरार करेगा। अगर आपने पहले दर्जन भर बपतिस्मे ले रखे हों तो भी गुनाहों की माफी के लिए वो आपको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देगा, समझे? क्योंकि हम यही करने के लिए हैं। लेकिन देखें, पैगाम मेरे दिल में है, मुझे जरूर ही इसे बयान करना चाहिए। ये मेरा जाती मामला है, इसे कत नजर कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे और मेरा पासवान या कोई और क्या कहता है। ये मेरा खुदावंद है, मुझे जरूर इसे बयान करना चाहिए। ये मेरा जाती मामला है। और अब मैं बहुत मर्तबा खादमों को पहचानना भूल जाता हूँ। मेरा ख्याल है शायद ये हमारे भाई नेवल हैं, जो कि एक बेशकीमत इंसान है, और ये दीगर भाई भी यहाँ मौजूद हैं। हम आप सबको देखकर खुश हैं। भाइयों, हम आपके खिलाफ नहीं कि आपसे अलग दिखाई दें। आप में से बहुत सारे तसलीसी मुनाद हैं। हम आपसे नाराज होना नहीं चाहते, हम आपसे प्यार करते हैं। और अगर मेरा ये ईमान ना होता और हम आपसे मोहब्बत ना करते, तो मैं उस वक़्त तक इस गिरजाघर से कभी ना जाता जब तक मैं घुटनों के बल होकर खुदा से ये न कहता, ए खुदा मुझे दुरुस्त कर। मैं जिद्दी, खुदगर्ज रूह को अपने साथ शरीक नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी रूह खालिस और पाक और ब्रादराना उल्फत से भरपूर हो और पाक रूह के साथ पाक हो। अब अगर कोई शख्स मुझे कोई बुरी बात कहता और मेरे खिलाफ कोई काम करता है तो ठीक है, और अगरचे मैं उन्हें जवाब देने का हक रखता हूँ, लेकिन तो भी मैं कोई ऐसी बात अपनी जिंदगी में नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। मुझे सिर्फ मोहब्बत करनी है। मैं तो मोहब्बत से दुरुस्तगी पैदा करना चाहता हूँ, उस मोहब्बत के साथ जो हमारे लिए अटल जवाब लेकर आती है। मेरा मतलब कोई मुख्तलिफ नजर आना नहीं है। आप मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथलिक, प्रेस्बिटेरियन या जो कोई भी हैं, मैं ये बातें मुख्तलिफ नजर आने के लिए या आपके साथ जिद के लिए नहीं कहता। और अगर मैं ऐसा करता तो मैं एक रयाकार होता, और मैं चाहता कि मैं मजबा पर खुदा के आगे झुक कर दुआ करता। बल्कि मैं ये बातें आपके साथ मोहब्बत के बाइस कहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप किधर जा रहे हैं। अब मैं ये बातें अपनी तरफ से नहीं कहता, और ना ये मेरी जिद है। मैं आपको खुदावंद यूँ फरमाता है के मुताबिक कहता हूँ, क्योंकि ये सच्चाई है। मैं इन बातों की वजह से आपसे मोहब्बत करता हूँ। खुदा आपको बरकत दे। जाने से पहले आए हम इस गीत का एक मिसरा गाएं। हम चाहते हैं कि अगर मुमकिन हो तो क्या आज रात आप यहाँ दोबारा आ सकते हैं, और अगर आप नहीं आ सकते तो आइंदा मिलन तक खुदा आपके साथ हो। हमारी दुआ है कि खुदा आपको बरकत दे और अपनी मेराज का बेहतरीन हिस्सा आपको अनायत करे, समझे? नाम उसका साथ रखो।